ये समय आप लोगों के साथ संगति करने का है उस उत्तर के जमे हुए क्षेत्र से दूर जहां मैं निकल कर आया हूं। इस दोपहर बाद उसके अध्ययन में मैंने आपके पास्टर से कहा, ये एक महान सभा होने जा रही है जो मैंने कभी देखी, या मैं परमेश्वर की इच्छा से चूक जाऊंगा। मैंने कभी भी शैतान से ऐसा कठोर युद्ध नहीं किया जैसे वो ये निकल कर आया। जब कुछ समय पहले भाई विलियम ने मुझे निमंत्रण दिया तो मैं थोड़ा सा झिझका। मैंने कहा मैं आपको थोड़े समय के बाद बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूं कि जो चीजें सामने आने वाली हैं हम उनमें अपना चुनाव करते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा हो। और मुझे एक अगुवाई की अनुभूति हुई कि आऊं, क्योंकि ये एक समय मैं सदा से फुल गॉस्पल बिजनेसमैन की संगति की सराहना करता हूं। और फिर और ये थोड़ा अधिक था क्योंकि मुझे विभिन्न कलीसियाओं से मिलना था, भिन्न भिन्न भाइयों से जो विभिन्न नामधारियों में से थे। मुझे ये करना अच्छा लगता है और विभिन्न कलीसियाओं के साथ एक प्रकार की संगति और परमेश्वर की वे कलीसियाएं। इसलिए तब जब मैंने कहा मैं निश्चित हो जाऊंगा कि ये प्रभु मुझे बुला रहा है, मैंने कहा मैं भाई विलियम को थोड़ा सा समय दूंगा कि किसी और को बुला लें। आप जानते हैं कि वहाँ जाऊं, निश्चित हो जाए कि वो अब भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तब मैं जानता हूं कि ये प्रभु है, और यदि सारे भाई कहते हैं कि वे मुझे बुलाना चाहते हैं, मैंने कहा स्वर्गीय पिता मैं इसे मानकर चल रहा हूं कि आप चाहते हैं कि मैं फिनिक्स जाऊं। ठीक है, मैंने कई दिनों तक प्रतीक्षा की। मैंने सोचा अब अच्छा है कि मैं उसे सीधा सीधा बता दूं, क्योंकि वो उन्हें इसका विज्ञापन व्यापारियों की वॉइस में देना है। और इसलिए कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद तब मैंने उसको फोन किया। उसने कहा ओ भाई ब्रणम, सारे भाई लोग चाहते हैं कि आप आएं। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा स्पर्श हुआ, मुझे ये करना चाहिए, इसलिए ये एक अच्छा सुअवसर होगा। ठीक, मैंने सोचा मैं बस थोड़ा सा जल्दी आऊंगा और मैं मेक्सिको में जाना चाहता हूँ और सूट केस लूँ, जिसकी मुझे बहुत आवश्यकता थी। किसी ने मुझे बड़े दिन पर कुछ पैसे दिए थे कि मैं ये ले लूँ। मैं इसे लगभग आधे दाम में ले सकता था यहाँ से, और सीमा पार से ये उससे दुगना अच्छा था। मैंने सोचा मैं नीचे टेक्सास में जाऊंगा, इसलिए मैंने अपने लिए 3 अतिरिक्त दिन रख लिए ताकि मैं खरीदारी करके अच्छा वाला ले सकूं। इस प्रकार मार्ग में थोड़ा सा विश्राम ले लूं। और मैं वीवार को आरंभ करने जा रहा था और हम चलने को तैयार हो गए, और सारे रास्ते में बर्फबारी आ गई और उन्होंने हर जगह राजमार्ग भी रोक दिए, और दक्षिण कुल मिलाकर असंभव था और वे हमें उत्तर की ओर से नहीं जाने देंगे 66 से ऊपर। मैंने 2 दिन प्रतीक्षा की और अंत में उन्होंने सड़क खोल दी, कहा तुम अपना अवसर ले सकते हो। इसलिए मैंने आरंभ कर दिया। मैंने सोचा भाई अच्छा मौसम होगा। ओ, मैं विश्वास नहीं करता कि मैंने अपने सारे जीवन में कभी इतनी खराब बर्फबारी झेली, और बर्फ और जाम और सारी सड़क पर और सब कुछ। अंततः रिकॉर्डिंग करने वाला ये लड़का यहाँ पर है, भाई मगॉय, उसकी कार उस पर फिसल गई बाहर आते हुए हम जा रहे थे, और इसलिए हम एक भयानक उसमें थे। मैं सोचता हूँ ये बस हो गया, मैं नहीं सोचता ये पीछे को फिसली, बस दे दिया, देखा। इसलिए उसने पुराना जनरेटर लिया और वो सही कार्य नहीं करेगा। उसने इसे दूसरी दुकान में डाल दिया, ये ठीक काम नहीं करेगा। उसने 3 को आजमाया, एक रात्रि में लगभग 11 बजे तक, और अब भी वही चीज। अगली प्रातः चल गया लाल, वो निकल गया। अब वो कहीं मुझे सुन रहा है, और मैंने उसके ससुर और उन्हें तक नहीं बताया, परंतु उसने मुझे रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए मेरे कंधे को छुआ, बोला भाई ब्रणम आप परमेश्वर से मांगे और ये ठीक काम करेगा। मैंने कहा तुम वास्तव में ये विश्वास करते हो? उसने कहा मैं करता हूँ, और इसने सही कार्य किया, हम आ गए। इसलिए जब मैं फिनिक्स में पहुंचा, मैंने सोचा अब मेरी परेशानी खत्म हो गई, और यदि मैं आज प्रातः जुकाम और सिर दर्द के साथ न उठा। ठीक है, मैंने कहा शैतान ये एक लड़ाई है, इसलिए अब मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए हम यहाँ संगति का आनंद लेने के लिए हैं, और मुझे दोपहर बाद पास्टर से उसके अध्ययन पर मिलना है, और हमारा शानदार समय रहा था। सुंदर प्यारी सी कलीसिया, और मैं परमेश्वर के घर से आपके लिए शुभकामनाएं लाया हूँ, वहाँ मध्यपुर जहाँ से मैं हूँ। और इसलिए हम जानते हैं कि आप लोग यहाँ वास्तव में अच्छे हैं, हम आपसे सुनते हैं। और आज रात्रि भाई नॉर्मन को यहाँ बैठा देख कर प्रसन्न हूँ, जो ट्यूसान से हैं, और मेरे कुछ लोग। मैं यहाँ एक छोटी सी भक्त मंडली को देख रहा हूँ, और ओहियो से भी लोगों को देख रहा हूँ, और भाई और बहन डाउच यहाँ बैठे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कुछ लोग आयोवा से भी यहाँ पर हमारे पीछे बैठे हैं, और भिन्न लोग वे पूर्व और पश्चिम से आए हैं, हर जगह से यहाँ एक साथ जमा हैं, इसलिए यहाँ होने के लिए हम आनंदित हैं और हम यहाँ उन आने वाली निर्धारित रात्रियों की प्रतीक्षा में हैं, जहाँ हमें विभिन्न कलीसियाओं में बोलना है। मैं सोचता हूँ कल आने वाली रात्रि में हम टेम्प में होंगे, यही था टेम्प, और फिर अगली रात मैं सोचता हूँ भाई ऑटलो के यहाँ 20वां और रूजवेल्ट स्ट्रीट पर, फिर अलग अलग। और यदि भाई लोग यहाँ हैं कि मुझे दो रात्रियों को छोड़ना है, इसके लिए मुझे खेद है, परंतु प्रभु हमें छोटी विशेष आशीष उन रविवार की सुबह देगा जिसमें हमें पूरा करना है। ये एक प्रकार से पूरा निर्धारित कार्यक्रम है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हम इसे बनाएंगे। इसलिए आने वाली बेदारी सभा में हम महान समय की आशा कर रहे हैं, व्यापारी लोगों की बेदारी सभा। इस सौभाग्य के लिए हम बहुत आनंदित हैं। संभव है उन सब भाइयों से मिलना हो और उनसे हाथ मिलाना और मित्रों से मिलना, कुछ होता है और हम मित्रों जैसा कुछ नहीं है। मैं किसी चीज का उल्लेख करने जा रहा हूं जो मैंने पास्टर से इस दोपहर बाद किया। ऑसवर्ल्ड जे स्मिथ, वो एक महान मिशनरी विचारों का व्यक्ति है। कुछ समय पहले वो लुइविल केंटकी में मेरे एक मित्र डॉक्टर वेलेस कॉबल से बात कर रहा था। उसने भाई कॉबल से कहा, भाई कॉबल, मैं विश्वास करता हूँ कि जब व्यक्ति पहला विवाह करता है, उसने कहा, और उसकी पत्नी युवा है और वो सुंदर है और सब कुछ, कहा, आप जानते हैं, यदि वो खराब हो जाए, उड़ने लगे, जैसे कि हम कहते हैं, भाग जाए, उत्पात मचाए, या आप जो जानते हैं, बाहर जाकर गलत करे, कहा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, या कुछ कहा, ये खराब बात है, परंतु ये नहीं है, कहा, आप कह सकते हैं, आप युवा हैं और आप चारों ओर देखें और दूसरी ढूंढ लें जो ठीक होगी। कहा, तब आप उसके साथ लंबे समय तक रहते हैं कि बालक हो जाते हैं, कहा, तब वो ये करे, ये भयानक है, आप जानते हैं, कहा, आप वास्तव में ये अनुभव करने लगते हैं कि आपको उसकी आवश्यकता है। बोला, जब आप लगभग 50 के हो जाते हैं, तब आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। कहा, तब जब आप 70 के हो जाते हैं, आप निश्चय ही उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। और मैं सोचने लगा इसकी छोटी आत्मिक व्याख्या। जब मैं एक युवा सेवक था, हर व्यक्ति जो गलती करता है वो दृश्य से बाहर था, वो दौड़ में भी नहीं दौड़ सकता, बस यही है। यदि वो एक बैप्टिस्ट नहीं था, वो दृश्य से बाहर था, बस समझे, उसे उन बातों को देखना है जो मैंने देखी, या फिर वो मनुष्य कुल मिलाकर गलत है। और तब जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, मैंने अनुभव करना शुरू किया, आप जानते हैं, कंबल थोड़ा सा खिंच जाता है, मैंने देखा उसे करना है जिसे उसको उसके साथ ही निकलना है, बहुत परेशानियां, कलीसिया का एक पास्टर और हृदय की वेदना जो उसके साथ चलती है। मैंने अनुभव किया कि ये कंबल उसको भी थोड़ा सा ढांक लेता है, आप जानते हैं, एक प्रकार से उसे ठंड से बचाता है। और अब जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, लगभग जहां मैं हूं, अब हूं, मैं आपको बताता हूं, हमें एक दूसरे की बहुत आवश्यकता होती है, एक दूसरे के बिना हम कुछ नहीं कर पाते, कुल मिलाकर यही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिन बुरे होते जा रहे हैं और जिस प्रकार से चीजें हैं, क्यों मैं ये सोचता हूं कि हम मिलकर संगति करें, और समय से मैं भाइयों के साथ होना चाहता था और उनसे बातें करूं और आदि आदि, सारी भिन्न भिन्न कलीसियाएं और भाईचारा, मैं इसे पसंद करता हूं। देखिए, इस विषय में कुछ है, ये वास्तविक है, और मैं सोचता हूं छोटे से झुंड के लोगों के लिए जो फुल गॉस्पल बिजनेसमैन के हैं, मैं बंद ना करूं, परंतु मैं सोचता हूं कि ये एक अच्छा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम एक साथ जमा हो सकते हैं और हम संगति कर सकते हैं। वे नामधारी वाली सीमा नहीं बनाते और आदि आदि, और हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ एक साथ बैठ सकते हैं। अब मैं कुछ अनुभव करता हूं कि ये सिद्ध होने नहीं जा रहा है, वे बहुत सी गलतियां करने जा रहे हैं, मैं उनकी देखता हूं, वो मेरी देखते हैं और आप मेरी देखते हैं, मैं आपकी देखता हूं, और परंतु हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है और हमें महसूस करना ही है। परंतु मैं सोचता हूं अंततः यदि मेरे भाग में ये सब कुछ खोजा जाए तो ये फसल की भलाई है, समझे, ये ठीक बात है, ये यही है। बहुत वर्षों पहले मैंने अपनी पसंद फुल गॉस्पल के लिए रखी और इस विषय में मैं प्रतिदिन बहुत आनंदित था, और उनमें से एक होने के लिए मैं धन्यवादित हूँ, और मसीह को अपना बचाने वाला ग्रहण करने के लिए ये शानदार अनुभव, और बदले में मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया और मेरे हृदय में वास कर रहा है प्रतिदिन, मेरे लिए एक गवाह कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, और प्रतिदिन मेरे उद्धार के वृक्ष को परख रहा है। जैसे कि मैं अपनी सूची लेता हूँ, देखिए जिस प्रकार आत्मा मुझ में है, ये किस प्रकार अनुभव करता है, किस प्रकार ये संसार की चीजों के साथ सहयोग करता है, या क्या ये इतना स्वर्गीय है? यहाँ तक कि संसार धूमिल सा प्रतीत होता है, मलिन, गंदा। मैं इस गली से निकल रहा था। मैं यहाँ 35 वर्षों पहले पहली बार आया था, ये वर्ष 1926, पुरानी टी मॉडल की फोर्ड में, और मैं 16वें हेंशॉ में रहा। मैंने देखा उन्होंने नाम भी बदल दिया, ये अब बुकेले है, इसलिए सब कुछ बदल गया, परंतु मैंने पुरानी जगह को पहचान लिया। आप जानिए, मैं इस घाटी में चारों ओर घोड़ों पर घूमता रहा, सॉल्ट नदी और उस मार्ग से होते हुए वहाँ सारे पहाड़ पर बिल हैं, और जंगली भट्ट और मूल्यवान चीजों के खोजी अब भी आ रहे हैं, परंतु वे कैडलक में हैं, इसलिए अब भी वैसा ही है, इसलिए अब काफी बदल गया है। परंतु मैं पाता हूँ कि सुसमाचार नहीं बदलता, अब भी वही संतुष्टि देता है। और आप वर्ष के बाद वर्ष पीछे चले जाते हैं, आप पाते हैं कि ये वैसा ही है, ये वही अनुभव है जो उन्होंने पेंतेकोस्त पर पाया था 2000 वर्षों के बाद। ये थोड़ा सा भी नहीं बदला, हमारे पास वही चीज है, बिल्कुल ठीक, इसने वही किया। जैसे कि मैंने शानदार सड़कों को देखा, उन स्थानों को और रोशनियों को देख रहा था, और जगहें जगमगा रही थीं। मैंने सोचा 300 वर्षों पहले, जैसा कि आते हुए मैंने अपने पुत्र से बातें कर रहा था, ये घाटी शांति के साथ थी। संभवतः यदा कदा भेड़िया आवाज करता, या कोई आवाज, गधे का रेंकना, या 300 वर्षों पहले, और जैसा कि हम देखते हैं ये कैसा था। मैं नहीं जानता कि ये बदला हुआ या दूषित हुआ अब ये किस में है। ये बदला हुआ होता यदि ये सड़क लोगों के ऊपर नीचे आते जाते हुए, परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाते हुए, सुंदर घाटी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, और रहने के लिए सुंदर स्थान और स्वस्थ वातावरण, और कलीसियाओं में प्रशंसा, भाई भाई थे, बहनें और आदि आदि, और परमेश्वर की अर्थव्यवस्था की महान बस्ती, ये शानदार स्थान होगा। परंतु बजाय इसके शराब के अड्डे, गाड़ियों का शोरगुल, व्यभिचार, धूम्रपान, जुआ, गाली देना, शपथ खाना, मैंने कल्पना की एक दिन परमेश्वर सारी चीजों को मिटा देगा। ये ठीक बात है, और वे जो अपना चुनाव उसके लिए करते हैं, वे यहाँ अनंत तक रहेंगे, वो महान सहस्र शताब्दी जो आने को है। और मेरी ये इच्छा है, और आज रात्रि मैं यहाँ जिसके लिए फिनिक्स में हूँ, संगति करने का यत्न कर रहा हूँ। पहले कलीसिया को मजबूत करना, फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करना, यदि कोई प्रार्थना के लिए आता है। हमारा कोई इरादा नहीं कि हम प्रार्थना पत्र दें या ऐसा कुछ। हम आ रहे हैं, हम लोगों की सहायता कर सकें, कुछ भी करेंगे। यदि कोई प्रार्थना करवाना चाहता है, केवल एक बात की कहें, और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम जो भी कर सकें। कुछ सप्ताहों पहले मैंने घर पर पाया ये करते हुए, ये किसी भी चीज से आगे है, आप देखिए। और मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ फिनिक्स में आया था, हम वहाँ भाई आउटलॉ की कलीसिया में थे, फिनिक्स में, वे पहले थे जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था। फिर वहाँ एक छोटी मेक्सिकन कलीसिया, ग्रासिया कहलाई, भाई ग्रासिया, छोटी स्पेनिश बोलने वाली कलीसिया, ये यही कहीं थी। और वहाँ हमारा क्या ही शानदार समय था, लोग पंक्ति में खड़े होते थे और चंगे हुए, बस प्रार्थना और उन पर हाथ रखने के द्वारा सेवकाई ऊपर उठी। निश्चय ही ये हुआ, वरदान अधिक हुए, परंतु जो भी या जैसा, मेरी इच्छा मैं फिर से वैसा था जैसे पहले बार, आप समझे, बस समझे। जी हाँ, मैं यहाँ अधिक सोचता हूँ, हम उन बातों को भूल गए जो कभी हमने सीखी थी। मैं सोचता हूँ ये एक अच्छी बात होगी भाई, मैं सोचता हूँ परमेश्वर के पास जाने का मार्ग नम्रता सेवा के मार्ग से होकर जाता है। मैं सोचता हूँ संसार में इससे अच्छा कुछ नहीं कि हमें मसीह तक ऊंचा उठाए। इसे छोड़ आपको शारीरिक नकल को देखना होगा और आदि आदि, ये आपको मंद कर देता है और आप में कुछ भरता है। मैं इच्छा करता हूँ, इसने नहीं किया, आप समझे। हम यदि आप अपने को बनाएं, ये एक प्रकार से आपको ऊपर लाता है। मैं सोचता हूँ ये आपको उलझन की स्थिति में ले आता है, जबकि आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज को दूर रखना चाहिए और आगे बढ़ते जाएं। और तब इस प्रकार से मैं इसमें आशा करता हूँ, इसमें प्रत्येक को संगति में एक साथ सामर्थ्य मिलेगी। प्रार्थना करें कि परमेश्वर बीमार लोगों को चंगा करे, जिनके लिए प्रार्थना की जाएगी। और इन सब बातों के ऊपर हम प्राण को जो बच सकता है बचाएं। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ हैं, वे कौन हैं, इसलिए मैं बस जैसे प्रचार करता हूँ, और जो भी अंदर आता है, यही जहाँ मैं सेवा करने का यत्न करता हूँ, और आशा कर रहा हूँ कि किसी दिन उस महान अनंतता से होते हुए और शांति से भरी हुई घाटी, हो सकता है मेरी कोप नहीं, परंतु कोई और शांत घाटी कहीं और, हम एक साथ रहेंगे अनंत युगों के पड़ोसी, اس لیے ہم یہاں پر ہیں. اب بہت سارے کھڑے ہیں اور میں آپ لوگ اتنے پریے ہیں, میں ساری رات بات کر سکتا ہوں اور میں جانتا ہوں ہماری بہت ساری سبھائیں ہیں اور میں ہر ایک استھان پر بہت ادھک سمے نہیں لینا چاہتا, پرنتو یدی اب ہم شردھا کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اس سے پہلے کہ ہم پرمیشور کے وچن کو کھولیں اور پرارتھنا کریں. انوگرہ کاری سورگے پتا, نشچے ہی یہ آج راتری شاندار سوبھاگیہ ہے کہ ہم جیوت ہیں. یہ سوبھاگیہ ملا کہ ایک بار پھر پرمیشور کی جیوت کلیسیا کے سامنے گواہی دیں, اور جیسا کہ میں تھوڑی دیر پہلے لوگوں سے بات کر رہا تھا اور اس بڑے نگر کے وشے میں سوچ رہا تھا, سندر نگر پھر بھی دوسرے نگروں کے سامان پاپ کی اگوائی میں ہے. جیسا کہ میرے پتر نے کہا, میں سوچ رہا تھا تو پتا جی اس کا کیا لابھ ہے, میں نے کہا پتر اس سارے نگر میں جیوت پرمیشور کی کلیسیاں بکھری ہوئی ہیں, یہ وہ جھنڈ ہے جسے ہم پرمیشور کے سامنے تھامے ہوئے ہیں, یہ وہ سنت ہیں. جیسا کہ پولوس نے روم کے اوپر درشٹی ڈالی اس کی بہت ساری ہزاروں کی جن سنکھیا پر اور وبھن استھانوں پر جہاں وہ گیا تھا, اس نے دیکھا ہوگا کہ نگر مورتی پوجا میں بدل گیا تھا, پرنتو وہاں اس نگر میں رتن تھے جن کے لیے اس نے پریشرم کیا تھا, وہ وہاں وشرام کر رہے ہیں اور انتم دن کے سادھن پرنتھان کی پرتیکشا کر رہے ہیں جو کہ ہم وشواس کرتے ہیں سمیپ ہی ہے. ہم فینکس کی ہر کلیسیا کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں پتا, ان میں سے پرتیک کے لیے کہ آپ اپنا آتما ان سب پر انڈے لیں, وہاں سوسماچار کی جیوتی جلے جب تک کہ راتری کے ناچ گھروں کی روشنیاں اور دیسی شراب دھیمی نہ پڑ جائے. پربھو سے پردان کریں انہیں پائے, لوگوں کے ہردے آپ کے لیے اتنے پیاسے ہو جائیں آپ کے اس آگمن کے سمے کے چلتے, اور آپ سچ میں ہمیں ملنے آئیں. پربھو اپنے آتما کے دوارا ہم سے بھینٹ کریں اور اسے ہم پر انڈے لیں. پربھو ایک مہان بھاگ کے ساتھ آنے والی بیداری کو آشیشت کریں. پتا میں آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہاں بہت سے ویپاری ہوں گے اور دوسرے جن کی اگوائی مسیح کو جاننے کے مہان انوبھو کے ساتھ ہو پوتر آتما کے بپتسمے کے دوارا. پربھو اسے گرہن کریں. اس کلیسیا کو آشیشت کریں جہاں آج راتری ہم ہیں. یہ پیارا چھوٹا سیوک پاسٹر پربھو کا سمپورن جیون یہ یہاں ایک ادھارن کے سامان کھڑا ہے, یہ اس نگر کے لیے جیوتی ہے تاکہ لوگ ستیہ کا مارگ دیکھ سکیں. میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ اس کے سدسیوں کو نمکین بنا دیں گے اور ہر ایک کو جو پڑوس میں ہے اور سارے نگر میں ان کے سامان پیاس ہوگی. اب میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ کلیسیاں ایک ادیش سے لگائی ہیں, یہ برائی کے ورودھ میں ایک گواہی ہے اور ان میں سے ایک گواہی ہے کہ پرمیشور نیائی اور سچا ہے. میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ انہیں بہتائے سے آشیشت کریں گے پتا. اب آج راتری سبھا کا یہ آنے والا بھاگ کوئی سندے نہیں, پرنتو آپ نے اپنی آشیشیں پہلے ہی انڈیل دی ہیں. ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ پربھو آپ ہمیں اپنی مہان اپستھتی سے آشیشت کریں گے, ہمارے دوارا باتیں کریں وچن کے دوارا آتما میں. ہم یشو کے نام میں مانگتے ہیں, آمین. اس دوپہر بعد میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا, میری درشتی ایک چھوٹے سے وشے پر گئی جسے کہ میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کا پرسنگ پریوگ کرنا چاہتا ہوں. یدی پرمیشور کی اچھا رہی اور میں نے تھوڑے سے پوتر لیکھ لکھے ہوئے ہیں اور کچھ تھوڑی ٹپنیاں اس وشے میں, میں آپ سے تھوڑا بولنا چاہتا ہوں کہ پرمیشور کی مہیما ہو. اب آپ جو نکالنا چاہتے ہیں تو آئیے نکالیں گنتی کا 14 ادھیائے اور 41 پد سے آرمبھ کر کے, گنتی 14:41, اور ہم اسے پڑھیں گے. جیسا کہ یہ آرمبھ ہوتا ہے, تب موسیٰ نے کہا تم یہوہ کی آگیا کا الگھن کیوں کرتے ہو, یہ سفل نہ ہوگا, یہوہ تمہارے مدھیہ میں نہیں ہے, مت چڑھو نہیں تو شتروؤں سے ہار جاؤ گے.
وہاں تمہارے آگے امالیکی اور کنانی لوگ ہیں, اس لیے تم تلوار سے مارے جاؤ گے. تم یہوہ کو چھوڑ کر پھر گئے ہو, اس لیے وہ تمہارے سنگ نہیں رہے گا. परंतु वे ढिटाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से नहीं हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ाए और हुरमा तक उनको मारते चले आए। होने पाए प्रभु अपनी आशीष वचन के पढ़े जाने पर दे। मैं यहाँ से एक मूल पाठ लेना चाहता हूँ, यदि प्रभु की इच्छा है। मैं यहाँ से एक मूल पाठ लेना चाहता हूँ अनुमान लगाना के विषय में। मुझे वचन को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सत्य है। वचन ही है जिसके द्वारा हम स्थिर रहते हैं। ये सदा परमेश्वर का वचन ही होना चाहिए, या हम गलत मार्ग पर चले जाएंगे। ये संत यूहन्ना में लिखा हुआ है। मैं सोचता हूँ लगभग 15वें अध्याय में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, समझे, वचन तुम में बना रहे, समझे, तो तुम जो चाहो मांगो और ये हो जाएगा, क्योंकि ये तुम नहीं, ये वो वचन जो तुम में है और वचन परमेश्वर है। देखा, परमेश्वर आप में है। परमेश्वर वचन है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। अब पवित्र आत्मा की वापसी में वचन को हमारे अंदर ला रहा है और ये वहाँ वास कर रहा है, तो फिर ये तुम नहीं जो बोलते हो, ये वचन स्वयं ही बाहर निकल रहा है। इसलिए ये वचन है कार्य को घटित करेगा। दुराशी, मान लेना। मेरे पास शब्दकोश है और मैंने उसमें इस शब्द को देखा कि सही अर्थ क्या है। वेबस्टर कहता है इसका अर्थ बिना वास्तविक अधिकार के जोखिम उठाना, किसी चीज को मान लेना बिना वास्तविक अधिकार के जोखिम, या बस मान लेना बिना वास्तविक अधिकार के जोखिम उठाना, या मान लेना बिना अधिकार के किसी चीज को करना, बिना किसी वास्तविक अधिकार के इसे करना। अब हमारी दो विशेष छुट्टियां बीती हैं, जिसे हम यहाँ अमेरिका में बड़े दिन और नए साल करके जानते हैं। वास्तव में ये बड़ा दिन नहीं है, ये वो दिन है जिसे हमने तय कर लिया है। निसंदेह हम ये अनुभव करते हैं कि ये प्रभु का जन्म नहीं है, वो दिसंबर 25 में नहीं जन्म सकता, क्योंकि वहाँ बहुत ही ठंड होती है, चरवाहे बाहर पहाड़ों पर नहीं हो सकते और आदि आदि। और यदि आप कभी यहूदिया में रहे हों वर्ष के इस समय में, आप जान जाएंगे कि ये जाड़े की ऋतु नहीं थी, परंतु ये सोचा गया कि संभवतः ये अप्रैल या मई रहा होगा जब मेमनों का जन्म होता है, और वो इस प्रकृति के समान आया होगा, जैसे कि अधिकांश मेमने जन्म लेते हैं। वो परमेश्वर का मेमना था और वो इसी समय ही जन्मा होगा, परंतु मैं नहीं समझता कि हमने किसी दिन को निश्चित किया है। वो चिंता नहीं करता क्योंकि वास्तविक दिन गड़बड़ हो गया, परंतु ये उसके जन्मदिन की याद में है। बजाय कि हम उसका गुणगान करें और परमेश्वर की आराधना का दिन बनाएं, क्योंकि उसने अपना पुत्र हमारे लिए भेजा, हम उत्सव करते हैं, समझे, हम बड़े दिन का त्योहार मनाते हैं। और ये त्योहार मनाना नहीं है। आप वाशिंगटन का जन्म दिवस मना सकते हैं, या लिंकन का जन्मदिन, या किसी और महान व्यक्ति का जन्म दिवस आप उसे मना सकते हैं, परंतु बड़ा दिन आराधना का दिन होना चाहिए। हमने इसे घुमा दिया और एक महान व्यापार के दिनों को बना दिया, एक दूसरे को उपहार देना तय कर लिया, और यदि हम ये नहीं करते हैं तो भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और उसका भुगतान करते हैं, और ये सब घूमकर बदल दिया गया। और कुछ सप्ताहों पहले मैं और मेरी पत्नी अपने छोटे से गांव के बाजार में थे, अपने घर पर। हमने दो लड़कियों को आपस में बातें करते सुना और उनमें से एक ने कहा, भाई तुम बड़े दिन पर अपनी माँ के लिए आपने क्या लिया है? उसने कहा, ओ मैं उनके लिए क्या लूँ, सोच नहीं पा रही हूँ, परंतु वो सिगरेट के बड़े डिब्बे को पाकर आनंदित हो जाएगी, और ऐसा माँ के लिए। और उसने कहा, मैंने पिता के लिए शराब की बोतल ले ली है, और बोली है, आप जानते हैं जब, और वो बोली, भाई मैं प्रसन्न हूँ कि प्रिय तुमने ये किया है, क्योंकि मैंने उनके लिए ताश के पत्ते लिए हैं, आप समझे। आप देखिए, ये बड़ा दिन है, समझे, ये संसार कब तक इसे मनाता रहेगा? और तब मैं समझता हूँ वे मान लेते हैं कि यही इसे करने का सही तरीका है, देखा, और यही है जो वे करते हैं, परंतु वे इसे बस मान लेते हैं, समझे। और फिर नया साल आता है और नए साल के बाद क्यों अधिकांश लोग महान नए वर्ष की दावत करते हैं, और तब इस नए वर्ष की दावत में वे सब आधी रात तक डटकर पीते हैं, और मैं समझता हूं वे अपने पापों को सब कुछ भूलकर मार देते हैं कि उन्होंने इस वर्ष में क्या किया। वे इतनी पी लेते हैं कि वे अपने सारे पापों को भूल जाते हैं, और मैं समझता हूँ वे ये मान लेते हैं कि इस प्रकार से वे अपने पापों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, परंतु वे गलत हैं। ये केवल और पाप करवाता है। आप दूसरा गलत करके आप किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए ये बस मान लेना है, दुराशी कि बाहर आ जाएं।
And the pleasure of drinking,
मुझे आश्चर्य है कि लोग क्या सोचते हैं कि जब वे पीने का आनंद, जिसे वे आनंद कहते हैं, जब विस्की देह की क्रिया में जाती है कि ये लहू को इस प्रकार से गर्म करती है कि ये विचारों को खाली कर देती है, मस्तिष्क को, और आप खाली हो जाते हैं और आपका मस्तिष्क अल्कोहल की गर्मी जब तक लहू में रहती है खाली रहता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं ये एक प्रकार से आपके मस्तिष्क को खाली कर देता है। क्यों? यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है तो ये आपके मस्तिष्क को खाली कर देता है। आप नगर के हर डॉक्टर को ढूंढते रहेंगे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि इससे पीछा छूट जाए, और फिर भी लोग मसीह के जन्म को मनाते हैं, अपने दुखों को मस्तिष्क खाली करके निकाल देना चाहते हैं। मेरे मित्रों, क्या आप ये अनुभव नहीं करते कि आपको उन लोगों से न्याय पर मिलना पड़ेगा? आप इस बात से बच नहीं सकते, परंतु वे मान लेते हैं कि इस राष्ट्र का एक आम रिवाज है, यह आपके मस्तिष्क को बड़े दिन की रात को खाली कर देता है, या उस नए साल की रात को पीने के द्वारा आपके मस्तिष्क को खाली कर देता है। ये इसे छोटा साफ सुथरा आनंद कहते हैं, एक छोटा सा आनंद जो कि लोगों को अपने आप को खाली करने के लिए करना चाहिए। ये कैसा आनंद होगा अपने मस्तिष्क को खाली करना, इतना खाली कि यहाँ तक कि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, और आनंद करना कहते हैं। अब मैं संसार के लोगों को ये करते हुए देख सकता हूँ, परंतु जब ये कलीसिया में होने लगता है, लोग जो अपने को मसीही कहते हैं, तो ये दर्शाने जा रहा है कि कहीं समझौता किया गया है, क्योंकि पापों को भूलने का मार्ग ये नहीं है। वे लोग परमेश्वर की पुस्तक में हैं, इससे अलग होने का केवल एक ही मार्ग है कि इसे भूल जाने वाले समुद्र में डाल दें, यीशु मसीह के लहू में, और फिर आपके विरोध में कुछ भी याद नहीं किया जाएगा। केवल एक यही मार्ग है, परंतु उन्होंने ये मान लिया है कि इसे करने का सही मार्ग वही आम तरीका जो लोग इसके लिए करते हैं। हमारे पास भी नामधारी प्रचारक हैं, समस्त राष्ट्र में महान नामधारी, और ये सेवकगण अपने नामधारी की शिक्षा का प्रचार करते हैं, ये मानते हुए कि वे बिल्कुल ठीक वही कर रहे हैं जो ठीक है। उनमें से बहुत से कोई मतलब नहीं वचन के कितने विरोध में हैं, वे मानते हैं कि वे ठीक कर रहे हैं, और जब वे उन शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, होने दें, वो चाहे जो हो सकता है। वे मान लेते हैं यही है जो परमेश्वर की मांग है, एक निश्चित मतसार या एक निश्चित मान्यता। वे सोचते हैं कि यही परमेश्वर की मांग है। वे मान लेते हैं कि वे ऐसा करके और मतसार का प्रचार करके लोगों को स्वर्ग ले जा रहे हैं, उन्हें कलीसिया का सदस्य बनाकर वे मानते हैं कि ये ठीक है, और आपको यही करना है। ये कितनी भारी गलती है, ये भयानक गलती है कि बस ये मान लिया। बाइबल में केवल एक ही मतसार है, और वो मसीह, समझे। हमें केवल उसे जानना है, उसे जानना ही जीवन पाना है। इसके बाहर जीवन का कोई मार्ग नहीं है। इसके बाहर कि मसीह को अपने व्यक्तिगत अनुभव से उसके संग होना, और कलीसिया के सदस्य बनने के द्वारा नहीं, या मतसार को रट लेना। और जब हम इसे केवल हल्की परिस्थितियों में लाते हैं कि हमने इस कारण पी ली, मसीहों के द्वारा नए साल की दावत जो कहलाने वाले हैं, इसी कारण हमने बड़ा दिन और नया साल मनाया, और दूसरे पवित्र दिन और आदि आदि, यही कारण है कि लोग ये करते हैं, क्योंकि वे यही करना जानते हैं। भाई निश्चय ही यदि वहाँ कुछ है जिस कारण उस दिन लोग कुछ करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ कुछ वास्तविक किया जाना चाहिए। कहीं कुछ तो है कि सही चीज करें। यदि करने के लिए गलत चीजें हैं, तो हर गलत बात का कुछ सही है या ये सही होगा। इसलिए सही और गलत होगा, नकारात्मक और सकारात्मक। यहाँ एक सच्चा डॉलर होना है, जिससे कि नकली डॉलर बना है एक सच्चा डॉलर होगा। और जब हम एक नामधारी या लोगों का एक झुंड देखते हैं जो किसी चीज के लिए भूखे हैं और वे कलीसिया में जाते हैं, वे कलीसिया के सदस्य बनते हैं, तो वे ये दर्शाते हैं कि कहीं कुछ है जिसके लिए वे भूखे हैं। मनुष्य का प्राण किसी चीज के लिए रोता है। ये इस बात को जानता है कि कुछ है जो उसे यहाँ लाया है। वे ये इस बात को जानता है कि कहीं कुछ है जो यहाँ से आगे है। वे जानते हैं कि वे रात से निकल कर आए हैं और वे वापस रात्रि में चले जाते हैं, और वे जानना चाहते हैं कि वे कहाँ से आए हैं और वे कहाँ जा रहे हैं। अब यदि ये भूख वहाँ है तो ये आपके मस्तिष्क का विनाश करके कभी नहीं किया जा सकेगा। आप जानते हैं, मैंने सुना कोई यहाँ सभा में था कुछ समय पहले, किसी ने कहा अपने मस्तिष्क को खाली हो जाने दो, बस सीधे सीधे आकाश की ओर ताको, अपने मस्तिष्क को खाली करो, आपको एक अनुभव होगा। और कोई संदेह नहीं, परंतु आप जो करते हैं ये ठीक है, परंतु आपको एक अनुभव होगा। परंतु वो क्या अनुभव है? आप देखिए, जब आप ये करते हैं तो आप अपने प्राण को शैतान के लिए खोल देते हैं। वो आपको कुछ देगा, ये सच बात है। परंतु मैं सोचता हूँ जो व्यक्ति मसीह के पास आ रहा है, वो अपनी सारी बुद्धि के साथ जो उसके पास है आए, और उनके मस्तिष्क में उल्लेख करे। जब वे उसके पास आते हैं, वचन की हर प्रतिज्ञा के साथ अपने मस्तिष्क को जागरूक रखें। जब आप मसीह के पास आते हैं, तो इसे खाली करके ना जाएं। शैतान आपसे कुछ भी करवा लेगा, समझे? वे आपको संवेदना देंगे, वे भी ये कर सकते हैं। परंतु आप एक अनुभव चाहते हैं, कुछ वो जो बाइबल सिखाती है, कुछ जो वास्तविक है। तब वे अनुमान सा लगाते हुए चले जाते हैं। भाई थोड़ी सी उत्तेजना सी, मैंने अपने सामने ज्योति देखी या ऐसे ही कुछ मुझे मिल गया, और वे कभी भी कुछ भिन्न नहीं जीते। वे इसी पर चले जाते हैं। बहुत से आकर कहते हैं, जी हाँ हाँ, मैंने इस मत्सार को याद कर लिया है, मैं विश्वास करता हूँ कि अब सही हूँ। अब आप मानते हैं कि आप सही हैं? आप बस सोचते हैं कि आप हैं। अब जब वे ये करते हैं, तब लोग आकर कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, ये मानते हुए कि वे जो कर रहे हैं सही है। और उनमें से बहुत से मत्सार को लेने के लिए कहते हैं, जिसके द्वारा जीवन बिताएं, उन पर थोड़ा सा जल छिड़क देते हैं और उन्हें कलीसिया का सदस्य बना देते हैं, तब फिर ये सब ठीक हो गया। वे लोग निष्कपट हृदय के साथ, भले लोग, ये मानते हुए कि वे स्वर्ग के मार्ग पे जा रहे हैं, बाहर चले जाते हैं। अब यही जहां परेशानी आती है। ईमानदारी से सोचने वाले लोग ये विश्वास करते हैं, यदि वे किसी निश्चित दशा में बुलाए जाते हैं, या एक निश्चित स्थान, या कोई निश्चित शपथ, या कुछ इस प्रकार का, वो सब जो परमेश्वर की मांग है, एक आज्ञा का पालन करते हैं, या 10 आज्ञाओं के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं, या ऐसे ही कुछ कि कुछ अच्छे कार्य करो, सामाजिक बदलाव, पड़ोसी को कुछ दो, वे मान लेते हैं कि ये धर्म है और बस उनको यही करना है। परंतु ये कितना गलत है। जहाँ तक हम सोचते हैं हम उसके आगे जीवन बिता रहे हैं, तब हम सोचते हैं कि वर्ष दर वर्ष फीनिक्स में आ रहे हैं और दूसरे स्थानों में। मुझे आश्चर्य नहीं यदि हम अगले वर्ष यहीं जमा हूँ, तो मुझे आश्चर्य होगा जब मैं जाता हूँ, क्या मैं ईमानदार था? क्या मैंने हर चीज को वैसे ही स्पष्ट रखा है जैसे कि मैं जानता हूँ कि कैसे रखना है? प्रभु, क्या मैंने आपके निर्देशों का पालन किया है? क्या मैंने एक बात आपके वचन के विरोध में कही, या क्या मैंने हर बात आपके वचन के अनुसार सही रखी? क्योंकि यही लोग मेरे साथ न्याय में खड़े होंगे, और जो कुछ मैंने कहा मुझे उसका उत्तर देना होगा, जबकि मैं इस निश्चित स्थान में हूँ जहाँ ये है। परंतु लोग इन सेवक गणों के पीछे, मैं विश्वास करता हूँ, बहुत सारी शिक्षा के बाद मान लेते हैं और डिग्री आदि लेते हैं, कलीसिया का मत्सार सीख लेते हैं और वापस जाकर पास्टर की नौकरी पा लेते हैं। और मैं ईमानदारी और निष्कपटता से विश्वास करता हूँ, उतना ही ईमानदार जितना कोई हो सकता है, निष्कपटता इसको सत्य नहीं बनाती, ये कुल मिलाकर सत्य नहीं है। मैं खड़ा हुआ था जब एक वर्ष अधिक यहाँ अधिक समय नहीं हुआ भारत में, और मैंने उन्हें एक मूरत के साथ देखा जिसके कानों में मणिक लगे थे जो कि हजारों डॉलर के थे, और भयानक सा दिखने वाला चेहरा जिसमें बड़ी बड़ी आंखें थी, और देखा कि पंडित लोग उस पर पवित्र जल डाल रहे थे जिसका शरीर मछली के कांटों से छिदा हुआ और उनमें पानी के गुब्बारे लटक रहे थे, और देखा कि आग का एक गड्ढा लगभग 30 गज लंबा हो सकता है, 10 फुट चौड़ा और कई फुट गहरा, अंगारों से भरा हुआ, और इन यातनाओं के साथ उस मनुष्य को देखा, और हो सकता है उसके होंठों के साथ यदि वो झूठ बोल रहा था या कुछ झूठा किया हो, तपस्या कर रहा था, अपनी जुबान बाहर निकाले हुए उसे नाक के साथ सिर रखा था और ऊपर के होंठों में सुइयां चुबा रखी थी और अपने माथे तक पहुंचा रखी थी यहाँ तक, और इस प्रकार से बाहर निकाल रखी थी, और सब प्रकार की घिनौनी चीजें, और पंडित पवित्र जल उस पर भी गिरा रहा था, और फिर उन्होंने एक बकरी मारी ताकि लहू का बलिदान करें कि आग में से चलकर निकले, और ये मानते हुए कि वे प्रभु की इच्छा कर रहे हैं, और वे ईमानदार हैं, वे ईमानदार हैं। वहाँ अफ्रीका में वे उन छोटे छोटे बालकों को लेते हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे बालक, काले बालक छोटे छोटे, और उन्हें लेते हैं, तांत्रिक चाकू लेकर और उन्हें काटता है, और बेरी की स्याही को लेकर उनके मुंह पर मलता है, और उन्हें क्रूर बना देते हैं, और छोटी लड़की को बधिया कर देते हैं, और आदि आदि कि उन्हें कुंवारी बनाए रखें। इस प्रकार की सारी चीजें हृदय की सच्चाई के साथ निश्चय ही वह करते हैं, उस मूरत के सामने गिर पड़ते हैं, और यहाँ तक कि श्रद्धा में होते हुए अपने प्राण भी दे देते हैं, परंतु श्रद्धा से ये नहीं होता कि वे मान लेते हैं ये सही है, वे बस सोचते हैं कि ये ठीक है, और आप हम उन्हें देखते हैं और हम सोचते हैं कि इन्हें अलग से सिखाना चाहिए, परंतु हम अमेरिका में भी वैसे ही बुरी दशा में हैं, और यदि कुछ बुरा होता है ये सत्य है, हम मान लेते हैं, हम इसे इसको मान लेते हैं, हम बिना किसी वास्तविक अधिकार के ये करने का साहस करते हैं। बाइबल में मसीहों को कोई अधिकार नहीं कि शराब पिएं, जुआ खेलें, झूठ बोलें, दंगा करें। लोग कलीसिया के सदस्य बनते हैं और ऐसा ही करते हैं, वे इन कलीसियाओं के सदस्य बनते हैं, स्त्रियां अपने बाल कटाती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, धूम्रपान करती हैं, निश्चय ही ऐसा करती जाती हैं। वे सोचते हैं कि ये ठीक है, वे मानते हैं कि ये ठीक है, परंतु ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लाखों करोड़ों मील तक ये ठीक नहीं। परमेश्वर का वचन इसका पक्ष नहीं लेता, ये इसके विरोध में है, परंतु वे मान लेते हैं कि ये सही है। यही कहीं पश्चिमी किनारे पर, अब ये प्रेस्बिटेरियनों पर नहीं है, ये पेंटिकॉस्टल एक अच्छी बड़ी कलीसिया, शानदार संस्था, परंतु वे वचन से इतना दूर हट गए हैं।
This lady wore long hair. She had it done in a little round thing on the back of her head. And they'd go around to her and say, hey, your tire's flat in the back. And all of them made fun of her. Even the pastor told her she should have her hair cut because it was different. She asked me, she said, Brother Branham, what about it? I said, he told you something wrong.
इस महिला के लंबे बाल हैं, इसके बाल छोटे से गोले में पीछे बंधे हैं, और वे इस गोले में चारों ओर घूमकर बंधे हैं और कहते हैं, अरे कि तुम्हारे पहिए का पंचर हो गया, वे सब उसका उपहास उड़ाते हैं, यहाँ तक कि उसका पास्टर भी उससे बाल कटाने को कहता है कि उसे कटा लेने चाहिए क्योंकि ये कुछ अलग सा लगता है। उसने मुझसे पूछा, उसने कहा, भाई ब्रैनम इस विषय में क्या है? मैंने कहा, उसने आपको कुछ गलत बताया है। हमारी पेंटिकॉस्टल बहनें वही चीजें करती हैं। संसार के समान उस दिन किसी ने कहा, बोला, लोग आपका नबी के समान सम्मान करते हैं, क्यों नहीं आप संसार में उन लोगों को कुछ नहीं सिखाते कि आत्मिक वरदान कैसे प्राप्त करें। उन लोगों को छोड़ दें जैसे वे हैं, उन स्त्रियों को, उन पुरुषों को जैसे हैं, उनके व्यवहार हैं, उन्हें छोड़ दें। ये कहने का आपका कोई मतलब नहीं। उन्हें महान गहरी बातें, आत्मिक बातें सिखाएं। मैंने कहा, मैं उन्हें बीजगणित कैसे सिखा सकता हूँ जबकि वे कह गए भी नहीं जानते। आप उन्हें उच्च शिक्षा कैसे दे सकते हैं? वो तो नर्सरी में से भी नहीं निकले हैं। यहाँ तक कि साधारण आचरण भी नहीं है कि स्वयं को कैसे शुद्ध रखें, मसीहों के समान व्यवहार करें, मसीहों के समान कपड़े पहने, मसीहों के समान रहें और फिर आत्मिक वरदानों के विषय में बातें करें। नर्सरी से बाहर निकलें, वे मान लेते हैं कि ये सही है, परंतु ये गलत है। आपको ये नहीं करना चाहिए। आपकी माताओं ने ये नहीं किया। वर्षों पहले ये पेंतेकोस्तल में था, परंतु वे ये करते हैं। और तुम पुरुषों, आपका पक्ष क्या है कि आप अपनी पत्नियों को ये करने देते हो? आप अब भी नर्सरी में हैं, समझे? ये ठीक बात है। तुम मानते हो कि ये सही है, परंतु ये नहीं है। आप कहते हैं, भाई पत्नी ये वो करेगी। आप घर के मुखिया हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जी हाँ, आप बस मान लेते हैं कि ये सही बात है क्योंकि बाकी लोग ऐसा करते हैं। मैं चिंता नहीं करता कि बाकी लोग क्या करते हैं। ये जो परमेश्वर का वचन कहता है वही वो जो सत्य है, बस मान लेते हैं, समझे? आप कहते हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक है कि पास्टर क्या कहता है, मैं चिंता नहीं करता। वचन सही है, वचन ही है जो सही है, समझे? अनुमान मत लगाइए, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। बस वही कहें, करें जो वचन करने को कहता है। जी हाँ श्रीमान, लोग वे करते जाते हैं, वैसे ही करते रहते हैं, परंतु वे इसे सही मानते हैं जबकि ये नहीं है। लोग कहते हैं, भाई ये बहुत ही अच्छा है, वो ये करने के लिए बहुत अच्छा है, परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बहुत भला है। अधिक समय नहीं हुआ, एक छोटे युवा ने कहा हमारे नगर में, हमारे शहर, उसने कहा आप जानते हैं क्या, उसने कहा परमेश्वर इतना भला है भाई ब्रणम, उसने कहा आप जानते हैं परमेश्वर बहुत भला है, वो मुझे कुछ भी करने देता है। उसने कहा वो चिंता नहीं करता, वो बुरा नहीं मानता क्योंकि वो मेरे लिए बहुत भला है। निरर्थक बात। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। हमने उसके विषय में इतना अधिक सुना है कि वो भला परमेश्वर है और मैं विश्वास करता हूँ कि वो भला परमेश्वर है। परंतु यदि वो भला परमेश्वर है तो उसे एक न्याय परमेश्वर होना है। वो हमें ये वो करने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता और हम उन्हें न माने और न्याय से बचने की आशा करें। वो क्रोध का भी परमेश्वर है, न्याय का परमेश्वर, यही है जो उसे भला परमेश्वर बनाता है क्योंकि वो अपना वचन बनाए रखता है, वो इसका ध्यान रखता है। इसलिए हम गलत करने की आशा नहीं करते। ये चीजें जो हम करते हैं और उन्हें चलाए रखते हैं, नहीं, हम बस वो भी नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो भला है, ये सत्य है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गलत समझें, परंतु परमेश्वर भला परमेश्वर है, ये बिल्कुल ठीक बात है। परंतु स्मरण रखें, केवल एक ही मार्ग है कि वो भला हो सकता है, कि न्यायी हो। यदि वो न्यायी है तो उसे अपनी ही आज्ञाओं को बनाए रखना है, और यदि वो अपनी आज्ञाएं बना रखता है तो फिर मसीहों के लिए ये गलत है कि वे संसार के साथ सहनीय बने। ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए। हम एक भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं और हम केवल साहस कर रहे हैं, बिना किसी अधिकार के मान रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है और इस अधिकार पर हमें टिके रहना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या कहा। यहाँ इसराइल ये मान लेता है कि वे सही थे, वो एक भला परमेश्वर रहा था, जो कि मैं गिनती में पढ़ता हूँ। वो एक भला परमेश्वर रहा था, वो मिस्र में गया था और उन्हें दासत्व से छुड़ा लाया। निश्चय वो भला परमेश्वर था, क्यों? यहाँ तक कि उसने स्वर्ग से हम पर मन्ना भी बरसाया। निश्चय ही वो भला परमेश्वर, ये बहुत ही अच्छा था। परंतु जब वो समय आया कि उसके वचन का पालन किया जाना था, जब ये कादेश बर्निया पर आया और भेदिये दूर देश के प्रमाण के साथ वापस आए, तब उन्होंने मान लिया कि ठीक रहेगा यदि वे एक ओर से होकर निकल जाएं। परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ और मूसा ने कहा कि तुम वहाँ अमालेकियों पर मत चढ़ने को जाओ, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमसे करने को कहा तुमने उसका पालन नहीं किया, समझे? आज्ञा ये थी कि मैंने वो देश तुमको दिया है, जाओ और उसे जा करके ले लो। और वे उसके प्रमाण के साथ वापस आए, परंतु उन्होंने संदेह किया। वे वापस चले जाना चाहते थे और बल्कि वापस मिस्र को बजाए कि जाकर उसे ले लें, क्योंकि वे डर गए थे। आज बहुत से लोग डरते हैं कि कोई आपका पड़ोसी आपके विरोध में कुछ कहने जा रहा है। बहुत सी बार पास्टर कुछ कहने से डरता है। उस सुसमाचार के विषय में मुझे डर है कि ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। उन्हें तो ठेस लगनी ही है, ठेस लगनी ही चाहिए। कभी कभी स्त्रियां डरती हैं, कहती हैं, भाई ब्रणम, जैसे कि ये बेचारा शाऊल को बोली, मैं डरती हूँ यदि मैं अपने बाल नहीं कटवाती मेरा पति और बाकी स्त्रियां। अच्छा भाई, उन बातों का अनुमान ना लगाएं, इसके लिए परमेश्वर का वचन लें। आप जानते हैं कि आपके पास एक प्राण है, उसे बचाना ही है। क्या आप अनुभव करते हैं कि मृत्यु ने उस प्राण को नहीं बदला? मृत्यु कुछ भी नहीं बदलती सिवाय निवास स्थान के। ये जो भी है, जब ये आपको छोड़ती है, हम अंतिम संस्कार गृह में जाते हैं, हम मृतक के लिए शोक का अनुभव करते हैं। कभी कभी हम उनके लिए कुछ सबसे अच्छा सोचते हैं जो हम उनके लिए सोच सकते हैं। ये ठीक बात है, परंतु यीशु ने कठोरता के साथ कहा, जब तक मनुष्य नया जन्म ना ले, वो किसी भी प्रकार प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए वहाँ कोई बीच का मार्ग नहीं है। आप मान लेते हैं कि वो स्वर्ग को चला गया, परंतु वचन के अनुसार उसने ये नहीं किया। देखिए, आपने बस मान लिया कि उसने किया। भाई, वो एक अच्छा कलीसिया का सदस्य था, अपने पड़ोसियों के साथ भलाई की, ये बहुत अच्छा है, हम ये विश्वास करते हैं, ये अच्छा है, इसके विरोध में कुछ नहीं कहना है। परंतु क्या आपने अनुभव किया किस चीज ने लोगों को प्रतिज्ञा के देश से अलग किया? वे किनारे के विश्वासी थे, वे इतनी दूर निकल गए परंतु और आगे ना जा सके। आज के लोग, पुरुष और स्त्रियां इसी प्रकार करते हैं, वे परमेश्वर में इतनी दूर जाएंगे, वे कहेंगे, हाँ मैं विश्वास करूंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं ये वो या वो करूंगा, कलीसिया कोई सा भी नियम लगाए। परंतु जब ये मसीह को समर्पित होने के लिए आता है, आपका जीवन और वो सब यही जहाँ वो रेखा है, यही जो लोगों से कहलवाता है। भाई, मैं उन बाकी लोगों को देखता हूँ, और यहाँ आप पुराने मसीही नौजवानों को, युवा लड़की बूढ़ी स्त्री को देखती है, युवा लड़का बूढ़े पुरुष को देखता है, और देखिए आप कैसा व्यवहार करते हैं, देखते हैं कि आप क्या करते हैं, और वे मान लेते हैं कि वे सही हैं, क्योंकि जिस प्रकार आप करते हैं आप करते हैं। अब यदि पेंटिकॉस्टल कलीसिया वास्तव में अपने स्तर पर करेगी, यदि वो वैसी चीजें जिसका वो दावा करती है, तो संसार उसके लिए प्यासा होगा। परंतु जब वे पेंटिकॉस्टल को नीचे की दशा में देखते हैं, बहुत सी चीजों के साथ लगभग जो आज संसार के पास है, तब वे मान लेते हैं वे उतने ही अच्छे हैं जैसे आप हैं। ये ठीक बात है, उनके पास ये अधिकार है, समझे? परंतु हम इससे अलग हो गए हैं, हम इसको नहीं मान सकते, हमें वचन के साथ बने रहना है। अब ये लगभग असंभव बात है कि आप लोगों से प्रार्थनाएं, उपवास और प्रभु को पुकारें, ये करवाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि कलीसिया इतनी नींद में, सुस्ती में, इन अंत के दिनों में बहुत दुखदाई है, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आकर झकझोरता और प्रचार करता हूँ और उन बातों को कहता रहता हूँ। परंतु भाई बहन, ये सत्य है, मैं बस इसे पकड़े नहीं रह सकता, ये सुसमाचार है, इसको प्रचारना ही है, इसे गवाही के रूप में प्रचारना ही है, ये सत्य है। इसलिए मैं सोचता हूँ हम बहुत अधिक अनुमान लगाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं क्योंकि हमारे पास अनुभव है। 5 वर्ष पहले भाई ब्रणम, मैं सड़क पर जा रहा था एक दिन, और पवित्र आत्मा ने मुझे आशीषित किया, और मैं सड़क पर भागा। मैंने सोचा, प्रभु आपको मुझे कहीं ले कर जाना है, क्योंकि मैं सड़क पर दुर्व्यवहार करने जा रहा था। हो सकता है कि आप कहीं कलीसिया से बाहर हों और आपको अनुभव हुआ, और आप अन्य भाषा आदि में बोले, भाई ये ठीक बात है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ। बाकी भी यही कर रहे हैं, आप बस एक अनुमान लगा रहे हैं। इसराइल के पास वे अनुभव थे, इसराइल को मिस्र से बाहर आना था, इसराइल ने वे चिन्ह और आश्चर्यकर्म और अद्भुत सब अपने मार्ग में होते हुए देखे, वे लाल सागर से होकर निकले जैसे सूखी भूमि पर से, उन्होंने हर रात्रि स्वर्ग से मन्ना गिरते हुए देखा, वे अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों के गवाह थे। परंतु फिर वे परमेश्वर की एक आज्ञा को न मानकर असफल हो गए, और क्या हुआ, उनकी आशीषें उन पर से हट गईं, और उन्होंने मान लिया कि क्योंकि परमेश्वर इतना भला था कि बस ये चलता रहेगा, अच्छा और अच्छा। परंतु परमेश्वर ये नहीं कर सकता था। मैं सोचता हूँ कि हम उसी स्थान पर आ चुके हैं, हम कादेश बर्निया पर आ गए हैं, जहाँ परमेश्वर ने कलीसिया को दे दिया है, जिसे रुकना कहते हैं, और वापस प्रार्थना के जीवन पर, वापस पवित्रताई पर, वापस उस स्थान पर आएं कि हम स्वयं को पवित्र करें, संसार की चीजों से अलग हो जाएं, और अपने मध्य के छोटे छोटे मतभेदों से अलग हो जाएं, और परमेश्वर के पास वापस, और भाईचारे का प्रेम, दीनता, और फिर से परमेश्वर की सामर्थ पर, समझे? हम बस मान लेते हैं कि हम सही भाग रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आशीष दे रहा है। संभवतः वो इसराइल को उसी दिन आशीष दे रहा था जब उन्होंने वहाँ देश में जाने से मना कर दिया कि प्रतिज्ञा के देश को ले लें। उसी दिन उन्होंने अविश्वास किया, उन भेदियों का मन्ना उस रात्रि भी वैसे ही गिरा, परंतु कुल मिलाकर वे प्रभु की इच्छा से बाहर हो गए थे। वे दूसरा युद्ध नहीं जीत सके जब तक वे वापस नहीं आए और बातों को परमेश्वर के साथ ठीक नहीं किया। अब ये मैं सोचता हूँ कि कलीसिया के लिए ये समय आ गया है, वापस फिर परमेश्वर के पास आएं, वापस आएं और आरंभ करें जैसे उसे जाना चाहिए, ताकि हम अपनी यात्रा को जारी रख सकें। तो भी वे जानते थे कि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है। उसने उन पर दया की, उसने उन्हें अपनी महिमा दिखाई कि कैसे वहाँ नहीं था, यहाँ तक कि उनकी जूतियाँ भी नहीं फटी, उनके वस्त्र भी नहीं उधड़े और हर रात्रि मन्ना बरस रहा था। उन्होंने आश्चर्य कर्म और चिन्ह साथ साथ होते देखे कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ थी। फिर भी उन्होंने मान लिया क्योंकि परमेश्वर ने वो किया था कि वे वहाँ ऊपर जा सकते थे और उस पहाड़ को ले लेते। ये यहाँ है जब हम कलीसिया में आत्मिक वरदान चाहते हैं। यदि हम परमेश्वर की सामर्थ को चाहते हैं और परमेश्वर की वास्तविक सामर्थ को, अब भाई मैं आपको बताता हूँ भाई और बहन किसके लिए ये धोखा खाना बहुत ही आसान है कि वो संवेदनाएं और चीजें, शैतान किसी भी संवेदना की नकल कर सकता है जो परमेश्वर की है, समझे। परंतु आप देखिए हमारी कलीसिया वैसी नहीं चल रही है जैसा चलना चाहिए। हम जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है, समझे, और फिर हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ तब तक नहीं होगा जब तक हम उसे ना लें जो सही किया गया है। इसलिए ये जांचने का समय है, देखिए वे चीजें जो हमें करनी चाहिए और वो चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, और फिर आगे बढ़ने को तैयार हूँ। ये ठीक है, आशीषें। समसून, भाई समसून एक महान पुरुष था, वो प्रभु के लिए नजीर होकर जन्मा था और उसकी सात लटें उसके कंधों पर लटकी रहती थी। उसने अपने चिन्ह के द्वारा ये सिद्ध किया वो प्रभु के लिए नजीर है और परमेश्वर भला था। यद्यपि वो अपने माता पिता को छोड़कर चला गया था और नीचे की ओर चला गया और एक फिलिस्तीनी के पास जाना आरंभ कर दिया था, और ये रिवाज के विरुद्ध था या इसराइल विरोधी कि एक फिलिस्तीनी के साथ कभी मूर्ख बने, परंतु यहाँ वो था, वहाँ जाता था, परमेश्वर उसके साथ दयालु बना रहा, वो ठीक था। और फिर वो और स्त्री उसके भेद के लिए विनती करने लगी, बजाय इसके उसको छोड़कर निकल जाता। उसे कह रहा था कि ऐसी बात ना करे कि वो प्रभु के लिए नजीर है, और वो ये नहीं बताएगा। उसने उसे ये बताया, कहा मेरे हाथों को बांध दे, उससे झूठ बोला, देखा, और परमेश्वर ने उसके झूठ को क्षमा किया और उसने बंधन तोड़ दिए और ऐसे ऐसे इस प्रकार से जब तक अंततः एक बार उसने मान लिया कि वो चाहे जो कर सकता है, वो चाहे जो करे उसके साथ चलने लगा। इसी बात की परेशानी है ये मान लेना कि हम चाहे जो करें कर सकते हैं और बस इसके साथ चलते रहें। हम लोग पेंटिकॉस्टल हैं और देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं और उसके साथ चलते रहें। आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। हम इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हम एक बड़ी संस्था हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, इस बड़ी संस्था के लिए ये सराहनीय है, परंतु हम बस ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहें उस अगले से हमारे पास अधिक सदस्य हैं और इसलिए वो हमारे मुकाबले में नहीं है और हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ हम ये चीजें छोड़ने जा रहे हैं, कार्यों को छोड़ने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये पुराना तरीका है। मैं नहीं सोचता कि हमें वे प्रार्थना सभाएं करनी चाहिए और ये सब जो चल रहा है। मैं सोचता हूँ हमें ये करना चाहिए, हम बस ये अनुमान लगा रहे हैं। मैं फिर आपको बताऊं, बजाय प्रचार करने के अपने बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर और उन्हें धर्म विज्ञान से इतना ठूस देते हैं और इस प्रकार की चीजें, मैं सोचता हूं कि अच्छा हो कि वे उन्हें ऊपर की कोठरी में ले जाएं, जैसे वो बहुत पहले किया करते थे एक अनुभव के लिए। एक बार हडसन टेलर ने कहा, भारत के लिए एक महान मिशनरी, एक युवा भारतीय ने मत परिवर्तन किया, वो परमेश्वर के आत्मा से भर गया। उसने कहा उसका चेहरा ज्योति के समान चमक रहा था, वो भीतर आया, बोला, श्री टेलर, अब मैं विश्वास करता हूँ कि अब मैं विद्यालय में जाऊंगा और अपने 4 वर्ष लूंगा जो मैं कॉलेज जाने में चूक गया था। उसने कहा, तब मैं सोचता हूँ कि मैं अध्ययन करने जा रहा हूँ और अपनी स्नातक की डिग्री लूंगा और कुछ ही वर्षों में मैं योग्य हो जाऊंगा कि निकल कर सुसमाचार प्रचार करूँ। श्री टेलर, जो कि जाना पहचाना मसीह जो वो था, उसने कहा, पुत्र, उसी के साथ जाओ जो अभी तुम्हारे पास है। कहा, यही है, उजियाला देना आरंभ करो जबकि मोमबत्ती जली हुई है, ना कि जब आधी जल जाए। ये ठीक बात है, जो आप जानते हो वही बताओ। आपके पास अनुभव नहीं है, आप कुछ नहीं बता सकते, परंतु जो हमारी आवश्यकता है कि वापस परमेश्वर के पास जाएं, ये सत्य है। देखिए, हमें उसी अनुभव पर वापस आना है, वो चीज जो हमें शुद्ध कर देती है अंदर से बाहर को, यदि भीतरी सही हो जाए बाहर वाला स्वयं अपनी चिंता कर लेगा, ये अपने ही आप हो जाएगा। ओ जी हाँ श्रीमान। समसून ने कहा भाई मैं जरा सा उठूंगा और अपने आप को झटकूंगा जैसा कि मैंने सदा से किया, और तब जब मैं ये करता हूँ परमेश्वर वहाँ होगा। मैंने बस मान लिया कि वो वहाँ पर है, परंतु उसे मालूम पड़ा कि वो जा चुका था। आप जानते हैं क्या, मैं विश्वास करता हूँ कि कलीसिया को फिर से पवित्रताई पर वापस आना है, फिर से जीने के लिए सही मार्ग पर आना है, समझे। तब हम मान लेते हैं क्योंकि हम आत्मा में पाते हैं कि हमने आत्मा में नृत्य किया है, क्योंकि हमने ये चीजें की हैं जो हमने किया है, और परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, और हमने चंगाई सभा देखी है, हमने बेदारियां देखते हैं और आदि आदि, हमने आभास कर लिया है, ये ठीक है। अब जब हम ये करते हैं हम रिवाज में होकर तय कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक महान भवन है, हमारे पास एक अच्छा नामधारी है, हमारे पास ये सब है, हमारे पास इसकी उच्च श्रेणी है, इस नगर का सबसे अच्छा आराधनालय और ये सारी चीजें। जब तक कि हम संसार को इसमें ला सकते हैं और कहते हैं हमारा पियानो देखो, हमारा ऑर्गन और हमारा ये वो उतना अच्छा है जितना तुम्हारा, हमारी बेंचों के आसन उतने ही अच्छे हैं जितने तुम्हारे, हमारे प्रचारक उतने ही उच्च शिक्षित हैं जितने आपके, हम ये मान रहे हैं कि परमेश्वर अब भी हमारे संग है जबकि वो नहीं है, समझे। आपको यह स्मरण रखना चाहिए, जब हम आश्चर्यकर्म और चिन्ह देखना आरंभ करते हैं और अद्भुत कार्य परमेश्वर के, हम परमेश्वर की सामर्थ को नीचे उतरते देखते हैं और देखते हैं कि लोग भिन्न भिन्न प्रकार से जीते हैं, अपने जीवनों को शुद्ध करते हैं, आरी को कूटते हैं, बहुत ही परिवर्तन करते हैं, बतंगड़ और सिझाते हैं, एक दूसरे से लड़ते गड़बड़ सदस्य, ये ठीक बात है। हमारे मध्य में सब प्रकार के पाप, अविश्वास, कोई परमेश्वर का वचन प्रचार करता और कहता है परमेश्वर ने कहा आपको नया जन्म लेना ही है, यदि आप नहीं ले सकते तो आप भीतर भी नहीं आ सकते, मैं इससे असहमत हूँ, और कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा अपने वचन का कभी भी इनकार नहीं करेगा, उसी वचन के साथ बना रहेगा क्योंकि वही है जिसने ये बोला है। यदि मैं एक वचन बोलता हूँ और फिर जो मैंने कहा उसका इनकार करता हूँ तो मेरे वचन अच्छे नहीं, पवित्र आत्मा को उसी बात को बनाए रखना है जो उसने कहा, और यहाँ ये लिखा हुआ है वचन पवित्र आत्मा का वचन है, मैं ये विश्वास करता हूँ, ये ठीक बात है। अब हम पाते हैं कि परमेश्वर आवश्यकता है कि हम अधिक पवित्रताई की आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है कि अधिक शुद्ध हों हमारी कलीसियाएं। समसून उसने सोचा अच्छा मैं करूंगा, बस वहाँ चला गया और उस वेश्या के संग रहा और हर चीज, तब अंततः उसने मुझसे ये करने को कहा और अंत में मैंने ये किया और फिर ये सब, और ओ मैंने वास्तव में उसे सच बता दिया और यहाँ जहाँ सब कुछ है ये इस प्रकार से है, और मैं सोचता हूँ कि ये ठीक होगा, मैं मानता हूँ कि वो मेरे संग है, परंतु जब वो उठा और अपने आप को झटका उसने पाया कि उसकी सामर्थ जा चुकी है। भाई आज मैं सोचता हूँ जब हम चारों ओर अपनी कलीसियाओं को देखते हैं जिस प्रकार से वे चल रहे हैं, तो ये समय है कि अपने आप को झटकें, कुछ तो गलत है। हम ये मान रहे हैं कि हम सही चल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि अधिक समय नहीं हुआ मैं बोल रहा था हमारे कुछ व्यापारी, हमारे भाई, मैंने एक निश्चित सभा में जिसमें हम थे वहाँ समुद्र के पार, और भाई लोग वहाँ पर थे और उनकी एक सभा थी, और वे बता रहे थे कि परमेश्वर ने उन्हें कितना आशीषित किया है, और वहाँ उनकी छोटी जगह में एक व्यापार था और उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया और अब उनके पास कैडलॉग कारों का ढेर है। इसलिए मैंने उन भाइयों को बताया, मैंने कहा ये ना कहें, ये विरोध में है, पहले पेंतेकोस्तलों ने इस प्रकार से नहीं किया, उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था उसे छोड़ दिया और कंगालों को दान में दे दिया। वे व्यापारीगण थे, उनके अपने कारखाने आदि आदि थे, आपको उन्हें कुछ देना चाहिए जो जिसके विषय में कुछ नहीं जानते। आज कलीसिया के साथ यही मामला है, हमारे चमकने वाली रोशनी और सारी चीजें और कलीसिया में दिखावा आडंबर, हम संसार से तुलना करने का यत्न कर रहे हैं, हम संसार को कलीसिया क्षेत्र में दावत दे रहे हैं, उनके क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं, हम उनके साथ तुलना नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है, यही जो हम चाहते हैं, यही बात है। जी हाँ श्रीमान, वो चीज जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि मसीह हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्हें कुछ दिखा रहे हैं जो उनके पास नहीं है, उन्हें पहले अपने धरातल पर आने दें, वे मसीह को चाहते हैं, इस आधार पर आओ, परंतु उनके समान ना करो और उनके समान व्यवहार, वो गलत है। यही जहाँ समसून ने गलती की, वो फिलिस्तीन से चला गया, फिलिस्तीनियों के देश में चला गया, वो अपने देश से चला गया, अपनी भूमि पर से, और अंत में एक बार उसने मान लिया कि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर उसे छोड़ गया था। अक्कन
क्यों उसने वो मजदूरी ली और वो बाबुल का कपड़ा क्यों उसने सोचा? उसने सोच लिया कि ये कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा भाई वो क्या था? वो एक छोटा सा कपड़ा, मैं इसे यहाँ नीचे रख दूंगा और संभवतः मेरा परिवार इससे आनंदित होगा, मुझे मजदूरी मिल गई। यदि हम कभी ऐसी तंग परिस्थिति में आते हैं, इसलिए मुझे सोने की मजदूरी मिलती है, इसे कोई नहीं देखेगा, इसे बस लपेट लो और कोट के नीचे छिपा लो और आगे निकल लो। उसने मान लिया कि ये सही है, मान लिया, परंतु परमेश्वर की आज्ञा थी कि उस श्रापित शहर से कुछ भी नहीं लेना, तुम्हारे आसपास जो हो कुछ न लेना, वो श्रापित हो चुका है। तब हम फिर सिगरेट कैसे पी सकते हैं? कैसे स्त्रियां अपने बाल कटा सकती हैं? परमेश्वर ये कहता है जब वो ये करते हैं तो ये गलत है। कैसे आप वे छोटी पैंटें और चीजें पहन सकते हैं जो वे पहनते हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा एक स्त्री वो कपड़े पहनती है जो पुरुषों के हैं, तो उसकी दृष्टि में ये घृणित है। परमेश्वर बदलता नहीं। हम ये कैसे कर सकते हैं और बस ये मान लिया कि ये ठीक है? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमारी पेंटेकोस्टल स्त्रियां ये करती हैं और इस प्रकार की चीजें। अच्छा हो कि इसे रोक दें, इस पर ध्यान दें, अपने आप को झकझोरें, वापस पीछे देखो, उन बातों का अनुमान मत लगाओ क्योंकि आप गलत हैं, बिल्कुल गलत। वे मिस्री जब वे मूसा और उन इसराइलियों के पीछे आए, उन्होंने देखा मूसा समुद्र में से चलते हुए पार हो गया। हर इसराइली वे खतना किए हुए और प्रभु को समर्पित थे, वे परमेश्वर की आज्ञाएं उनके साथ थीं, परमेश्वर की चिन्ह उनमें हो रहे थे, वे सीधे सीधे सागर से पार हो गए, वहाँ कोई गलती नहीं थी और मिस्री लोग खड़े हुए उनकी ओर ताक रहे थे। अच्छा, उन्होंने कहा मैंने मान लिया, यदि वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब हमने पीछे मुड़कर देखा और पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं को आरंभ में देखा। हम 30-40 वर्ष पहले पेंटिकॉस्टल के लिए सोच सकते हैं, हम निशियन सभा के पश्चात पेंटिकॉस्टल के लिए सोचते हैं, हम आरंभिक युग में उनके विषय में सोच सकते हैं, इरेनियस, संत मार्टिन, कोलंबा, जस्टिन, पॉलिकार्प और वे सारे संत लोग। हम अनुभव करते हैं उन्हें देख कर कि हमारे पास भी वही आशीषें हैं जो उनके पास थी, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम भी वैसे ही आगे बढ़ सकते हैं जैसा वे करते थे। हम अनुमान लगाते हैं कि हम वही चीजें कर सकते हैं जो उन्होंने की, परंतु इन परिस्थितियों में हम ये नहीं कर सकते, इन अवस्थाओं में की अधीनता में जिनमें कलीसिया अब है। ध्यान दें, उन मनुष्यों ने क्या किया, देखे उन कलीसियाओं ने क्या किया, वो क्या बलिदान था, उन्हें क्या क्या छोड़ना पड़ा, उन्होंने अपने जीवन को कैसे आंका, उनके लिए ये सब कुछ कुछ भी नहीं था। वे दिन रात अपने मुंह के बल पड़े रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, वे जहाँ जा सकते थे वहाँ गए, हर स्थान, हर दरार, हर कोना जहाँ वे जा सकते थे लोगों में परमेश्वर के राज्य की गवाही देने। और आज हम पास्टर से ये आशा करते हैं कि वो इसे अपने थैले में लेकर आए, या कोई प्रचारक, और परमेश्वर धन्य है मैं कलीसिया से हूँ, यही है, समझे, मैं वहाँ का सदस्य हूँ, मैं इस कलीसिया में विश्वास करता हूँ, ये कलीसिया ठीक है, निश्चय भवन ठीक हो सकता है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कोई दीमक नहीं, ये उसमें कुछ भी नहीं है। परंतु दूसरे भवन के विषय में क्या है, भवन के इसमें किस प्रकार की दीमक लगी है, समझे, ये बात हो सकती है कि परेशानी का कारण हो, समझे, दीमक प्राण को खा जाएगी। ओ, हमें कितनी आवश्यकता है कि इसे जांचें और पहले से देखें, बजाय इसके कि हम मान लें कि हम सही हैं। जी हाँ, उन खतरा रहित मिस्रियों ने सोचा हम वैसे ही सागर से पार निकल जाएंगे जैसे उन्होंने किया, और उन्होंने अपने जीवन खो दिए। अक्कन ने सोचा ये छोटी सी मजदूरी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बाकी महिलाएं अपने बाल कटा रही हैं, मैं भी वही करूंगी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु उसने क्या किया, ये इसके परिवार के लिए आनंद नहीं लाया, ये उन सब के लिए मृत्यु लेकर आया। और जब हम परमेश्वर की किसी भी आज्ञाओं पर समझौता करते हैं ताकि लोगों को प्रसन्न करें, हम चीजों को वहीं मार डालते हैं। एक छोटी मजदूरी, एक बाबुल का कपड़ा, इसने सारी सेना को रोक दिया। भाई, एक चीज जिसे करने के लिए हम कलीसियाओं में अनुमति देते हैं, ये गलत है। एक चीज हम तो नहीं करेंगे जो विरोध में हो और लोगों को सही करते हैं, ये कलीसिया के कदमों को रोक देगा। आप मान लेते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, हम नाम में हो सकते हैं, हम गिनती में हो सकते हैं, इसका कोई महत्व नहीं, ये वो नहीं जिसका महत्व हो, ये परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हम में है, परमेश्वर हमारे बीच में कार्य कर रहा है, उसका वचन हमारे बीच में जीवित है। आप अनुमान न लगाएं कि आप ये जानते हैं, ध्यान करें कि आपको किस प्रकार जीवित रखता है, आपका पाप के प्रति क्या रुख लेते हैं, हर चीज कैसे है, आप पवित्र परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं, क्या आपने इसके विषय में कभी सोचा, आप उसकी उपस्थिति में खड़े होने जा रहे हैं और उसके वचन के विषय में हिसाब देने जा रहे हैं और मसीह के।
जब परमेश्वर इतना पवित्र है, वहाँ अनंतता में बैठा है, जबकि 1 करोड़ सूरज उसके सामने काले धब्बे हैं, इतना पवित्र कि उसकी दृष्टि में स्वर्गदूत गंदे दिखाई पड़ते हैं, उसके सामने स्वर्गदूत गंदे हैं। आप आशा करते हैं कि आप और मैं, उसको वचन और उसके पुत्र के लहू हमारे पाप को धोता है और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए निकल जाते हैं और संसार में चले जाते हैं और उसकी उपस्थिति में निर्दोष खड़े होने की आशा करते हैं, जबकि आप करने से अधिक अच्छा जानते हैं। कलीसिया, अच्छा है कि आप अपने आप को सीधा कर लो, इस बात का अनुमान ना लगाएं, क्योंकि हम गिनती में बहुत हैं, जो कि हम हुआ करते थे। पैसे में हम पहले से अच्छे हैं, जैसे पहले हुआ करते थे। हमारे पास अच्छा भवन है, उससे जो पहले हुआ करता था। हम पहले जो पहनते थे उससे अच्छे कपड़े पहनेंगे। हमारे पास अच्छी कारें हैं, उनसे जो पहले हुआ करती थी। परंतु ओ भाई, मुझे मसीह के विषय में आश्चर्य है कि वो कितना हमारे साथ है, समझे? यही हम बस मान रहे हैं। जी हाँ श्रीमान, खतना रहित ये नहीं कर सकेगा। ये ठीक बात है, वे समुद्र में डूब गए। नूह के दिनों में, जब नूह एक बड़ी नाव बना रहा था जो कि लहरों को रोकने जा रही थी, ठीक है, कोई संदेह नहीं। परंतु उस दिन की कलीसिया के बहुत से सदस्यों ने कहा, क्यों ये धर्मांध? क्या हो यदि ये हो जाए? क्या हो यदि ये हो जाए? क्या हो यदि ये एक तूफान आ जाए? हम अपनी नावों में आकर चढ़ जाएंगे। हमारे नाव भी उतनी अच्छी हैं जितनी उनकी। हमारी नाव भी वैसे ही तैरेगी जैसे उनकी, चाहे वो परमेश्वर के द्वारा निर्मित हो या ना हो। इसी कारण उन दिनों के लोगों, तुम ध्यान करो, वे कहते हैं मैं इस कलीसिया का सदस्य हूँ, मैंने यहाँ सदस्यता ली है, ये भी औरों के समान अच्छा है। ठीक है भाई, यदि हम वचन पर नहीं हैं और वचन हम में नहीं है, हम मानते हैं कि हम सब ठीक हैं। याद रखिए, जब बाढ़ आई तो केवल परमेश्वर की बनाई हुई नाव ही तैर रही। उन्होंने मान लिया था कि वे ठीक ही होंगे, परंतु मान लिया कि आप ठीक हैं और सही होना एक अलग बात है। आप कहते हैं भाई ब्रणम, एक प्रकार से आप हमें एक शाखा पर बांधने जा रहे हैं, क्या आप नहीं? नहीं, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके सामने क्या है, समझे? हम एक मिनट में आपको बचा लेंगे। जी हाँ, आप कहते हैं क्यों नू? कोई कहेगा ठीक है, मुझे यहाँ मिल गया। अच्छा, मैं वहाँ कोने में जॉन डो को जानता हूँ। क्यों, उसके पास नाव है, उससे हम किसी भी प्रकार के जल प्रवाह पर सवार हो सकते हैं। परंतु आप देखिए, ये परमेश्वर ने नहीं बनाई थी, वहाँ गोफर की लकड़ी नहीं लगाई गई, और जिस प्रकार परमेश्वर ने इसे बनाया। आप कहते हैं भाई ब्रणम, मेरे पास कलीसिया है और हम तो नगर के महान नामधारी में से हैं, यहाँ आसपास के महान कलीसियाओं से हैं, और हमारे लोग सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग हैं। मेयर हमारी कलीसिया में आता है, अफसर लोग हमारी कलीसिया में आते हैं। क्यों, ये सब हमारे पास है, समझे? परंतु जब तक ये परमेश्वर के द्वारा ना बनाई गई हो, ये नहीं टिकेगी। कोई नामधारी नहीं जब तक ये परमेश्वर के द्वारा ना बनाकर तैयार की जाए कि वो स्थिर रहे, नहीं रहेगी, समझे? ये ठीक बात है, इसको परमेश्वर के मार्ग से, कि परमेश्वर ने कहा इसे बनाओ, ये किसी दूसरे मार्ग से बनकर नहीं आ सकती। मत्सार के द्वारा नहीं, ना सदस्य बनने के द्वारा, ना इससे उससे या संवेदना के द्वारा, इसे तो क्रूस के द्वारा ही बनकर आना है, इसे तो लहू के द्वारा ही आना है, इसे तो आना ही है और पवित्र आत्मा से भरना है। इसका तत्व तो पवित्र आत्मा का ही होना है। पवित्र आत्मा का द्रव्यमान पवित्र आत्मा के लोगों को बनाता है। एक सरू पदार्थ की नाव सरू की नाव बनाता है, पहाड़ी पीपल का पदार्थ पहाड़ी पीपल की नाव बनाता है। देखा मेरा क्या अर्थ है? संसारिक वस्तु की कलीसिया संसारिक कलीसिया बनाएगी, एक पवित्र आत्मा पदार्थ पवित्र आत्मा की कलीसिया बनाता है। भाई ब्रणम, ये पवित्र आत्मा की कलीसिया क्या होती है? ये क्या करती है? ये कैसे व्यवहार करती है? हम इसे थोड़ी देर में पाएंगे, समझे? ठीक है, वैसी ही बनाई गई जैसी अब है। वे विश्वास करने का यत्न करते हैं। आज बहुत सो ने युगों से होते हुए इस विषय में बातचीत की, बहुत से अलग मार्ग से। तुम्हें बताएं, बहुत सारे लोग विभिन्न मार्ग से, ये एक गड़बड़ है। आप यहाँ आए, मेरी बूढ़ी माँ जो कुछ महीनों पहले संसार से चली गई, जब वो वहाँ पलंग पर लेटी थी, बोली बिली मैं जा रही हूँ। मैंने कहा माँ ऐसी बातें ना करो। उसने कहा मैं जा रही हूँ। कहा मैं अपने दूसरे बच्चों को देखने के लिए जाना चाहती हूँ, मैं पिता को देखना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। उसने देखा मैं उसका सबसे बड़ा वहाँ खड़ा था, इधर मेरी बहन सबसे छोटी खड़ी थी, और वहाँ हम 10 बालक 9 लड़के और 1 लड़की। उसने देखा और कहा मेरा पहला और मेरी अंतिम। उसने कहा डॉलरस, तुम मेरी अकेली लड़की हो, तुम मेरे लिए भली रही। कहा तुमने आकर मेरे धोने में मेरी सहायता की, तुमने मुझसे प्रेम किया, मेरी चिंता की। उसने कहा बिली, तुमने देखा कि मैं कभी भूखी नहीं रही, तुमने मेरे सारे भुगतान किए, तूने मेरे रहने के लिए स्थान दिया, और कहा तुम मेरे आत्मिक मार्गदर्शक रहे हो। और मैंने कहा माँ कुछ वर्षों पहले जब मैं मसीह के पास एक छोटे लड़के के समान आया, छोटे लड़के के समान बुलाए जाने के बाद मैंने कहा, पहले आयरिश होने के नाते मैंने सोचा मैं आयरिश कलीसिया में जाऊंगा, और उन्होंने कहा हम वो कलीसिया हैं, कोई मतलब नहीं क्या कुछ कहा जाता है, हम वो कलीसिया हैं। कहा यही जहां तुम आते हो तुम्हें इसी में आना है, केवल यही एक कलीसिया है। और मैंने कहा, तब मैंने सोचा मैं जाकर लूथरन को देखूंगा। लूथरन ने कहा हम कलीसिया हैं, हम ही वो हैं, एक कलीसिया जो लोगों की एक देह है, लोगों की एक बुलाई गई देह है। मैंने सोचा अच्छा अब इनमें से कौन सी देह है, इनमें से वास्तविक कलीसिया कौन सी है। एक कहता है ये यह मार्ग है, एक कहता है ये यहाँ मार्ग है। मेथोडिस्ट में गया वे ये मार्ग पर, बैप्टिस्ट इस मार्ग पर। मैंने कहा मुझे लगभग 900 विभिन्न कलीसियाएं मिली और प्रत्येक इधर उधर खींच रही थी बस जैसे। मैंने कहा मैं अपना विश्वास किसी पर नहीं रख सकता, मैं ये नहीं कर सका मामा, इसलिए मैंने उनमें से एक को भी नहीं लिया। परंतु मैं वापस गया और ढूंढा कि बनावट क्या थी, परमेश्वर क्या नेव क्या डाली है, बल्कि क्या निर्देश हैं जिन्हें करना था, और मैंने वैसे ही सिखाया जैसे चेलों ने सिखाया था, और मुझे वही नतीजे मिले। मैंने कहा अब यही है, समझे, यही मैंने परमेश्वर का वचन लिया और उसे वैसा ही रखा। और वो बोली, बिली मैं उसी पर विश्राम कर रही हूँ। और जब वो बेचारी यहाँ तक कि और अधिक बोल भी न सकी, मैंने कहा माँ उसके प्राण को परमेश्वर को समर्पित करना चाहता हूँ। मैंने पिता को भी किया था और मैं उसके प्राण को परमेश्वर को समर्पित करना चाहता था, और वो वहाँ लेटी हुई थी, वो और ना बोल सकी। मैंने कहा माँ मैं अभी यही खड़ा हूँ, आप जानती हैं यदि आप सकती हैं तो अपनी पलकें मारें, और वो अपनी पलके मार सकती थी। मैंने कहा अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अब आप कुछ मिनटों की दूरी पर हैं। मैंने कहा मैं यहाँ खड़े होकर ये देखना चाहता हूँ कि यीशु आकर आपके प्राणों को ले ले। मैंने कहा फिर मैं आपको समर्पित कर दूंगा। मैंने कहा माँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा मैंने अपनी माँ को लगभग 30 वर्ष पहले बपतिस्मा दिया था, और वो पवित्र आत्मा से भर गई थी, और वो एक मसीही थी, परमेश्वर की वास्तविक संत। और मैंने कहा क्या यीशु आपके लिए कोई अर्थ रखता है, ठीक यहाँ जब आप, हो सकता है कि आपके पास जीने के लिए 5 मिनट हो, क्या यीशु आज वैसे ही प्यारा है जैसा वो उस दिन जब आपने पवित्र आत्मा पाया था। मैंने कहा माँ ये मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों को बता सकूँ, क्या वो अब भी उतना प्रिय है। आप मेरी माँ हैं, आप मुझे कुछ भी गलत नहीं बताएंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय आपको कैसा लग रहा है, क्या वो वैसा ही प्यारा है जैसे आपने उसे वहाँ पीछे स्वीकारा था 30 वर्ष पहले। यदि हाँ तो आप बोल नहीं सकती हैं, आप पलक जल्दी जल्दी झपकाएं। और उसने अपनी पलकें तेजी से झपकाई और फिर उसके गालों पर आंसू बहने लगे। ओ भाइयों, हाँ यही है। तो फिर आप अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आप जानते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। ये ठीक बात है, और इस बात के लिए अनुमान ना लगाएं। बहुत से अलग अलग रास्ते हैं, अनुमान ना लगाएं, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा का प्रमाण दिया है, समझे। हमें इस विषय में अनुमान नहीं लगाना है, परमेश्वर ने इसे प्रमाणित किया है। अब व्यवस्था विवरण 18:22 में आप देखें, 18:15-22 तक देख सकते हैं, आप पाएंगे कि बाइबल ने ये कहा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करेगा। मूसा बोल रहा है, और वो लोग जो भी इस भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनेगा वो लोगों के बीच में से काटा जाएगा। तब वो आगे बढ़ता और कहता है, यदि तुम्हारे बीच में कोई भविष्यद्वक्ता हो या जो समझता हो और वो कहे और घटित ना हो तो उससे भयभीत ना होना, ये ठीक नहीं है। परंतु यदि प्रभु उससे बोला तो वो उसे घटित करेगा, समझे। इस प्रकार से तुम जान जाओगे। परमेश्वर हमें निर्देश दे कि हम जाने कि हमें किसी चीज का अनुमान ना लगाना पड़े, कुछ नहीं। आपको कल्पना नहीं करनी है जानने के लिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए। जी हां श्रीमान, यूहन्ना 14:12 में वो भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर ने उठाया जो कि यीशु मसीह था उसका पुत्र, वही भविष्यद्वक्ता संत यूहन्ना 14:12 में बोला, वो जो मुझ पर विश्वास करता है जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। भाई इसमें कोई अनुमान लगाना नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं, उसने कहा तुम भी करोगे। मरकुस 16:15 में 15-18 पद तक यीशु ने कहा, वे जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। आपको बस मान नहीं लेना है, मैं कल्पना करता हूँ कि मैं सही हूँ, क्या मैं सोच सकता हूँ कि मैं सही हूँ। यीशु ने कहा वे जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। अब इसके विषय में बिल्कुल अनुमान ना लगाएं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसे अनुमान नहीं लगाना और कहना था मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है यही मसीहा है, मैं निश्चित नहीं हूँ। अब ये वो हो सकता है जो ठीक वहाँ खड़ा हुआ है, मैं मान लेता हूँ हो सकता है वही है, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा देखो वो परमेश्वर का मेमना खड़ा है। वो अनुमान नहीं लगा रहा था कि वो था, उसे मालूम था कि वो वही है।
क्यों? परमेश्वर ने उसे जंगल में बताया। अब आप इसके द्वारा मूर्ख नहीं बन रहे हैं यहुन्ना, ये एक आवश्यक चीज है। आप अपनी चीजों की खिचड़ी बनाना नहीं चाहते। यही जो आज है, परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया जान जाए कि सत्य क्या है। हम इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहते। भाइयों, आपकी दूसरी परख नहीं होगी। अच्छा हो कि आप ठीक हो जाएं, जबकि नाव आपके घर में आ गई है, जबकि मृत्यु कमरे में चारों ओर मंडरा रही है। आप इसमें निश्चित हो जाना चाहते हैं। इस पर कोई मौका ना लें, ये ना करें, ये गलत है। निश्चित हो जाएं, आप सही हैं। उसने यूहन्ना से कहा, जिस पर तू आत्मा उतरते देखे वही है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और आग से, समझे? ये वही है, ये वही होगा। यूहन्ना ने नहीं कहा मैं ये मान लेता हूँ, उसने कहा वहाँ वो है, ओ परमेश्वर यही है, उसे जान लो। उसने कोई अनुमान नहीं लगाया। वो जान गया कि वो परमेश्वर का पुत्र था। वो जान गया कि वो परमेश्वर का मेमना था जो संसार के पाप उठाकर लिए जा रहा है, क्योंकि उस पर ये प्रकट किया गया था। और आप कभी भी अच्छा नहीं जान पाएंगे जब तक कि आप पर प्रकट ना किया गया हो। परमेश्वर आप पर कैसे प्रकट कर सकता है जो कि उसके वचन के विरुद्ध हो? केवल एक ही विधि है कि पवित्र आत्मा स्वयं को आप पर प्रकट करने के योग्य हो, जब वो अपनी प्रतिज्ञा को आप पर बनाए रखे। विश्वास करने वालों के यही चिन्ह होंगे। मेरे नाम से वे प्रेत आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे या नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनकी हानि ना होगी। अपने हाथों को बीमारों पर रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो जब आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। ये आज्ञाएं हैं, ये चीजें ध्यान देने की हैं। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, विश्वास, भक्ति, नम्रता, कोमलता, धैर्य, ये आत्मा के फल, ये चीजें प्रमाण, ये समर्थन है। इसी प्रकार परमेश्वर समर्थन देता है, वो इसको आप पर सिद्ध करता है। वो मोआब जो पहाड़ पर था, जो सात वेदी और सात मेढ़ों के साथ, और इसराइल नीचे घाटी में सात वेदी और सात मेढ़ों के साथ, दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहे थे। दोनों ही ये करने का यत्न कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने इसराइल का समर्थन किया। केन ने क्या किया? जब उसने सुंदर वेदी बनाई या हाबिल से सुंदर बनाई, उसने फलों की भेंट चढ़ाई, उसने अपना दशमांश दिया, वो अपना लाभ प्रभु के भवन में लाया, उसने वेदी पर घुटने टिकाए, उसने अपने आप को झुकाया, उसने प्रार्थना की, उसने आराधना उतनी ही ईमानदारी से जैसे कोई मनुष्य। परंतु परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को भस्म करके समर्थन दिया। कार्मेल पर्वत पर उस महान दिन जब 400 मूर्ति पूजक याजक वहां एकत्र हुए, उस देश की घराने की पहली महिला, जब वे अपने अपने बलिदान चढ़ाने के लिए वहां एकत्र हुए, वे सारे दिन चिल्लाए और वहां कोई आवाज ना कोई आग थी। परंतु जब एलिया ने बैल के टुकड़े वहां रखे और पानी के साथ घड़े उस पर उंडेले, परमेश्वर ने प्रमाणित किया कि वही सच्चा था। यदि आप कहते हैं कि आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर इसे प्रमाणित करता है। आपको कोई अनुमान नहीं लगाना है, ये परमेश्वर ग्रहण करता है। आपको अनुमान नहीं लगाना है, ये ठीक बात है। पीतल की वेदी बलिदान को भस्म कर देती है। यदि बलिदान वेदी पर रखा है और ये भस्म नहीं होता है, परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया, समझे? ये भस्म हो रहा है, आप परमेश्वर का बलिदान है। स्वयं को वेदी पर चढ़ा दें, कहे परमेश्वर मुझ में से ये सब निकाल दे, खाली कर दे, ताकि आप मुझे भर सकें, मुझे प्रयोग में ला सकें। ये ठीक बात है, इसका अनुमान ना लगाएं, विश्वास करें। जी हाँ श्रीमान, यदि आप इसका विश्वास नहीं करते, परमेश्वर आपके बलिदान को स्वीकार नहीं करेगा। वो कह सकेगा यूहन्ना ने किया, ये वो है, वो सच्चा है, मैं जानता हूँ कि ये वो है। नतनेल व्यवस्था विवरण 18 में वापस गया और आप पाते हैं व्यवस्था विवरण 18:15। यदि आप इसे लिखना चाहें, उसे अनुमान नहीं लगाना था। जब फिलिप उसने उसे जाकर बुलाया, कहा आकर देख ले, हमें मसीह मिल गया है। अब देखिए, फिलिपुस आशावादी था, वो जानता था कि वो क्या बात कर रहा था। उसने कहा हमें मसीह मिल गया है, ना कि आज चलकर देखते हैं, आज हम इसे मिलकर तय करें और देखें कि ये मसीह हो सकता है। तू और मैं अपनी अपनी पुस्तकें लें और जाकर पता करें। उसके पास कोई और तर्क नहीं था, उसने अनुमान नहीं लगाया था कि वो मसीह है। उसे मालूम था, वो जानता था कि यही है। इसलिए नतेल एक अच्छा ज्ञानी होते हुए, जब वो वहाँ यीशु के सामने आया, यीशु ने कहा देखो एक इसराइली जिसमें कोई बुराई नहीं, उसका अनुमान समाप्त हो गया। बोला रब्बी तू मुझे कब से जानता है? उसने कहा इसके पहले कि फिलिप उसने तुझे बुलाया जब तू पेड़ के नीचे था। कोई अनुमान नहीं, क्या उसे मालूम था कि परमेश्वर ने ये कहा है? परमेश्वर ने कहा था यदि कोई भविष्यद्वक्ता तुम्हारे मध्य से उठे और जो वो कहे और घटित ना हो तो फिर उसकी ना सुनना, परंतु यदि घटित हो जाए तो मैंने उसे भेजा है। आप वही हैं, उसे अनुमान नहीं लगाना है। वो जान गया था कि वो वही मसीह था। उस स्त्री को कुएं पर देखो,
जब यीशु वहाँ सामरिया में कुएं पर था, जब वो कुएं पर खड़ी थी, उसने कहा इस विषय में आप कहानी जानते हैं, मुझे पानी दे, और कहा कुआं गहरा है, तेरे पास जल निकालने के लिए कुछ नहीं है, और आदि आदि, जैसे कि बातचीत आगे बढ़ती गई, और अंत में उसने उसे बताया जाकर अपने पति को यहाँ बुला कर ला, और उसने कहा मेरे पास कोई पति नहीं है। उसने कहा श्रीमान मुझे प्रतीत होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। उसके ये बताने के बाद उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है, वो बोली। तब उसने कहा तूने ठीक कहा, क्योंकि तेरे पांच थे और अब तू जिसके साथ रह रही है वो तेरा पति नहीं है। उसने कहा श्रीमान मुझे लगता है कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। हम जानते हैं, ना कि हम मानते हैं। हम मानते हैं कि ये हो सकता है, हम मानते हैं कि मसीह ये कह सकता कर सकता है, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि जब मसीह आता है, हालेलुया, यही है, हम जानते हैं, हम कोई अनुमान आदि नहीं लगा रहे हैं, हम जानते हैं ठीक जो पवित्र वचन कहता है। भाई वचन ने कहा हमें नया जन्म लेना अवश्य है, हमें अपने आप को संसार की सारी गंदगी से अलग करना और पवित्र बनना है, हमें यही करना है, यही जो बाइबल ने कहा, स्त्रियों को संसार के समान व्यवहार नहीं करना है, हमारे पुरुष संसार के समान व्यवहार नहीं करते, हमें आसपास खड़े होकर के गंदे चुटकुले एक दूसरे से नहीं कहने हैं, हमें बाहर निकलकर धूम्रपान नहीं करना है, और अपनी नौकरी को बनाए रखने के लिए सामाजिक मद्यपान नहीं करना है। ठीक, यदि मुझे भुने हुए मक्के के दाने और सोते का पानी पीना पड़े बजाय कि मुझे अपनी नौकरी बनाए रखने के, मुझे सड़क पर भूखा रहना पड़े जहां मुझे शैतान की सड़ाहट और धूम्रपान करना पड़े और आदि आदि, कि अपना पक्ष बनाऊं, नहीं श्रीमान, भले मुझे अपने आप को लोगों के झुंड से अलग करना पड़े, उनसे जो अपने को आपको मसीह कहते हैं वे मुझे पुराने जमाने का कहेंगे, यदि मैं एक स्त्री होता था मुझे लंबे बाल और सभ्य वस्त्र पहनने होते थे, अपने आप को अलग रखता और सनकी हो जाता बजाय इसके कि लोगों के साथ संगति रखता जो हंसेंगे और ऐसी बातों का उपहास उड़ाएंगे, क्यों ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, ये ठीक बात है, परंतु फिर भी हम ये करने का यत्न करते हैं, ये तो बस एक बात है, हम मान लेते हैं कि ये ठीक बात है, बाकी भी यही करते हैं, क्यों नहीं वे कुछ, यहूदा ने मसीह को धोखा दिया, क्या ये चिन्ह आपको करना है, नहीं श्रीमान, हम ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा करना चाहते हैं, किसी भी बात का अनुमान ना लगाएं, जो परमेश्वर का वचन कहता है वही लें, जी हाँ श्रीमान, क्या हो यदि चेले, अब पेंतिकोस्त के दिन बंद कर रहा हूँ, क्या हो यदि चेलों ने कहा हम वहाँ पर गए और वे वहाँ 9 दिन के लिए थे, 9वें दिन क्या हो यदि पतरस आकर कहे भाइयों आप जानते हैं हमारा प्रभु झूठ नहीं बोल सकता, नहीं वो झूठ नहीं बोल सकता, मती कहता शमौन ये ठीक बात है, वो झूठ नहीं बोल सकता, मरकुस तुम इस विषय में क्या सोचते हो, ओ ये ठीक बात है वो झूठ नहीं बोल सकता, उसने हमसे कहा यदि हम इस यरूशलेम नगर में आकर ठहरे रहें तो वो हमारे पूर्वजों की प्रतिज्ञा को हम पर भेजेगा, हम इसका विश्वास करते हैं भाइयों, क्या हम नहीं करते, ओ निश्चय ही, और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, हम यहाँ 9 दिनों से टिके हुए हैं, मैं मान लेता हूँ कि हमने इसे पा लिया है, ओ ये एक अच्छा बैप्टिस्ट बनाता है और मेथोडिस्ट या प्रेस्बिटेरियन समझे, मैं मान लेता हूँ कि हमें ये मिल गया है, भाइयों आइए बाहर निकलकर और सभा को आरंभ करें, उनको ये कभी भी नहीं मिलता, परंतु उन्होंने कोई अनुमान नहीं लगाया, क्यों, उन्हें मालूम था कि ये पवित्र वचनों में है, एक मिनट मैं आपको कुछ पवित्र लेख दूंगा जैसे ही मैं इसे इस पर पलटूंगा, ये छाया 28:11 में उसने कहा आज्ञा पर आज्ञा नियम पर नियम थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ जो अच्छा है उसे कस कर पकड़े रहो, वो तो इन लोगों से परदेशी होंठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, यही विश्राम है, योल 2:28 ने कहा ये अंत के दिनों में घटित होगा, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हालेलुया, वे प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि वचन उन पर प्रकट ना हो जाए, उन्होंने कोई अनुमान नहीं लगाया, उन्होंने जब तक पूरा हुआ प्रतीक्षा करी थी, उन्होंने मिलने तक प्रतीक्षा करी, पेंतिकोस्तल कलीसिया उनकी स्त्रियां अब तक अपने बाल कटवाती हैं, उनके पुरुष अब भी धूम्रपान करते हैं और वे चीजें जो हम करते हैं इस प्रकार की चीजें, और अपने लोगों को वैसी बातें करने देते हैं जो हम किसी चीज का अनुमान लगा रहे हैं, आइए भाई हम वापस चलें, आइए एक मिनट के लिए हम वापस चलें, हम अपने आप से आगे भाग रहे हैं, हम पेंतिकोस्तल नहीं हो सकते और उस प्रकार से करें, नहीं श्रीमान, आइए हम वापस चले जब तक परमेश्वर की भस्म करने वाली आग नीचे ना आ जाए और बलिदान को स्वीकार करे और कलीसिया को पूरी रीति से परमेश्वर के आत्मा से भर दे और पुराने तरह के पेंतिकोस्तल सामर्थ को स्वयं कलीसिया में फिर से दिखाना आरंभ करे, निश्चय ही हम बस इसका अनुमान लगा रहे हैं, समझे, हम बस इसको ले रहे हैं, भाई हाँ श्रीमान, हम विश्वास करते हैं कि एक दिन अन्य भाषा में बोले थे,
मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने इसे पा लिया है। भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये सही है। उस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जैसे करते हैं, उन्हीं चीजों को कर रहे हैं जो आप करते हैं, संसार के साथ जुड़े हुए हैं। बुधवार की रात बजाय प्रार्थना सभा में जाने के टेलीविजन देख रहे हैं, इस सब चीजों से प्रेम कर रहे हैं। हम लूसी को प्रेम करते हैं, वे सारी दूसरी चीजें। इससे अच्छा होता कि बाइबल से प्रेम करते। पहले पत्रिकाएं पढ़ते थे, पहले पेंटिकॉस्टल लोग पत्रिकाएं पढ़ते थे, क्योंकि बाकी स्त्रियां इस प्रकार का व्यवहार करती हैं। आपको भी यही करना है, इस प्रकार की सारी बातें, और फिर आप इस बात का अनुमान लगा रहे हैं। वो जो संसार से प्रेम रखता है या संसार की चीजों से, तो परमेश्वर का प्रेम उसमें है ही नहीं। ये ठीक बात है, ये सत्य है। उस स्थान पर आते हैं जहाँ ये सब दिखाई पड़ता है। ये सब केवल एक दिखावा है, बजाय पुराने प्रकार की पवित्रता, बजाय परमेश्वर के पास वापस जाएं। आज आप विज्ञापन की तस्वीरें देखते हैं और प्रचारक लोग बाहर जाते हैं, बहुत ही सुंदर घुंघराले बाल, मैं इनको पसंद करता हूँ, ये सच बात है। परंतु आप उन पर ध्यान दें, वे उनके चित्र उतारेंगे, यद्यपि उन्होंने अपना मुंह एक और कर रखा है कि अपने को सुंदर दिखाएं, घुंघराले बाल, वहाँ बाहर विज्ञापन करवाते हैं और इस प्रकार की चीजें। भाई मैं आपको बता दूं, कोई आश्चर्य नहीं, परमेश्वर का आत्मा उनके पास से चला गया। कोई आश्चर्य नहीं, हम फिर से वैसे ही ठंडे जैसे मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट हैं। भाई बहनों, हमें इन बातों से बाहर आना है या फिर परमेश्वर हमें भस्म कर देगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, हमें परमेश्वर की सामर्थ पर वापस आना ही है, उन पुरानी प्रार्थना सभाओं पर और पवित्र आत्मा के हिलाए जाने पर। जब तक पुरुष स्त्रियां पवित्र और न्यायोचित न हो, जी हाँ श्रीमान, संसार और सारा हॉलीवुड और वस्त्र और चीजें एक और हो जाएं। ओ भाई, ये ठीक बात है। जी हाँ, पाप कितना धोखेबाज है, कैसे वो आसानी से इस प्रकार रेंग कर आता है और चीजों को लेता है और आपको जकड़ लेता है और पकड़ लेता है और उसके साथ साथ चलता है। जी हाँ श्रीमान, बुद्धिमान। आप कलीसियाओं, आप अपने पास्टर के लिए मतदान करते हो या आप इसे जैसे भी करते हो, वे बैप्टिस्ट कलीसिया के समान करते हैं और आदि आदि, और प्रेस्बिटेरियन और मेथोडिस्ट और निसंदेह पेंटिकॉस्टल भी। आप अपने पास्टर को चाहते हैं, आप किसी बुद्धिमान को ढूंढने का यत्न कर रहे हैं ताकि आप अपने पड़ोसी से ये कह सकें, देखिए कि हमारे व्यक्ति के पास, हमारे पास्टर के पास कॉलेज की शिक्षा है, समझे। हम आपसे इस प्रकार का मनुष्य लेंगे। यदि मैं एक मनुष्य को चाहता हूँ कि मेरे बालकों को पढ़ाए और उन्हें उसकी शिक्षा के अधीन छोड़ दूँ और इस प्रकार की चीजें, और मेरा भाई, मेरी माँ और कोई जिसमें उस दूसरे देश में मिलने की आशा करता हूँ, तो बल्कि मैं एक ऐसा मनुष्य लूंगा जिसने अपना कहकहे भी नहीं जाना। जब ये बुद्धिमान की योग्यता पर आता है, बल्कि मैं चाहूंगा कि वो मसीह को जानता हो। ये ठीक बात है, जैसे बचाने वाला। जी हाँ श्रीमान, चाहे वो प्रचार कर सके या खड़ा हो या बेढंगा हो और हर चीज, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो प्रचार मंच पर पूरी तरह से थक जाए, इससे क्या अंतर पड़ता है। परेशानी ये है कि हम कपड़ों में सजने वाले इतने और रीतियों वाले हो गए हैं, हम पेंटिकॉस्टल लोग, हम सब इसी प्रकार से हैं। हम बस समाप्त होने वाले हैं यदि इस विषय में हम कुछ नहीं करते हैं। हमें प्रार्थना सभा की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की सामर्थ पर वापस जाना है। जी हाँ श्रीमान, और इस विषय में थोड़ी सी बात कहें, अरे बाप रे बाप, लोग बस सोचते हैं कि ये भयानक है, ओ मैं इसे अपनी कलीसिया में नहीं चाहता, और इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। हाँ समझे, यही है। क्या मामला है? ये इस बात को दिखाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। ये परमेश्वर का वचन है, ये उसकी आज्ञा है। हम मान रहे हैं कि हम सही हैं, परंतु मुझे आश्चर्य है कि परमेश्वर ने इस विषय में क्या कहा है। जी हाँ श्रीमान, कहने में ये भयानक है, परंतु ये ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान, पेंटिकॉस्ट का दिन उन्होंने तब तक प्रतीक्षा करी जब तक कि उनके पास वचन का अधिकार नहीं था। ये ठीक बात है, क्योंकि वे किसी भी चीज का दावा करते हैं। उन्हें मालूम था कि ये उन्हें मिल गया है। ये नहीं कहा कि भाई मुझे थोड़ी सी संवेदना हो रही है। उन्होंने देखा, अनुभव किया और सब कुछ। वे जानते थे कि वो यहाँ पर है। उन्होंने अपने में उसे कार्य करते देखा, उनमें कार्य कर रहा था, उनके द्वारा बातें कर रहा था, सब कुछ ये वहाँ पर था। उन्हें कोई अनुमान नहीं लगाना था, ये वहाँ था, स्वयं ही बातें कर रहा था। और एक मनुष्य जब वो परमेश्वर के आत्मा से नया जन्म लेता है, वही चीज आज है। आप अनुमान ना लगाएं। मैं विश्वास करता हूँ हमने पवित्र आत्मा पा लिया। जब हम विश्वास करते हैं, नहीं आपने नहीं पाया, आपने नहीं कुछ, आप ये कर सकते थे, परंतु क्योंकि आपने ये विश्वास कर लिया। यदि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से नहीं भरता, तो उसने आपको अभी तक प्रमाणित न किया होता, आपको ये नहीं मिला, समझे। ये ठीक बात है, मान मत लीजिए कि ये आपके पास है। इस विषय में निश्चित हो जाएं, आप इसमें किस्मत ना आजमाएं, नहीं, क्योंकि आप नष्ट हो जाएंगे। अनुमान ना लगाएं, रुके रहें जब तक कि ना हो जाए, रुके रहें। आज हम इसे मत्सार के द्वारा लेते हैं या किसी प्रकार की संवेदना के द्वारा। मैंने किसी को सुना, जैसे कि मैं संदेश के आरंभ में कह रहा था,
यहाँ पहले कुछ दिनों पहले मैं एक स्थान में था और उनमें से कुछ ने कहा, अब आपको एलिशा का वस्त्र पहनना होगा। वो बहुत से भिन्न प्रकार के वस्त्र हैं और छुएं और प्रयोग करें और संवेदनाएं। मैंने कभी इस बात को अपने जीवन में सुना। कहा इसे खाली हो जाने दें, खाली हो जाएं, अपना सिर पीछे रखें। अच्छे ईमानदार लोग खाली हो गए, कुछ भी ना सोचें, बस बस अपने मस्तिष्क को पूरी रीति से अब खाली होने दें। अब कहें मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे एलिशा का वस्त्र देने जा रहे हैं। एलिशा का वस्त्र नहीं चाहता, मैं पवित्र आत्मा चाहता हूँ। मैं इस वचन के आधार पर आता हूँ, मैं ज्ञान के आधार पर आता हूँ, समझे। मैं परमेश्वर पर निर्भर होकर आता हूँ, ये विश्वास करते हुए कि मैं एलिशा के वस्त्र से नहीं ढक सकता। मैं यीशु मसीह की धार्मिकता से ढक जाना चाहता हूँ, उसकी धार्मिकता के वस्त्र। निश्चय ही वही वस्त्र हम चाहते हैं। जी हाँ श्रीमान, तब कहते हैं ये हमारे पास है हम, और लोग ये विश्वास करते हुए जाते हैं, कहते हैं भाई अब मैं मान लेता हूँ कि ये मुझे मिल गया, मुझे विचित्र सी अनुभूति हुई। आप देखिए, यह मैंने वास्तव में किया, मैं एक ठंडक सी मेरे शरीर में से होकर निकली। जी हाँ, कुछ ने कहा अच्छा मैं रो भी पड़ा, मैं अपनी माँ की अंत्येष्टि पर रोया था, परंतु फिर भी इससे कुछ लेना देना नहीं उस पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ है जो कि आपके पास आपके हृदय में भेजा गया आत्मा के गवाह के समान। आपने नया जन्म पाया, आपका जीवन साफ कर दिया गया, संसार मर गया और उसकी सारी सड़ाहट वो मिस्र के लहसुन के समान। देखो आप इससे बहुत दूर हैं, आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें जाती रहीं, आप कुल मिलाकर नए हैं, आत्मा से जन्मे। जी हाँ श्रीमान, आपके देह के सारे अंग उसके आत्मा के अधीन हैं और आप पवित्र आत्मा में चल फिर रहे हैं, संसार की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, आपकी आंखें स्वर्गीय चीजों पर लगी हैं। ये जब आप वास्तव में परमेश्वर बातों का समर्थन कर रहा है, परंतु जब तक आप में अभी संसार है और कहना चाहते हैं कि भाई वो ये करते हैं और वे ये करते हैं, मुझे लगता है ये उनके पास है, वे उनके पास हो सकता है, मैं नहीं जानता उनके पास क्या है, परंतु ये वो नहीं जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये वो नहीं है। जी हाँ श्रीमान, एक बात सच है, क्योंकि ये करवा लेता है। जी हाँ श्रीमान, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा हो और वो परमेश्वर के वचन के भाग का इनकार करे और उसे आधा ले और कहे अगला आधा अच्छा नहीं है, समझे। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि मनुष्य को एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, परंतु जब वो समय आता है कि दिव्य चंगाई के विषय में सोचें और इस प्रकार की सारी चीजें और इससे परहेज करें और ओ हमें ये वो होना चाहिए, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। नहीं, बाइबल ने कहा यह घटित होगा, भक्ति का भेष भरेंगे परंतु उसकी सामर्थ का इनकार करेंगे, वे इसके आधे वचन का इनकार करते हैं और उसकी सारी सामर्थ का। ये ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान, ये सच है, और तब वे ये मान लेते हैं कि उन्हें ये मिल गया है, ये ठीक बात है, समझे। जी हाँ श्रीमान, एक महिला, कुछ महिलाएं यह आते हुए हमारी एक बहन से मिली और उसे सड़क पर आते हुए छोटी सी मोच आ गई थी या चोट लगी, उसकी कार में कुछ लगा या कुछ और, कुछ स्त्रियों ने उसे उठाया किसी अमुक कलीसिया से और उसे बताया कि वो कहाँ आई है। कहा ओ प्रभु ने यहाँ आने को हमारी अगुवाई की है। कहा आप गलती पर हैं, पेंतिकोस्तल लोग गलती पर हैं, आप देखिए, इसलिए हम ओ मुझे वहाँ होना अच्छा लगता है आधे कपड़े पहने हुए। अनुमान लगाना बंद करें, प्रतीक्षा करें, करें जब तक सारा क्रोध चला नहीं जाता। आपके उद्धार के बाइबल के चिन्ह आप में हो रहे हैं। मूसा ने मान लिया बिना वास्तविक बुलाहट के कि परमेश्वर निश्चित ही लोगों पर प्रकट करेगा, वो जा रहा है और वो वहाँ जाकर मिस्रियों को जीत लेगा। उसने मान लिया कि वही समय था ये करने का, परंतु वो असफल हो गया, बुरी तरह असफल हुआ और कार्य को छोड़ दिया और उसका सारा विचार छोड़ दिया, जब तक एक दिन परमेश्वर उससे मिला। जब वो परमेश्वर से जलती झाड़ी पर मिला, वो झाड़ी में चला गया, झाड़ी उसमें समा गई, तब वो एक अंतर था, उसने अनुमान नहीं लगाया। अब मैं नहीं जानता, मैं विश्वास करता हूँ मैं इस मिस्री को मार डालूंगा, उसे रेत के नीचे छिपा दिया और ये सब हो जाएगा। ये अकन की दूसरी मजदूरी थी, आप समझे। परंतु जब परमेश्वर ने उससे जलती हुई झाड़ी में बात की और उसने वास्तव में परमेश्वर को देखा और वो जान गया वो परमेश्वर था और उसे कहते हुए सुना, मैं निश्चय ही तेरे साथ रहूंगा, ये व्यक्तिगत बुलाहट है। बहुत सी बार लोग जाकर कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी बुलाहट सुसमाचार प्रचार करने की है, समझे। एक मनुष्य का सुसमाचार प्रचार करने का कोई मतलब नहीं जब तक मैं चिंता नहीं करता वो कितना शिक्षित है, वो बाइबल को कितना अच्छा जानता है। शैतान हम में से हर एक से अच्छा जानता है, ये ठीक बात है, परंतु वो इसके अनुसार जी नहीं सकता, यही है, वो इसे जी नहीं सकता, समझे। केवल यही सुविधा है कि आप उस पर चढ़ सकते हैं। देखा, वो उतना जान सकता है जितना आप जानते हैं, परंतु वो इसे जी नहीं सकता जैसे आप जी सकते हैं। मसीह मरा ताकि आप इसे जी सकें, और वो उसके लिए कभी नहीं है। इसलिए अब देखिए, किसी सेवक को कोई अधिकार नहीं, कोई मतलब नहीं कितनी कितना बुद्धिमान है, वो कितना धार्मिक विज्ञान जानता है और बाइबल को कितनी भली भांति जानता है। प्रचार मंच पर उसका कोई काम नहीं है, सुसमाचार प्रचार करे जब तक कि वो पहले परमेश्वर से न मिले। अनुमान ना लगाएं कि मुझे बाहर जाना चाहिए और मेरा अच्छा भरण पोषण होगा, और आशा करता हूं कि बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना होगा। भाई आप यहां पर गलती कर रहे हैं, यदि आप वास्तव में प्रचारक हैं। जी हां, परंतु मैं करूंगा और लोग इस प्रकार से होंगे और मैं अड़ोस पड़ोस में लोकप्रिय हो जाऊंगा जहां मैं हूं, और इस प्रकार की चीजें मैं सोचता हूं कि करने के लिए ये ठीक है, ये वो नहीं है। परमेश्वर की बुलाहट कुछ ऐसी है कि आप अनुमान नहीं लगाते, या कुछ वास्तविक अनुभव है, ये कुछ ऐसा है कि आप परमेश्वर से आमने सामने आपने बातें की हैं और आप जानते हैं कि इसे करने को आपका प्राधिकार मिला है। निश्चय ही मैं तेरे साथ होऊंगा। आप किसी चीज का अनुमान नहीं लगाते, आप बस इसका विश्वास करते हैं। जी हाँ, इसका अनुमान ना लगाएं, अनुमान ना लगाएं। मैं सारी रात दौड़ता रहा, एक मसीह व्यक्तिगत अनुभव की प्रतीक्षा करता रहा। पवित्र आत्मा का दावा ना करें जबकि अब तक आप संसार में हैं। आप ये ना करें, नहीं अच्छा होगा कि आप इस विषय में भूल जाएं। देखिए, आप भूल गए। भाई कहते हैं कि भाई ब्रैनम एक दिन मेरे ऊपर कपकपी सी आई थी, ये भी ठीक हो सकता है। परंतु आप कहते हैं भाई मैंने आत्मा में नृत्य किया है, मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूँ और ये चीजें कर सकता हूँ, ये अच्छा है। जी हाँ श्रीमान, ये ठीक है। परंतु यदि जीवन सीधा नहीं हुआ है, यदि तुम मनुष्य अब भी धूम्रपान चुटकुले सुनाते और सामाजिक पेय लेते हैं, झूठ धोखा, ईमानदार नहीं अपने पड़ोसी के साथ, अपने परिवार के साथ ईमानदार नहीं, और पवित्र आत्मा का दावा करते हैं, तो भाई इसकी गवाही ना दें। और आप स्त्रियां, आप में साधारण सभ्यता नहीं कि अपने बालों को बढ़ने दें जैसा परमेश्वर ने आपको बताया, ये ठीक है। बाइबल ने कहा वो महिला जो अपने बाल कटवाती है अपने सिर का अपमान करती है और अपना ये उसके पति का अपमान है। और आप जो छोटे छोटे वस्त्र पहनेंगी जैसे कि बाकी संसार पहनता है, बाइबल ने कहा वो जो एक स्त्री जो पुरुषों के कपड़े पहनती है वो घृणित है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। और फिर आप पवित्र आत्मा होने का दावा करती हैं, आप अनुमान लगा रही हैं कि आपके पास है, परंतु जब आप इसे पाती हैं तो ये आपको साफ कर देता है। ये ठीक बात है, आपको भिन्न बना देता है। आप जो दावा करती हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है और आपके लंबे लंबे बाल हैं और अच्छे वस्त्र पहनती हैं और इस प्रकार की चीजें, और बुधवार की रात्रि आप घर पर रुक जाती हैं कि कार्यक्रम एक टेलीविजन का कार्यक्रम देखें बजाय इसके कि कलीसिया में प्रार्थना सभा में जाएं, आप अनुमान लगा रही हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा वहाँ है तो परमेश्वर का प्रेम इतना जोर डालता है, जब तक आप लोगों से अलग नहीं हो जाते, समझे, कि आप प्रार्थना के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्या हो यदि मेरी पत्नी, यदि मैं अपनी पत्नी से कहूं और यदि मैं विवाह करूं, मैं विवाहित था, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं उससे प्रेम किया है और वो एक झूठ था, और ये जब ये वास्तव में एक प्रदर्शन पर आता है, हम ये एक बनावटी प्रेम है, मैं वास्तव में ये सच्चाई नहीं है, समझे, ये वैसे ही है जैसे आप नकली दांत लगवा सकते हैं यदि आपके पास दांत नहीं है। ये ठीक है, आपके पास कुछ तो है चबाने के लिए, होना चाहिए, इसलिए आपने नकली दांत लगवाए हैं, वे दांत ठीक हैं एक बदले में जब तक कि आपके पास और नहीं है, परंतु वे दांत आपसे जुड़े हुए नहीं है, वे वहाँ से जुड़े हुए नहीं है। वे ठीक है, आप एक प्रतिष्ठित हैं, परंतु वो आपसे जुड़े हुए नहीं है, वे पुनरुत्थान में नहीं आएंगे क्योंकि वे आपसे जुड़े हुए नहीं है। ये ठीक बात है। यदि आपका एक हाथ कट गया है और आपने बनावटी हाथ लगा रखा है, ये किसी चीज का प्रतिस्थापन है, दस्ताने पहन लें और इस प्रकार की, ये ठीक बात है, ये बिल्कुल सही है, देखिए ये करना, परंतु वो बनावटी हाथ कभी भी नहीं आएगा, बनावटी कुछ भी कभी भी पुनरुत्थान में नहीं आएगा, और ना ही बनावटी मसीह कभी पुनरुत्थान में कभी उठेगा। आप मसीह से जुड़े हुए नहीं है। और यदि आप सच में अपनी पत्नी से संसार की और स्त्रियों से अधिक प्रेम नहीं करते, वो नहीं है, तो फिर कहीं कुछ गलत है। यदि आप अपने पति से प्रेम नहीं करती, यदि आप कपटपूर्ण व्यवहार करती हैं और सही प्रकार का जीवन नहीं जीती, तो फिर कुछ गड़बड़ है। ये ठीक बात है, वो नहीं करेगी, विवाह नहीं होंगे पुनरुत्थान में। आपने उससे हो सकता है विवाह किया है, उसके साथ सम्मान से रह रही हैं, ये अच्छा है, मैं सराहना करता हूँ। आपको बच्चों के लिए एक महिला के समान करना चाहिए और पुरुषों अपनी पत्नियों के लिए, ये ठीक बात है, आपको सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, परंतु पुनरुत्थान में वो उसका नहीं होगा।
और अब आप वैसे ही ठीक मसीह में हैं। आपको जुड़ा ही होना चाहिए मसीह का भाग, न कि कुछ बनावटी पहना हुआ। मैं आराधनालय में जाता हूँ और महिमागान और प्रेरितों का मत्सार और आदि आदि करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ जैसे और चल रहे हैं मैं ठीक चल रहा हूँ। भाई आप अनुमान लगा रहे हैं, आप इसे सच मान लें। हम उस आधार पर चल रहे हैं जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। पवित्र आत्मा, वास्तव में आपके पास कोई अधिकार नहीं है। हमने यहाँ पीछे क्या कहा है? वेबस्टर ने कहा बिना किसी वास्तविक अधिकार के जोखिम उठाना। ये कहते हुए आप जोखिम उठा रहे हैं, मैं एक पेंतेकोस्तल हूँ, जबकि आपके पास अनुभव नहीं है और आप पेंतेकोस्तल का जीवन नहीं जी रहे हैं। जी हाँ श्रीमान, क्या बिना वास्तविक अधिकार के, या फिर इसे मान लेना? मैंने अन्य भाषाएं बोली हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे पास है। मैं भी अन्य भाषा बोलने में विश्वास करता हूं, परंतु यदि जीवन उसका अनुकरण नहीं करता तो ये अच्छा नहीं था। देखा, निश्चय ही मैंने प्रेत आत्माओं को भाषाओं में बोलते सुना है और पिशाच इसका अनुवाद करते हैं। देखा, मैं ये जानता हूँ कि मैंने संतों को अन्य भाषा में बोलते देखा है और उसका कुछ भी उसका भी अनुवाद होता है, परंतु आप देखिए इसमें जीवन होना चाहिए। उनके फलों से तुम ये जान लोगे कि किस प्रकार का जीवन है। और आज हमारे पेंतेकोस्तल के संदेश को प्रचार में देखें और हमारे लोग निरंतर नीचे चलते जा रहे हैं, यहाँ तक कि साधारण जीवन की बातें वे आम सभ्यता की नींव पर भी नहीं आ सक पा रहे हैं, तो फिर हम पवित्र आत्मा का दावा कैसे कर सकते हैं? भाई यही समय है। कोई आश्चर्य नहीं कि संसार कहता है कि आपके पास वो नहीं है जिसका होने का तुम लोग दावा करते हो। हम ये मान रहे हैं, हम पेंतेकोस्तल का नाम ले रहे हैं, बिना पेंतेकोस्तल जीवन को जीना। पेंतेकोस्तल का जीवन, पवित्र जीवन, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, धनी और राजकीय, यहाँ तक आपके ऊपर कोई उंगली भी नहीं रख सकता, वो वास्तविक पेंतेकोस्त। क्या आप क्यों प्रतिस्थापन चाहेंगे? क्यों शैतान की चाल आपको इस प्रकार की बातों में फंसाए? अधिक समय नहीं हुआ पढ़ रहा था कैसे सरलता से शैतान व्यक्ति को चाल में फंसाता है। मैं संत मार्टिन के जीवन को पढ़ रहा था, आप में से बहुतों ने पढ़ा है, उस नीसियन बल्कि पोस्ट नीसियन काउंसिल फादर की, कैसे शैतान उसके पास आया, इतना वास्तविक होकर वो इस मार्टिन के पास आया। उसने अपने सिर पर एक सुंदर ताज लगा रखा था, देखने में सुंदर, चमकते बाल, सुनहरे जूते। मार्टिन उसे हिला दिया जब उसने उसको वहाँ खड़े हुए देखा। उसने कहा, मार्टिन, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं मसीह हूँ।
Man filled with the Holy Ghost, and it really done right. See, just listen to this. And he said, accept me, Martin. Why do you stand hesitating? Martin looked back and said,
मार्टिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति था और सही किया था, समझे? इसे सुनिए जरा। और उसने कहा, मार्टिन, मुझे स्वीकार कर, क्यों खड़ा है, झिझकता है? मार्टिन ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, मेरा प्रभु अपने सिर पर ताज रखकर वापस नहीं आता है, उसके संत उसे ताज पहनाएंगे, समझे? वचन उसके साथ टिको। जी हाँ, वो वचन पर था। एक रात्रि विद्यालय में उसका एक विद्यार्थी सेवक विद्यालय मठ में था, बहुत से जिनको वो अब विद्यार्थी कहते हैं और बाइबल विद्यालय, परंतु एक विद्यार्थी के अंदर स्वयं को कुछ बनने का हो गया। उसने कहा, मैं पुराने नियम का एक भविष्य देखता हूँ, तुम मेरी सब सुनो। आज हमारे साथ ऐसा ही है, मेरी सुनो। एक वास्तविक भविष्यवक्ता कभी इस प्रकार नहीं कहता, मित्रों। उसका अंतिम वचन अंतिम व्यक्ति को ये कहना है, समझे? तुम सब मेरी सुनो, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। वो ऐसा ही करता रहा। जो सच्चे वास्तविक भाइयों ने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, न ही बिशप ने, बस चलता रहा। और अंत में उसने कहा, क्योंकि तुम सब ने मेरा विश्वास नहीं किया, आज रात के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि प्रभु परमेश्वर नीचे आकर मुझे श्वेत वस्त्र देगा कि तुम्हारे मध्य में बैठूं। मैं पुराने नियम का एक भविष्य रखता हूँ। आज ये बड़ा ही स्वाभाविक मालूम पड़ता है। अब इसे परखें, थोड़ा आगे बढ़ें, समझे? किसी ने कहा, यह अधिक समय नहीं हुआ, यह अखबार में था, परमेश्वर नीचे उतरा, उसे पिता परमेश्वर के सामने ले गया और स्वर्गदूतों को उसके डैनों पर परों के साथ अनुभव किया। ओ ठीक है, तब ये उस रात्रि मध्य रात्रि के लगभग वहाँ सच में उसके स्थान पर उजियाला हुआ, और उन दिनों में उनके पास मशाल हुआ करती थी, वास्तविक रोशनी, लोगों को फुसफुसाते सुना। वो सीधा सीधा श्वेत वस्त्र पहनकर बाहर आया। हर किसी ने यह अनुभव किया, ऐसा कभी भी नहीं देखा था। सब लोग आसपास जमा हो गए। बिशप भी आया और उसने देखा वो वस्त्र क्या ही था। वो सुंदर था, वो श्वेत वस्त्र नहीं था, वो एक बैंजनी वस्त्र था, वास्तव में गुदगुदा और सुंदर। सारे समय में ऐसी चीज कभी नहीं देखी गई। क्या पेंतेकोस्तल
ऐसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे हम? यही होता है जी हां श्रीमान। इसलिए वो बूढ़ा बिशप अच्छा समझदार व्यक्ति था। उसका उनके साथ क्या मामला था? वहाँ कलीसिया थी, वे वचन के साथ स्थिर थे। उन्होंने कभी भी किसी चीज का अनुमान नहीं लगाया, कोई मतलब नहीं। कैसी अनुभूति वहाँ थी भाइयों! प्रभु आप लोगों के हृदय को आशीषित करे, वचन के साथ टिके रहें। कोई चिंता नहीं कि आपका पास्टर कितना, जॉन डो कितना, या कोई और क्या कहता है, ये संस्था ये वो आदि आदि कहती है। ये ठीक है, जो सबसे अच्छा हो सकता है करें। आप इसका विश्वास ना करें, बस वचन के साथ बने रहें। इस प्रकार से वो वस्त्र स्वाभाविक नहीं था। और उसने कहा, अब आप देखिए, अब से मैं आपके बीच में इस सुंदर वस्त्र के साथ, जो कि स्वर्ग से भेजा गया है, बैठा हूँ। ओ क्या इसने पेंतिकोस्तल सभा के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए? भाइयों, क्या उन्होंने नहीं कर दिया होगा? समझे, आंखों को अंधा कर दिया। किसी चीज को स्वीकार कर लो, धोखा खाना कितना आसान है। समझे, ये ठीक बात है, इसे ना लें। कहा, प्रभु ने मुझे दिया है, और अब तुम सबको ये मालूम हो कि मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ। मैं पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं में से एक हूँ। अब तुम सब मेरी सुनो, जो मैं तुम लोगों से कहता हूँ। समझे, अब के बाद से मैं यहाँ आसपास तुम लोगों को आज्ञा दूंगा। परंतु कैसे भी वो बूढ़ा बिशप, ये उसको कुछ ठीक प्रतीत नहीं हुआ। वो नहीं था, कुछ तो सही नहीं था। समझे, ये सही प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि लड़के की मनोस्थिति ठीक नहीं थी। समझे, एक भविष्यद्वक्ता इस प्रकार व्यवहार नहीं करता है। जो वे कहते हैं उससे प्रमाणित नहीं होते हैं वे, जो इस प्रकार से जो वे समझते हैं, ये जो चिन्ह उनके द्वारा होते हैं। एक मसीही भी इस प्रकार से होता है, आदि आदि। यदि हम कहते हैं कि हम मसीही हैं और अब भी संसार में हैं, तो कहीं कुछ गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। कोई मतलब नहीं आप कितना भी कुछ कहें, ये ठीक है, ये अब भी ठीक नहीं है। इसे वचन से ही आना है, वचन पर, वापस वचन पर। इसलिए उसने कहा, बूढ़े बिशप ने कहा कि हम बाकी रात्रि भजन गाने में बिताएंगे और प्रार्थना करने में। सब कुछ चलता रहा। बूढ़े बिशप ने सारी रात्रि प्रार्थना की और बाकियों ने प्रभु के भजन गाए। अगली सुबह वे जानते थे कि मार्टिन परमेश्वर का प्रमाणित भविष्यद्वक्ता है। उसे ये किसी को बताना नहीं था, उसके कार्यों ने ये सिद्ध किया था। इसलिए उसने कहा, पुत्र एक और काम है मैं चाहता हूँ कि तुम करो। बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर मार्टिन के सामने खड़े हो। उसने कहा, ओह मुझे चेतावनी है कि मार्टिन के सामने खड़े ना होना। आप वहीं पर हैं, आप यहीं हैं। समझे, वो जिसके पास खरा सोना है उसे उस छूने वाले यंत्र से कोई भय नहीं है। वो जिसके पास जीवन है अपने जीवन को निंदा से ऊपर जीता है, उसे कोई चिंता नहीं संसार उसे क्यों क्या कहता है। पवित्र शोर करने वाला, ये ठीक है। यदि मनुष्य जीवन को निंदा से ऊपर जीता है, यदि स्त्री का जीवन निंदा से ऊपर है, वो किसी भी वचन को जो परमेश्वर के वचन से प्रचार होगा वो सुन सकती है, या वो पुरुष, दोनों में से कोई भी। क्या भाई, नहीं, निश्चय ही नहीं। उसे पत्थर से छूने का कोई भय नहीं है। यदि उसके पास वास्तविक सोना है तो इसके विषय में कोई चिंता नहीं, वो परीक्षा में खरा निकलेगा। और इसलिए उन्होंने कहा, जो भी है तुम जा रहे हो, क्योंकि वे जानते थे कि मार्टिन प्रभु का प्रमाणित भविष्यद्वक्ता है। इसलिए परमेश्वर इन बातों में उसके साथ था जो उसने किए थे, और सिद्ध किया था कि वो था। इसलिए उन्होंने उसे पकड़ा, कैसे भी उसे लिया, और वस्त्र लोप हो गया। देखिए कितना आसान मान लेना। उस ईमानदार लड़के ने मान लिया कि उसने आवाज सुनी कि बिशप के लिए कितना सरल कि उनमें से कोई भी इसके लिए गिर पड़े। परंतु वे भाई लोग वचन पर बने रहे। जब वो नीसियन सभा वहाँ हुई, उन्होंने तर्क आरंभ कर दिए। आप में से बहुत से सेवकगण जानते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। वे जो वास्तविक विद्यालय से थे, जैसे संत पैट्रिक, और वे जो गए, और वे अलग अलग, और इरेनियस, और भिन्न भिन्न, वे वचन पर स्थिर रहे। उन बाकियों ने सिद्धांत लिए और चले गए, और आज भी यही है। परंतु वास्तविक विश्वासी वचन के साथ स्थिर रहे। धन्य प्रभु, मैं जानता हूँ हम कुछ मान लें, वचन के साथ बने रहें, और परमेश्वर बाध्य है कि बनाए। वो वचन एक बीज है, और वो वचन हर उस चीज को ले आएगा जिसको लाने की उसने प्रतिज्ञा की है। वो इसे करेगा, ये संसार में से आपको निकालेगा, ये आपको पवित्र करेगा, ये आपसे भिन्न जीवन यापन करवाएगा, ये आपसे उन चीजों को करवाएगा जिसको आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये वचन है जो आप में है। अनुमान ना लगाएं कि ये आपके पास है। अपने जीवन पर ध्यान करें और आकलन करें, और देखें कि आपका जीवन क्या है। देखें कि आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखें यदि आप विश्वास में हैं, तो ढूंढें और देखें यदि सब बातें ठीक चल रही हैं। देखें यदि संसार का प्रेम अब भी है इतना कि वो परमेश्वर की वास्तविक बातों से अलग बुलाता है कि संसार से प्रेम करें। यदि ये है भाई, तो यहाँ पर जांचें, कहें शैतान कि तू इस गंदी चीज को वापस ले ले, मैं इसे नहीं लूंगा। ठीक वहाँ अमुक अमुक कलीसिया है, वे ये करते हैं। भाई अमुक अमुक उसके लोगों को करने दें, मैं चिंता नहीं करता कि भाई अमुक अमुक क्या करता है। वचन कहता है कि ये ना करें, ये तय हो गया, ये ठीक बात है। वे राष्ट्र में सबसे महान संस्था है, वे सब ये करते हैं। वे कहते हैं ये ठीक है। जी हाँ ये कह सकते हैं कि ये ठीक है, परंतु जब परमेश्वर कहता है, देखिए परमेश्वर के वचन ने कहा, शैतान ने कहा ये लिखा है, यीशु ने कहा ये भी लिखा है, समझे, यही बात है, देखा ये लिखा है। हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है, किसी भी बात को मान ना लें, इसे पक्का ना समझ लें, इस पर दुस्साहस ना करें, जबकि आपके पास अधिकार नहीं है। केवल ये है कि टिके रहें, प्रतीक्षा करें, यदि ये 10 दिन, 20 दिन, 10 वर्ष या ये जो भी है, जब तक आप बिल्कुल निश्चित ना हो जाएं, वचन अपनी ही गवाही देता है कि ये ऐसा है, तब आप सही हैं कि जीवन सीधा करें और ऊंचाई पर आएगा, ठीक अपने स्थान पर आएगा, निश्चय ही होगा। और कलीसिया जिस पर मैं अक्सर आश्चर्य करता था, मैं उस कलीसिया में जाना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि मरने से पहले देखना है, बंद कर रहा हूं, किसी समय कलीसिया में जाऊं, उसमें से निकलते हुए, और बस देखता हूं कि ओह, ये पाप उस कलीसिया में टिक नहीं सकता। कोई भी सदस्य उसमें जाने से पहले स्वीकार करेगा, पवित्र आत्मा उसे सही स्थान से पुकारेगा, इस प्रकार, समझे, जैसा कि देखिए महिलाएं वहां बैठी हैं, सभी महिलाएं लग रही हैं, देखिए पुरुष पुरुष जैसे हैं, वास्तविक के संपूर्ण मनुष्य, पवित्र आत्मा से भरे हुए मनुष्य, आत्मा से भरे, कोई भी पाप कलीसिया में कहीं भी, पवित्र आत्मा वहीं बोलेगा, जैसे हनानिया सफरिया आपसे पहले वहां आए हैं, समझे, ओ यही कलीसिया में देखना चाहूंगा, मेरी इच्छा है कि मैं इसे देख सकूंगा। मित्रों, मैंने सारे राष्ट्र में लड़ाई की, मैंने पीटा, मैंने चकनाचूर किया, मैंने सब कुछ किया, लोगों पर चिल्लाया और कभी कभी उनकी संस्था को दोषी ठहराया और आदि आदि। संस्था नहीं, ये उसमें नहीं, संस्था अच्छी है, उसके विरोध में कुछ नहीं, परंतु भाई सुनिए, बहुत सारे लोग उस संस्था पर ही निर्भर करते हैं, समझे। यदि आप नदी पर उसके झरने के गिरने की ओर जा रहे हैं और मैं आपको देखता हूँ कि आप छोटी सी नाव में थे और वो नाव गिरने जा रही है और मैं आपसे विवाद कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, ये इसलिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, देखिए आप झरने में गिरकर नाश हो जाएंगे। और यदि आप कहते हैं कि भाई हम उसके सदस्य हैं, परंतु भाई बहनों मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पास्टर एक भला मनुष्य है, मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, वो व्यक्ति ईमानदार है, वो मान रहा है कि वो सही है, तब आप कहते हैं क्यों, वो कहता है कि दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं, अन्य भाषा में बोलना जैसी कोई चीज नहीं, इस जैसा कुछ भी नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्यों, वो कहता है ये गलत है, उसकी संस्था उसे ये सिखाती है। भाई मैं उसकी संस्था के विरोध में नहीं हूँ, परंतु ये चीज समाप्त हो जाएगी। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, समझे, अनुमान ना लगाएं, निश्चित हो जाएं, तब ये आपके पास है जब आप निश्चित हैं। आप में से कितनों को इस प्रकार की बात का अनुभव होगा, कलीसिया में इस प्रकार चलना चाहते हैं, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं होगा। आइए हम अपने सिरों को एक क्षण के लिए झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, उसकी पवित्र उपस्थिति में ये जानते हुए कि वो सच्चा और धार्मिक है, प्रभु ये कितना कठिन है कि भाई और बहनों से उन बातों को बोलें जो काटती और खोदती और तोड़ती हैं, और उन बातों को कहना कितना कठिन है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मुझ पर अनुग्रहकारी हूँ और जाने की प्रेम में मेरा हृदय इन लोगों के लिए आगे बढ़ता है कि प्रेम में मैं इनके साथ रहूं। और क्यों मैं इन बातों को कहूंगा, क्योंकि पिता मैं विश्वास करता हूं मुझे ये कहना चाहिए, ये आपका वचन है, ये किया जाना चाहिए, और बहुत सी बार मार्ग में ये हमारे भाइयों की सहायता करता है, जब भक्त मंडली इतनी अखड़ हो जाती है कि पास्टर की आज्ञा का उल्लंघन करती है और आदि आदि, और तब प्रभु आप कभी कभी किसी को भेजते हैं और 2 या 3 गवाहों के मुंह के द्वारा गवाही करवाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में इसका विश्वास किया गया है और ये वास्तव में सत्य है, और अलग अलग लोग इसी का उल्लेख कर रहे हैं, तब उस दिन लोग बिना बहाने के खड़े होंगे। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ यहाँ कोई नहीं है जो उस दिन नष्ट होना चाहेगा, सबसे अंतिम बात जो उनके विचारों में अंत के दिनों में नष्ट हो जाना, और प्रभु कोई मतलब नहीं कि हमने क्या किया है। आपने कहा जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्म ले वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता, तब यदि हम नए सिरे से जन्मे हैं, हम परमेश्वर के बालक हैं और संसार की चीजें हमारे लिए मरी हुई हैं, वे मर गईं। और पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि आप अनुग्रहकारी होंगे कि कलीसिया के हर सदस्य को जो इससे जुड़ा है, ऐसी बातें जैसे थोड़ा सा ठंडापन और वापस संसार में जा रहा है, ये प्रदान करें कि तुरंत ही वे पंडुकी के समान जहाज से लौटें कि भूमि को ढूंढने जाएं और वापस आएं, उसे अपने पांव को उन मरे हुए शवों पर टिकने का स्थान न मिला और खिड़की पर खटखटाया जब तक कि पिता नू ने उसे भीतर विश्राम में नहीं ले लिया, जब तक कि बाढ़ नीचे ना हो गई। ओ प्रभु, होने पाए वो व्यक्ति आज रात्रि परमेश्वर के पास वापस आ जाए, होने पाए समस्त कलीसिया वापस आ जाए। फिनिक्स में ये समय खोजबीन का हो जाए, कलीसियाएं पवित्रता के लिए हिल जाएं प्रभु, और ऐसी हलचल हो जाए कि दिखाई पड़े जैसी महान हलचल आपने आरंभ में की, और परमेश्वर की सामर्थ लोगों के मध्य में बहने लगे, और तब संसारिकता और मतभेद और नकलें और शारीरिक तुलनाएं या सांसारिकता कलीसिया में घुस आए, ठीक वैसे ही जैसे आज रात्रि हमारा विषय है। वे अच्छी तरह दौड़े, वे खतना के अधीन मिस्र से बाहर निकले और मेमने के लहू में, और वे अच्छे चल रहे थे, परंतु जब वे आपके वचन के दूसरे भाग में आ गए और फिर इस पर संदेह किया, वहीं वे रुक गए और युद्ध हार गए। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कलीसिया में कभी भी ऐसा ना होने पाए। इन अंत के दिनों में परमेश्वर, ये युद्ध हमें हराने ना पाए और सारे अक्कन बाहर हो जाएं और मजदूरी पड़ाव से बाहर रहे, और वचन पर वापस आए और पवित्रता पे वापस आए और धार्मिकता पर वापस आए और पवित्र आत्मा की सामर्थ में परमेश्वर के लिए जीवित रहें। प्रभु इसे प्रदान करें। यीशु मसीह में होते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के हृदय में भूख उत्पन्न करेंगे कि कलीसिया पुराने दिनों के समान दिखाई पड़े, जब उनके पास कलीसिया में अधिक सामान भी ना था, रखने के लिए वेदी भी ना थी, क्योंकि मूर्ति पूजक वेदी के सामने गिरेंगे और पागान मूर्तियों के सामने दंडवत करेंगे, और वे कलीसिया में वेदी लगाने से डरते थे, क्योंकि लोग साधारण मत परिवर्तक वेदी पर आराधना कर सकते थे बजाय जीवित परमेश्वर के, और वे अपने घुटनों पर गिरेंगे इस खुले में और अपने हाथों को अदृश्य परमेश्वर की ओर उठाएंगे, क्योंकि वे बाद के पवित्र आत्मा के बहाव को पसंद करेंगे, उस पुराने ठंडे पत्थर की पटिया पर बैठे हुए और भूमि पर किसी भक्त मनुष्य के द्वारा सुसमाचार की व्याख्या को सुनते हुए, और परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा सभा में उतरता है। ओ परमेश्वर, उन्हें सिंहों की मांद में आग की भट्टी और चीजों में जाते हुए देखते हैं पिता, और पुनरुत्थान में जहां हम खड़े होंगे, हो सकता है कि आज उन्हें गड्ढे में और शेरों की मांद में जाने की आवश्यकता ना हो, परंतु परमेश्वर हमें आवश्यकता है कि सभ्य और पवित्र और परमेश्वर के आदर्श अनुसार जीवन जिएं, कि धार्मिक जीवन जिएं, खोजें और प्रार्थना करें, जागते और प्रतीक्षा करते रहें कि किसी भी घड़ी वो आएगा, ना डरें कि वो आता है, परंतु उसके प्रकट होने को प्रिय जाने प्रभु से प्रदान करें। हमारी इच्छा है कि महान कलीसिया एक साथ बुलाई जाए, और ये भाग जो फिनिक्स में विश्राम और परदेशी है, हम विश्वास करते हैं आपके यहाँ वास्तव में सैकड़ों सदस्य आपकी कलीसिया के यहाँ फिनिक्स में परदेशी हैं, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। वे अनुमान नहीं लगा रहे हैं, वे आत्मा से भरे हैं, उनके जीवन बताते और दिखाते हैं कि वे हैं, वे आपके बालक हैं। पिता, यहाँ कुछ है जो उस प्रकार का होना पसंद करते हैं, हो सकता है उन्होंने मान लिया हो, और वे अपने पिछले जीवन को देखते हैं और देखते हैं कि वे उस प्रकार से नहीं चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की रात होगी, यदि यहाँ कोई है कि उसकी बुलाहट आज की रात्रि हो, कि वे लज्जित ना होंगे परंतु खड़े होकर कहेंगे, मैं गलत हूँ, परमेश्वर मुझे क्षमा करना, मेरी सहायता करना कि आज रात्रि से आपके वचन पर आ जाऊँ और इस पूरे परिवार इस पूरे पर विश्वास करूं और आत्मा से भर जाऊं और इस प्रकार से पवित्र हूं कि मेरी गवाही नगर में मेरे विरोध में ना हो। पिता, इसे ग्रहण करें। अब जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, हमारी आंखें बंद हैं, मैं आपसे एक भाई के समान कहने जा रहा हूं, एक नगर की खोज कर रहे हैं जिसका बनाने और रचने वाला परमेश्वर है। और मुझे अचरज है, आज रात्रि आप कुछ बहनें कुछ भाई, कोई संदेह नहीं, आप अच्छे ईमानदार हैं, मैं आपको आघात पहुंचाना नहीं चाहता था, परंतु बताना चाहता था कि सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन। मैं आपके नगर में था और बेदारी सभाएं की, आपने देखा कि मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, परमेश्वर पापियों की उत्तर नहीं देता। हम ये जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि मसीह होना, मैं और आपका पास्टर, उसने आपको बता दिया यहाँ इस नगर में होते हुए, और आप पाएंगे कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है, और आप पाते हैं कि अब भी आप संसार के साथ मेल खा रहे हैं, निरंतर वहाँ संसार में। आप ये नहीं चाहते, बहन, क्या आप चाहती हैं? आप ये नहीं चाहती हैं। इस प्रकार से आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें आप किसी बात में नहीं चूकेंगे, और अब आज रात्रि से परमेश्वर, यदि आपने पहले कभी नहीं सुना, परमेश्वर आपको जिम्मेदार ठहराएगा, वो आपको जिम्मेदार ठहराएगा। भाइयों, जिन बातों के विषय में हमने चर्चा की है, यदि आप उन बातों में दोषी हैं, आप वैसे ही बने नहीं रहना चाहते, क्या आप चाहते हैं? निश्चय ही नहीं, आप वास्तविक मसीही होना चाहते हैं। परमेश्वर हमें कैसे बीजगणित में कभी ले जाएगा? जैसा कि मैंने कहा, जब हम नर्सरी ही नहीं छोड़ सक पा रहे हैं, हमारे पास संवेदनाएं हो सकती हैं, हम चिल्ला और परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं और आत्मा में नाच सकते हैं और सब इस प्रकार से, क्यों ये सब अच्छा है भाई बहनों? मैं भी इसमें विश्वास करता हूँ। मैंने मूर्ति के चारों ओर मूर्ति पूजकों को इसी प्रकार से नाचते हुए देखा और चिल्लाना और चीखना और अन्य भाषाओं में बोलना, आप समझे? इसलिए ये जीवन है जो महत्व रखता है। इसे देखें, वे फलों के द्वारा जाने जाते हैं। और आप देखिए कि आप ये मेल नहीं खा रहा है। क्या आप एक वास्तविक मसीह होना चाहते हैं? और मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, यदि आप चाहें। मैं चाहता हूं कि आप सच में अब ईमानदार हो जाएं। ठीक अभी एक सच्चे ईमानदार। पाप पीने के द्वारा ढांका नहीं जा सकता, उसे एक और कर देने के द्वारा, कलीसिया के सदस्य बनने के द्वारा, भले काम करने के द्वारा, पाप केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मारा जा सकता है, यीशु मसीह का लहू। क्या आप इस प्रकार का जीवन नहीं चाहेंगे? यदि आप चाहेंगे और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भवन में है, उसकी कभी असफल न होने वाली उपस्थिति सदा निकट रहती है, कोई मतलब नहीं आप कहाँ हैं। उस प्रातः एक दर्शन उसने मुझे ये बताया, उसने कहा मत डर, उसने कहा साहस के साथ खड़ा हो, क्योंकि कभी ना सफल होने वाली मसीह की उपस्थिति निकट है। क्या आप उस प्रकार के एक मसीह होना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको होना चाहिए? आप यत्न कर रहे हैं, परंतु आप अभी भी उस स्थान पर नहीं पहुंचे हैं। अब आपका अपना जीवन सिद्ध करता है, समझे? अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं, बस कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ईमानदार निष्कपट हृदय मैं सच में होना चाहता हूँ। अब क्या हो यदि आप जानते हैं कि आपके जीवन में आप उस बात से मेल नहीं खा रहे हैं जो एक मसीही को करने के लिए आवश्यक है, और फिर अब भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में शैतान आपके हाथ को नीचे करवाए रखा है कि इसे ग्रहण ना करें। अब इस विषय में क्या है, जब आप यहाँ वचन के साथ जानते हैं कि आप गलत हैं? मैं ये प्रेम और सम्मान में कह रहा हूँ, समझे? ये कितनी भयानक बात है जो कि आप जान पाएंगे कि मैं ये नहीं करता कहता कि आप हैं, परंतु मैं कहता हूँ यदि आप जानते हैं और जानते हैं कि आपका जीवन, देखिए कि आप क्या करते हैं, जो व्यवहार आप कर रहे हैं, देखिए कि आपका जीवन बाइबल के साथ मेल नहीं खाता, और आपने समाचार का प्रचार सुना है, आप जानते हैं कि उन बातों को करना गलत है, समझे? क्या ये भयानक बात नहीं है? हम लगभग 20-30 हाथ उठे हुए हैं। क्या एक छुपा हुआ है जो चाहता है? अब कोई ना देखे, बस मुझे देखने दें। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कोई जो छूट गया, क्या आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे? वहाँ मैं बालकनी में देखता हूँ। हाँ जी हाँ, वहाँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब बहुत सारे हैं। जी हाँ, परमेश्वर आपके साथ हो। ये सच में ईमानदार हैं। क्यों नहीं हम आज रात्रि ये तय कर लें? क्यों नहीं हम आज रात्रि कहें हम इसे तय कर लें? अब ये आपके मध्य में आए, यहाँ फिनिक्स में, इस सुंदर स्थान में, आपके लिखे हुए पत्रों की सराहना कर रहा हूँ और हिम्मत बढ़ाना और आदि आदि कि आप मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं और आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। यही कारण है कि मेरे पास, मैं आपके साथ ईमानदार होना चाहता हूँ। तब मसीह मुझसे इसका उत्तर मांगेगा, और यदि मैं आपको सत्य न बताऊं तो फिर मुझे उत्तर देना होगा, और यही कारण है मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ हों। भाई बहनों, भाग्य नाजमाएं यदि वहाँ थोड़ी सी भी संयोगवशता है तो उस पर निर्भर ना हो, इसके साथ खेल ना करें। नहीं, हम वास्तविकता, एक वास्तविक मसीह बने। यत्न आप हो सकते हैं, दूसरे आप भी हो सकते हैं। आप एक विशेष महिला को जानते हैं, आप उसके समान होना चाहते हैं। एक विशेष पुरुष को आप उसके समान होना चाहते हैं। एक विशेष व्यक्ति आप उसकी तरह होना चाहते हैं। आप हो सकते हैं। अब आइए अपने पूरे हृदय से हम विश्वास करें। अब जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, मैं अपनी बहन जो पियानो पर बैठी है कहने जा रहा हूँ, बहन यदि आप हमें एक गीत का स्वर दें, यदि आप करेंगी, मुझे अचरज है, आप वास्तव में इसे पसंद करेंगे। अब यदि आप वास्तव में ईमानदार हैं, ये अभी घटित होगा, यदि आप वास्तव में सच्चे हैं, परंतु आपको सच्चा होना पड़ेगा। मेरे पास गवाही है, मैं जब से मेरी माँ गई है, मैं वहाँ जंगल में था, एक गुफा में, उपवास और प्रार्थना में, मुझे एक दर्शन मिला, और वो एक बात थी ईमानदारी, समझे? अब क्या वास्तव में यही अर्थ है कि आप इस प्रकार के मसीही होना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सारा संसार चला जाए, आपसे हर चीज ले ली जाए? यदि आपका वास्तव में ये अर्थ है, आप इस कलीसिया में किसी से भी नहीं ले जाएंगे, अपने पक्ष पर स्थिर हैं। नहीं श्रीमान, आप नहीं। आपने अपना हाथ परमेश्वर को पकड़वा दिया, आपको कोई लज्जा नहीं है, आप आ रहे हैं, आप केवल अपने जीवन से लज्जित हैं, समझे? आप चाहते हैं, आप इसे सीधा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप सदा इस पर जयवंत होना चाहते हैं, इसलिए वो करेंगे जो सही है। यदि आप ईमानदार हैं, मैं चाहता हूं आप खड़े होकर यहां वेदी के सामने आ जाएं, जैसे बीमारी की प्रार्थना के लिए आते थे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और आप पर हाथ रखना चाहता हूं। यदि आप इसके लिए यहां आना चाहते हैं, आप आगे बढ़ें। मैं निश्चित हूं कि स्वर्गीय पिता करेगा। शांति के साथ आएं, यहां वेदी के पास खड़े हो जाएं, पवित्रताई के लिए जितनी शांति से आ सकते हैं आएं। आज की रात्रि से भाई ब्रणम, मैं अपने जीवन को पवित्र कर रहा हूं। मैं कुछ भी अनुमान लगाने नहीं जा रहा, मैं सीधे सीधे आ रहा हूं। मैं अभी आ रहा हूं, मैं इस पूरे के साथ, मैं परमेश्वर से प्रतिज्ञा कर रहा हूं। कोई मतलब नहीं कि क्या आता और जाता है। इसी समय अपने पापों से निकलते हुए मैं वास्तविक मसीह होना चाहता हूं। मैं अपने जीवन को पवित्र करने के लिए आ रहा हूं। आपको ये करते देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। अब एक और दो क्षणों के लिए कोई और है जो खड़ा होना चाहता है और कहता है, आज रात्रि मैं अपने जीवन को पवित्र कर रहा हूं। परमेश्वर, मैं इस सब से थक गया हूं। मैंने सदा एक सच्चा मसीह बनना चाहा। ये कभी से मेरे हृदय में जल रहा था जब मैं एक छोटा लड़का था या मैं एक छोटी लड़की थी। मैं बहुत होना चाहती हूँ। मैं ये जानते हुए कि मुझे मरना है, मैं कोई संयोग नहीं लेना चाहता। क्या आप नहीं आएंगे एक मिनट के लिए वेदी के पास खड़े हों पवित्रताई के लिए? अब पवित्र होने का अर्थ किसी चीज के लिए पवित्र होना, मसीह के लिए पवित्र होना। क्या आप इसके लिए आकर वेदी के पास खड़े होंगे? बस एक मिनट। मसीह जिसके पास ये अनुभव नहीं है तो वो इस पर भाग्य ना आजमाए, समझे? पेड़ कैसे जाना जाता है? उस पर लगे फलों के द्वारा। हम बस श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, जितना कि आने के लिए हम जानते हैं। थोड़ी देर के बाद कलीसियाओं की किसी एक सभा में आप जान जाएंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ। आज रात्रि मेरे पास ये कहने के लिए समय नहीं कि मैं इसमें जाऊँ, परंतु मैं आप समझेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपनी पुकार दे रहा है। ये हम अंतिम वाले को लेने जा रहे हैं, समझे? ये कुछ घटित होने जा रहा है। मैं नहीं जानता कब, या आपको सुबह होने से पहले घटित हो या मेरे साथ सुबह होने से पहले घटित हो, परंतु भाई बहनों, क्या हम एक छोटी चीज पर भाग्य परखने का अवसर ले सकते हैं? कोई मतलब नहीं ये क्या है। थोड़ा सा दोषी सारा दोषी है। आपको मेमने के लहू में धुला और पवित्र होना चाहिए। छोटा सा पाप आपको अलग रखेगा। देखा, यदि सरदूत उसके सामने गंदा है तो हम क्या होंगे? अब बस एक दो क्षण, क्योंकि संभव है कोई और प्राण फिर से एक हलचल और फिर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं अब आप मरते हुए हृदय की गहराई से आए। अब इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आप में से कुछ जो यहां खड़े हैं उन्हें भिन्न प्रकार की चीजों का अनुभव हुआ होगा। संभव है आप चिल्लाए, रोए, अन्य भाषा बोली हो, आत्मा में नाचे हों। आप भाई बहनों, कोई संदेह नहीं, परंतु आपके पास क्या है? और वे चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छी। परंतु क्या आप जानते हैं कि इब्रानियों का छठवां अध्याय वर्षा भूमि पे पड़ती है कि तैयार और उद्देश्य के लिए संभाली जाए, परंतु कांटे और झाड़ियाँ उसमें उसे अस्वीकृत करते हैं, जिनका अंत जलाया जाना है। वे अंतर को कैसे जानते हैं? वही आत्मा, वही जीवन, वही जल जो गेहूं पर गिरा कांटों पर भी गिरा, और कांटे और झाड़ियां और खरपतवार उतने ही आनंदित और ताजगी का अनुभव करते हैं उसी वर्षा से, और लोग कलीसिया में बैठे हुए हैं मित्रों और उसी प्रकार का अनुभव प्राप्त करते हैं। मित्रों, अब इसमें धोखा ना खाना, समझे? आप उसी पवित्र आत्मा से वही अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जो आपके बराबर में बैठे ने प्राप्त किया है, और फिर भी वो नहीं है। सूरज धर्मी और अधर्मी दोनों पर चमकता है, वर्षा कांटों और गेहूं दोनों पर बरसती है। ये गेहूं के लिए भेजी गई है। पवित्र आत्मा कलीसिया में संतों की पवित्रताई के लिए भेजा गया, परंतु वे जो वहाँ बैठे हैं आनंद ले रहे हैं निश्चय ही, परंतु वे अपने फलों से जाने जाते हैं। तो फिर कहा गया, हम उन्हें उखाड़ देंगे? नहीं, उन्हें साथ साथ बढ़ने दो, और उसी दिन स्वर्गदूत जाएंगे और सारी झाड़ियों बेलों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें जला देंगे। परंतु गेहूं को खत्ते में जमा करेंगे, उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। इसलिए आज रात्रि आप लोग यहाँ खड़े हैं फलों के लिए, आत्मा के फलों के लिए। अब याद रखें, आप कहते हैं भाई ब्रैनम ये क्यों? हो सकता है कि आप में से कुछ महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। मैंने ध्यान दिया कि आपके बाल छोटे हैं। भाई ब्रैनम ये क्यों है? मैं एक मसीही हूँ और मैं अब भी वैसी ही दिखाई पड़ती हूँ। मैं ये नहीं कर सकती, मैं अपने बालों को बढ़ने नहीं दे सकती। फिर मैं जानती हूँ कि बाइबल सिखाती है कि ये सही है, नया नियम सिखाता है कि ये चीज करनी है, बस मैं नहीं कर सकती। लगता है कि मैं इस पर जयवंत नहीं हो सकती, उस स्थान तक नहीं पहुंच सकती, समझे? मैं विश्वास करता हूं आप भले व्यक्ति हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप ईमानदार हैं। आप आज रात्रि एक आदर्श के समान यहां नहीं खड़े हैं, आप ये कर रहे हैं और यही है जो आपको करना है। ये वचन है, आपको ये करना है, समझे? आप में से कुछ भाई, परमेश्वर आपके हृदयों को जानता है, आप यहाँ किस लिए खड़े हैं। वो चीजें जिन पर आप जयवंत होना चाहते हैं, अब आप कर सकते हैं। यदि आप इसे इस प्रकार से स्वीकार करें और कहें, प्रभु अब मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ और मैं आ रहा हूँ, आपके अनुग्रह के द्वारा मैं ये करने जा रहा हूँ। अब आप ये उसके बिना नहीं कर सकते। संसार में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर सकें, आप उसको करने दें। आप बस अपने आप को उसके लिए पवित्र करें और अपने पूरे हृदय से इसका विश्वास करें, तब वो ये करेगा आपके लिए, वो करेगा। देखा, यदि आप उसको उसके वचन के आधार पर लें, वो इसको इस प्रकार से नहीं करेगा, वो आप सबके लिए एक ही प्रकार से करेगा, समझे? वो आप में से प्रत्येक को सही चीज बनाएगा। मैं चाहता हूँ आप सब लोग जो मसीही हैं और इन चीजों से ऊपर जी रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना करें। चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें, विशेषकर सेवक भाई मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ कि अब आप में से प्रत्येक अपने हृदय की गहराई में, आप जानते हैं कि वर्षा आप पर हुई है। आप कहते हैं कि भाई ब्रैनम मैंने आत्मा में नृत्य किया है, मैं भाषाओं में बोला हूँ, ये सच्चाई है, परंतु देखिए वहाँ कोई चीज ठीक नहीं है, समझे? देखा, आपको इस खरपतवार से गेहूं में होना है, नम्र मधुर वचन के साथ आज्ञाकारी। देखिए वचन का आज्ञाकारी। अब पवित्र आत्मा को भीतर आने दें और आज रात्रि आप जो थे उससे आपको परमेश्वर को बदलने दें, उसमें जो वो चाहता है कि आप हों, जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं।
Our Heavenly Father, I realize that around this altar, which the church is an altar,
हमारे स्वर्गीय पिता, मैं अनुभव करता हूँ इस वेदी के आसपास जो कि कलीसिया एक वेदी है, वो स्थान जहाँ लोग आते हैं और स्वयं को उस पर रखते हैं कि होम बलि के समान प्रभु के लिए ग्रहण किए जाएं। पिता, मैं जानता हूँ कि आज रात्रि इनमें से कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं और उनके संबंधी यहाँ कलीसियाओं में हैं और वे यहाँ इस वेदी पर पवित्र होने के लिए खड़े हैं और उनके लिए ये करना एक बड़ा कार्य है, जैसा कि वे यहाँ खड़े हैं, लोगों को गवाही दे रहे हैं और आपके सामने उनके जीवन में कुछ कमियां हैं और इन बहनों पर, मैं इन बेचारी बहनों पर जितना कठोर हो सकता था हुआ। आज रात्रि पिता उनके कह कह गए पर, और यहाँ वे अपनी जगहों पर से खड़े हुए हैं, एक महिला के समान चलते हुए यहाँ खड़े हुए कहते हैं, परमेश्वर यदि मैं गलत हूँ तो मुझे ढालें और बनाएं। इसी प्रकार से भाई लोग यहाँ खड़े हैं, तब भी वे अपनी जगहों से खड़े होकर सीधे यहाँ आए हैं। हृदय की गहराई में एक इच्छा है और पिता, शैतान उनके हृदय सही ना करने की इच्छा ना डालने पाएगा, वो उनके हृदय में गलत करने की इच्छा डालेगा और निरंतर रहेगा। उस पर ना जाएं, उसे छोड़ दें, इसका विश्वास ना करें, यही जो वो कहेगा। तो फिर हम इसको कैसे जांचें? वचन के द्वारा। जैसे मैंने कहा, संत मार्टिन, पौलुस, कलीसिया के सारे आरंभ के बिशप और प्राचीन, उन्होंने मामलों को वचन के द्वारा जांचा और अब आज रात्रि वे वचन के द्वारा जांचे गए। जब वे जांचे गए, उनकी ताड़ना हुई ताकि वे संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसलिए प्रभु, ये लोग आए कि अपने आप को पवित्र करें और संसार से एक और हो जाएं, कि उनका संसार से कुछ भी लेना देना नहीं, ये आपको पूरी रीति से समर्पित करना चाहते हैं। जब तक इनका पूरा जीवन मसीह को परिवर्तित ना करे, कि जब वे चलें, बात करें, वस्त्र पहने, व्यवहार करें, तो ये मसीह निरंतर उनके जीवनों से दिखाई पड़े। और स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये उन्हें प्रदान करें। अब जानते हुए कि समय निकट है प्रभु का आगमन, और फिनिक्स में इस समय ये महान हलचल लोगों में देखते हुए और समय को देखते हुए जिसमें कि हम निकल कर आ रहे हैं चंगाई की सभाओं में से, और देखते हुए कि कैसे उनके विश्वास मुझे दिए गए कि लोगों के छुटकारे और बीमारी दुखों में सहायता करूं। प्रभु, आपका आत्मा हमारे मध्य में घूम रहा है इस प्रमाण के साथ कि आप वहाँ पर थे, भौतिक और वैज्ञानिक दोनों रूपों में। और फिर आज रात्रि इस बुलाहट के साथ मैं उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में आपको देता हूं प्रभु। हर सेवक जो यहां है प्रभु, हर मसीह जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहा है प्रभु, वे मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। अब हम अपनी प्रार्थनाएं आपको इन लोगों की ओर से देते हैं। होने पाए इनमें से प्रत्येक आज की रात्रि से स्वयं को पवित्र करे। होने पाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नम्रता के साथ इसी समय इनके हृदयों को चीरती हुई इस प्रकार से भीतर चली जाए कि ये इन्हें ढाल दे और आज रात्रि के बाद से भिन्न बना दे। होने पाए मधुर नम्र टूटे हुए आत्मा इनके अंदर आ जाए प्रभु, इस प्रायश्चित में जो गलत किया गया, और होने पाए परमेश्वर का दृढ़ निश्चय का अनुग्रह उन पर आ जाए कि अपने जीवनों को निरंतर आपके मार्ग में पवित्र रखें प्रभु। प्रभु, इन्हें ग्रहण करें पिता। अब हम इन्हें आपको देते हैं जैसे कि अपने जीवनों को ये पवित्र करते हैं यीशु मसीह के नाम में। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ मैं विश्वास करता हूं कि जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप एक भी वचन परमेश्वर से नहीं कह सकते जब तक कि वो इसे नहीं जानता, सबसे दुर्बल संत से शैतान कांपता है और आप उसके बालक हैं। और क्या आप अपने पूरे हृदय के साथ, आप में से प्रत्येक पूरी रीति से अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने डालते हैं और कहें, परमेश्वर मुझे ढालें और मुझे एक नम्र मसीही बना दें कि आज रात्रि जिस विषय में यहाँ बातें की गई हैं, मैंने अपना जीवन आपको दे दिया है, मेरे जीवन से सारी चीजें निकाल दें जो गलत हैं। पिता, होने पाए आज रात्रि के बाद मैं बढ़ता जाऊं आपके अनुग्रह से। मैं हर दिन आपके लिए जीऊंगा, अपने जीवन की रक्षा करते हुए बाइबल की मांग के आदर्श के साथ होता चला जाऊं। यदि आपने अपने हृदय में ये कर लिया है तो क्या आप अपना हाथ परमेश्वर के सम्मुख उठाकर कहेंगे, मैंने ये कर लिया है, मैं इसका अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब पिता, ये तेरे हैं, इन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, इन्होंने अपना समर्पण कर दिया है और कोई मतलब नहीं कि वरदान कितना छोटा है। आप यहाँ सबसे छोटा उपहार स्वीकार कर रहे हैं और ये अपने आप को आपको दे रहे हैं जैसे भी ये थे। वे उस महान देह के सदस्य होना चाहते हैं बिना दाग, बिना एक झुर्री के, और पिता ये आपके लिए समर्पित हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब तक ये संसार में जीवित हैं, आप इन्हें बचाए रखेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब अपने स्थानों पर आनंद करते हुए जाएं और आनंदित होते हुए कि मसीह ने आपको आपके शब्दों पर ले लिया है। अब मैं विश्वास करता हूँ, अब जबकि वे नीचे जा रहे हैं, वहाँ एक महिला पहिए वाली कुर्सी में बैठी है और एक पुरुष। मैं विश्वास करता हूँ कि वे अपने हाथों के द्वारा बात कर रहे हैं, वे कोई संदेह नहीं, परंतु वे यहाँ जो भी हैं प्रार्थना करवाने के लिए हैं। क्या आप सब अपने सिरों को झुकाएंगे और मुझे नीचे जाने देकर उनके लिए प्रार्थना करूँ? अब भाई, आप उनसे जो पहिए वाली कुर्सी में है बात कर सकते हैं, और वे क्या है समझे? अब उनसे ये कहिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपको चंगा करना चाहता है। यदि कुछ ऐसा था कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता प्रार्थना के अलावा, तो मैं वो करता, परंतु उसने बहुत बार मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है आप जैसे लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, और उनको चंगा किया है। जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा हृदय आपकी ओर ही है।
जैसे कि मैं महिला को देखता हूं और मैं अपनी माँ के विषय में सोचता हूं, जो कि परमेश्वर से मिलने को चली गई कुछ ही दिनों पहले। हो सकता है वो भी किसी की माँ हो। मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा और वो उत्तर देगा, और इसी घड़ी से मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें कि कार्य हो चुका है। अब बाकी भक्त मंडली जो यहां पर है, क्या कोई और प्रार्थना करने के लिए, कोई बीमार लोग या कुछ, कोई यहां महिला कोई वहां पर है? ठीक है, आप यहां वेदी के पास आ जाएं, मुझे ये करने में खुशी होगी। अब यहाँ कितने याद कर सकते हैं कि बहुत समय पहले, लगभग 14 वर्षों पहले, भाई आउटलॉ की कलीसिया में, किसी भाई को आउटलॉ की कलीसिया याद है? जब मैं वहाँ 14 वर्षों पहले था, भाई ग्रासिया और वे लोग वहाँ पर, याद है मैं कैसे लोगों को ऊपर लाया करता था? कभी नहीं, हजारों बार, हर बार ये बिल्कुल ठीक सही निकला। क्या ठीक बात है? आप सब जानते हैं कि ये सही है। अपने हाथों को उठाएं, सभाओं में रहें और सुना उसने क्या कहा। जो वो कहता है घटित होता है, तो इसे सुने। अब दर्शन लोगों को चंगा नहीं करता, दर्शन केवल परमेश्वर की उपस्थिति का समर्थन करता है, समझे? अब मैं सोचता हूँ अब हम इसे वास्तव में जान पाए हैं, परंतु जिस तरह से मैंने किया, प्रार्थना थी। एक महिला थी जो यहीं कहीं हुआ करती थी फीनिक्स में, उसका नाम बहन हैटी वॉल्ड्रॉफ था, मैं विश्वास करता हूँ यही था, या हाँ उसे कैंसर था। उसका पति नल ठीक करने वाला था और वे अक्सर सभा में आते थे। मैं नहीं जानता कि आज रात्रि वे यहाँ हैं या नहीं। मुझे याद है वो एक सभा में थी और उन्होंने कहा कि उसकी मृत्यु हो गई। वो पंक्ति में इसी प्रकार दिख रही थी। मुझे स्मरण है कि कैंसर हृदय में था और डॉक्टर ने यहाँ एक्सरे आदि भिजवाए थे कि दिखाएं। ये लगभग 14 वर्षों पहले की बात है। वो अब जीवित है। मुझे याद है वो बुलाहट एक छोटे अपाहिज के लिए प्रार्थना हुई थी, लाल बालों वाला लड़का। प्रभु ने उसे चंगा कर स्वयं स्वस्थ कर दिया था। बहुत सारी बातें, बहुत सारी, ये गिनती में अनगिनत हैं। मैं इसे मसीही ईमानदारी के साथ कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि मैं हर घटना को लिख सकूँ, मैं जब से सेवक हूँ और जब से मैं सेवक हूँ, मैं इतना ऊंचा पुस्तकों के संस्करणों का ढेर लगा दूंगा। मेरे पास डॉक्टरों की गवाहियों के बयान हैं, 5 लोगों के जिन्हें मृत घोषित किया गया था, मरे पड़े थे और प्रार्थना के द्वारा फिर से जीवन में आ गए, समझे? बहुत से दावा करते हैं कि उन्होंने ये किया है, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा जब तक इसे प्रमाणित करने का कोई तरीका नहीं, ये जानने के लिए आप देखते हैं। परंतु मरने के पश्चात उन्हें घंटों और दिनों तक देखते रहे। यहाँ छोटा मैक्सिकन बालक मर गया था, वो उस प्रातः 9 बजे मरा और ये लगभग रात के 10 बजे बज रहे थे। डॉक्टर ने बयान पर हस्ताक्षर दिए कि बालक निमोनिया से मरा और सारे समय मरा रहा, और वो बेचारी मैक्सिकन माँ बाहर बारिश में खड़ी रही। मैंने कभी कुछ नहीं किया, बस अपना हाथ बालक पर रखा। मैंने एक दर्शन देखा, अपना हाथ बालक पर रखा और वो पैर चलाने और जोर से रोने लगा, और क्रिश्चियन बिजनेसमैन ने इस लेख को लिखा। अधिक समय नहीं हुआ या कुछ बिजनेस की वॉइस में मरुओं के जी उठने के विषय में, अब ये करा जा सकता है। परंतु क्या हो यदि मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ इस कलीसिया के सदस्यों से कह दूं, और मैं कलीसिया के किसी भी सदस्य से कहूंगा, आप इस कलीसिया को परमेश्वर को समर्पित कर दें और इसके सारे सदस्यों को देखें, इसे परमेश्वर के लिए पवित्र कर दें। आप में से प्रत्येक पवित्र जीवन के साथ परमेश्वर के सामने देखें क्या घटित होगा। जब यह कलीसिया स्वयं को बांधती है और प्रार्थना करना आरंभ करती है, उन लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने जाना आरंभ हो जाती हैं, वो उन्हें अस्वीकार न करेगा। ये ठीक बात है। अब मैं बस एक, यहाँ बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और दिव्य चंगाई किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं रहती। ये ईमानदार हृदय जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ये ईमानदार लोग जो इसे पाते हैं। मैं अनुभव करता हूँ वरदान जो कलीसिया में भेजे जाते हैं, जिसके पास विश्वास है
और मैं अनुभव करता हूं कि मेरी सेवकाई जो राष्ट्रों में थोड़े से लोगों के ऊपर बुलाकर और दर्शन दिखा रहा है और छानबीन करी और वे जो दूसरे लोगों की प्रार्थना पंक्ति में से होकर निकले और आदि आदि वे भीतर आए तब मुझे उन्हें रोकना पड़ा। हो सकता है उस व्यक्ति के पिछले जीवन में कुछ हो। आप में से बहुतों ने यहाँ प्रचार मंच पर देखा होगा पाप बताया गया, उनके हृदय की गुप्त बातें और चीजें, और उन्हें कारण बताए गए कि वे क्यों नहीं चंगे हो सके। परंतु उसमें से होते हुए उन थोड़े से देने के द्वारा, क्योंकि थोड़े से और मेरी शक्ति जाती रही, समझे, और फिर आप समझते हैं ये वचनानुसार है और ये कैसे है। और तब वहाँ बहुत सी माताएं अपने बच्चों के साथ, मैं उनके लिए प्रार्थना भी नहीं कर पाया, बहुत से बीमार लोग, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। मैं सोचता हूँ ये बहुत से लोगों को मालूम है, सबको मालूम हो जाना चाहिए कि मैंने आपको सत्य बताया है। देखिए ये सत्य है और मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ और परमेश्वर से मांगता हूँ कि उन्हें चंगा कर दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रत्येक जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे चंगा हो जाएगा। अब यदि आपके जीवन में कुछ है, लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपसे ये पूछूं, यदि आप एक मसीह नहीं हैं, आप मसीही हो जाएं और अपना हृदय मसीह को दे दें, ठीक यहीं जहां आप खड़े हैं। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, तो प्रार्थना करना मत रुकिए जब तक परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है। यदि आप मसीह में कुछ गलत कर रहे हैं तो रुक जाएं, ना करें, इसे करना बंद करें, अपने जीवन को जांचें, मसीह के लिए जिए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने और मांगने जा रहा हूँ। अब एक सुबह किसी नाश्ते पर या किसी रात्रि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ हुआ। मैंने कार्य क्षेत्र को छोड़ा और प्रतीक्षा करी, प्रार्थना उपवास के लिए वापस गया ये देखने को कि ये क्या था, और कुछ जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, एक समय से प्रतीक्षा की, ये घटित हुआ। इसलिए मैं ये कुछ नहीं है अब कल्पना, मैं इस चीज में नहीं जाता, मैं चाहता हूँ इसे यहोवा यूं कहता है होना चाहिए वचन के द्वारा, समझे। यहाँ इस बारे में बहुत कुछ है, छूना, अनुभव और इस प्रकार की सब चीजें, अंधविश्वास और आदि आदि। हम इस प्रकार की चीजों से अलग रहें, हम सीधे परमेश्वर के पास वापस आएं, हम पवित्र आत्मा चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर लोगों को बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजता है, और उन नम्र लोगों में से मैं भी एक हूँ जिन्हें उसने भेजा। मैं भी एक छोटा सा हूँ जिसे उसने भेजा, और आज रात्रि मैं अपनी प्रार्थनाओं को चंगाई के लिए देना चाहता हूँ। आप विश्वास करते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये भाई बहन जो इस भवन में हैं मेरे साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों, और होने दें। मैं विश्वास करता हूँ हम यहीं से आरंभ करें, कोई प्रचार मंच पर आए फिर उन्हें जाने दे, या वापस जैसा उन्होंने किया वे बढ़िया होंगे। बिली, कोई आप में से कोई मेरी सहायता करे, इसे लेकर आए, हमारे पास लाए, ठीक यहीं, ये महिला ठीक यहाँ पर है। आपको किसी विशेष के साथ आरंभ नहीं करना है। मैं नहीं सकता, मैं आश्चर्य में हूँ कि इन्हें होने दूं। यदि वे उन्हें यहाँ आने दें, भाई क्या वे इस रास्ते से आ सकते हैं? ठीक है, अब हम बस थोड़ी देर से हैं, परंतु आप मेरे साथ प्रार्थना करने में एक मिनट सहन करें। मैं जानता हूँ बहन यहाँ पर है, मैं विश्वास करता हूँ कि ये भाई आउटलॉ की कलीसिया की सदस्य है। वो कैसे हैं? अच्छे हैं, और इसे कहते हैं, ओ मैं आपका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु अच्छा, बैगबी, बहन बैगबी, मुझे आपको जानना चाहिए, आप मेरे लिए भली रही हैं बहन बैगबी। और ये नहीं था क्या आप वही नहीं जहाँ कि मुझे भाई आउटलॉ प्रार्थना करने के लिए ले गए थे अस्पताल में जब मैं पहले यहाँ आया था वर्षों पहले? क्या ये वो कुछ ऐसा था? आपको क्या था, मधुमेह या हृदय गले की टीबी? और वो अब भी परमेश्वर की महिमा के लिए जी रही है, ये भाई बहुत अच्छा है। अब वो आज रात्रि भी वैसा ही परमेश्वर है, वैसा ही जैसे वो था। हम बदल सकते हैं परंतु वो नहीं। अब आपकी जो भी परेशानी है वो उसे ले लेगा यदि आप उसका विश्वास करें। क्या आप इसका विश्वास करेंगे? मैं कलीसिया से कहता हूँ मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जैसे कि मैं अपने हाथों को यीशु मसीह के नाम में इस बहन पर रखता हूँ, परमेश्वर इसे चंगा करें। मैं इस आशीष की घोषणा परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में करता हूँ, आमीन। अब बहन बिग भाई विश्वास करें। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? यदि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे, और आप एक मसीही हैं, और सारे धन्यवाद और महिमा परमेश्वर को हो। परंतु जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो अब आप घर चंगे होकर जा रहे हैं, ये सदा के लिए तय हो गया, इस विषय में अब और नहीं सोचना। हमारे स्वर्गीय पिता, इस कलीसिया के साथ कि बहुतों ने अपने जीवन को फिर समर्पित किया है, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहन को चंगा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब केवल मेरी प्रार्थना ही नहीं, परंतु हर ओर देखें, वो गंभीर ईमानदारी, हम नहीं, वास्तव में हृदय से यही अर्थ है कि आप ठीक होने जा रहे हैं। आप भी इस बात का विश्वास करेंगी क्या? आप नहीं? हमारे स्वर्गीय पिता, आत्मा की नम्रता के साथ और परमेश्वर हमारे झूठे हृदयों को क्षमा करना, प्रभु हमें शुद्ध करना, जैसे कि हम अपने हाथ बीमारों पर रखते हैं, क्योंकि ये किसी बात को घोषित कर रहा है जो कि परमेश्वर के द्वारा करने के लिए कहा गया है, और बस उन बेचारे लोगों की सहायता करना। पिता, मैं अपने हाथ बहन पर यीशु के नाम में रखता हूँ और उसकी मांगता हूँ। परमेश्वर आशीष दें। निश्चय ही मैं विश्वास बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप एक क्षण के लिए महिला निष्कपटता से स्वीकार कर रही है? उसने कहा उसके ऊपर एक आत्मा है क्रोध की, और हम अनुभव करते हैं कि यह अच्छा नहीं है। परंतु बहन, केवल आप ही नहीं, यहाँ हम में बहुत सारे हैं, आपने देखा। परंतु हो सकता है कुछ इतने ईमानदार ना हो कि इसे मान ले। परंतु वो जो अपने पापों को मान लेता है, वो जो अपने पाप को छुपाता है, फलेगा फूलेगा नहीं। परंतु वो जो अपने पापों को मान लेगा, उस पर दया होगी, आप ये जानते हैं। इसलिए स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ बहन पर हाथ रखते हुए कि ये क्रोध उसे छोड़ जाए, इसे कभी फिर परेशान ना करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बहन, आपको आशीष मिले। मेरे भाई, आप विश्वास करें कि वो निवेदन को प्रदान करने जा रहा है। ओ भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। हो सकता है देखकर अधीर हो रहे हैं, हृदय हवा में ऐसे उड़ जाए, ये कारण हो सकता है। हमारे स्वर्गीय पिता, ये अनुभव करते हुए कि हम कभी नहीं जानते कि हमारा हृदय किस घड़ी रुकने जा रहा है, किसी भी घड़ी में, और भाई को हृदय की परेशानी है, उस क्रोध के साथ कारण हो जाता है कि बदमिजाजी में पहुँच जाते हैं। ओ वो शैतान चाहता है कि उसे होने वाली कब्र तक ले जाए, परंतु मैं आपका दास होने के नाते इन सब दूसरे दासों के संग आज रात्रि हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं कि क्रोध इसे छोड़ जाए और हृदय स्वस्थ हो जाएगा, और अपने सारे जीवन के दिनों सच्चा मसीही होगा और उसकी सेवा के लिए चंगा रहे। यीशु के नाम में आमीन। भाई, आपको आशीष मिले। मैं विश्वास करता हूँ कि ये समाप्त हो गया, आप चंगे हो गए हैं। आप कैसे हैं? आप विश्वास करते हैं कि वो आपके निवेदन को आपको प्रदान करेगा? हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपने भाई को आपके पास प्रभु यीशु के नाम में लाते हैं, जैसे कि क्रूस के तले, और उसे ऊपर की ओर संकेत करते हैं, वहाँ उन घावों को देखते हैं और उसकी एक ओर से टपकते हुए लहू और चेहरे को लहू के साथ। परमेश्वर का पुत्र मर रहा है ताकि हम अपने सारे पापों से साफ हो सकें, और बीमारी हमारे भाई को ये प्रदान करें। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना चढ़ाता हूँ, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ ये समाप्त हो गया है। भाई, क्या आप बस घर जाएं? भाई, आप कैसे हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आज रात्रि होने जा रहा है, आज रात्रि से ये सब समाप्त होने जा रहा है और आप चंगे होने जा रहे हैं? हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे कि हम अपने भाई का हाथ पकड़े हुए हैं, आज रात्रि के बाद से उसका निवेदन उसे प्रदान कर दें, वो चंगा हो जाए और अपने जीवन के सारे दिनों को आपके लिए जिए। यीशु के नाम में आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि ये होने जा रहा है, आप चंगे होने वाले हैं। भाई, आप कैसे हैं? ये वो घड़ी है कि सब हो गया, अब अपना निर्णय लें। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे भाई ने आमीन कहा, ये वो समय है कि ठीक मसीह की उपस्थिति में निर्णय लिया गया है। आज रात्रि के बाद से ये समाप्त हो जाए, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। मेरे भाई, आपको आशीष मिले। विश्वास करें, ये समाप्त हो गया। बहन, आप कैसी हैं? ओ क्या मैं आपका रुमाल ले सकता हूँ कि इसके साथ जाए? ये ठीक बात है, ये ठीक बात है, कुछ और एक छोटी निशानी कह सकते हैं मिट्टी, परंतु मैं कल्पना करता हूँ कि वे वस्त्र जो वे पुराने दिनों में पहना करते थे, यीशु के विषय में क्या है? उसके पास एक ही वस्त्र था, संभवतः वो उसी में सोता था, उसी में रहता, परंतु देखिए वो किस चीज में लिपटा हुआ था। ठीक है, हमारे स्वर्गीय पिता, इनका मूल्यवान पति अपाहिज है और यहाँ आज रात्रि उसका साथी यहाँ पर एक छोटा सा कपड़ा हाथ में लिए खड़ी है और वो अपाहिज है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दयावान होंगे, और यहाँ इस कलीसिया की प्रार्थना एक साथ है। ये लोग फीनिक्स में परदेशी हैं और राष्ट्र के विभिन्न भागों से जो यहाँ आज रात्रि उपस्थित हैं, कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और जब ये कपड़ा उस मनुष्य के ऊपर लगाया जाए तो होने पाए परमेश्वर की सामर्थ उसे फिर से साधारण जीवन में ले आए। यीशु के नाम में आमीन। अब ये मांग लिया गया है और अब इसे होने दें। बहन, आप इसका विश्वास करती हैं? बहन, आप कैसी हैं? आपका रुमाल लेना चाहता हूँ। आप अब आपकी आवश्यकता, आप शायद बहुत बीमार हैं, क्या आप अपनी परेशानी बताना चाहती हैं? या फिर गठिया, ये लगभग 20 वर्षों से यहाँ एक व्यक्ति मेरे पीछे बैठा है, भाई एड हूपर नाम का। एक समय यहाँ फीनिक्स में उसका बहुत बुरा था, उन्हें उसके हाथ तकिए पर रखने पड़ते थे, क्या ये नहीं था भाई एड? और उस दोपहर बाद वो लगभग मरने पर था, और जैसा मैं कहानी समझता हूँ उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसने सोचा वो जा रहा है और उसने देखा कि मसीह को क्रूस पर चढ़े देखा था, ऐसे ही कुछ सामने झुका हुआ या कुछ, वो चंगा हो गया था, यहाँ तक वो सका, यहाँ वो बैठा है, वो वहाँ पीछे बैठा है। हाँ भाई हूपर, वो आपको देखना चाहती हैं, अपना हाथ उठाएं, आप वहाँ हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, उपस्थित व्यक्ति, हम जान पाए कि आप चंगा करता है। हम अपने हाथ बहन पर रखते हैं कि ये छोटी सी समर्पित नम्र प्रार्थना हम इसे चंगाई के लिए चढ़ाते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम में, उसकी महिमा के लिए। आमीन, आमीन। विश्वास करते हुए जाएं, ये अब समाप्त हो गया है, आपको होना था, हमने नहीं सुना। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन आप कैसी हैं? हमारी बहन जब 3 वर्ष पहले उसका पति मर गया, बीमार है मधुमेह और गठिया से, और वो विश्वास करती है कि परमेश्वर उसे चंगा कर देगा। हम भी वैसे ही विश्वास करते हैं। स्वर्गीय पिता, अब हम अपने हाथों को उस पर रखते हैं, होने पाए ये बहुतों के साथ कलीसिया में वापस जाए, ये धन्यवाद करते हुए कि ये सब समाप्त हो गया और चला गया। ऐसा होने के लिए आपसे मांगते हैं पिता, यीशु के नाम में हमारी नम्र प्रार्थनाएं, आमीन। मेरी बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे, अब विश्वास करें। बहन आप कैसी हैं? क्या विश्वास करती हैं कि आज रात्रि इसका अंत हो जाएगा और आप उसको अब अपना चंगा करता स्वीकार कर सकती हैं? ओ मूल्यवान परमेश्वर, विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचा लेतीगी और परमेश्वर उसको उठा कर खड़ा करेगा। हम अपने परमेश्वर के विषय में सोचते हैं कैसे वो इस पृथ्वी पर परदेशी बनकर रहा और बीमारों की सेवा की और बहुत सी चीजें उसने की। अब मैं अपनी इस बहन के लिए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, उस अधिकार के अंतर्गत जो हमें एक सेवकों के समान प्रदान किया गया है, इस प्रार्थना को हम इसकी चंगाई के लिए चढ़ाते हैं, आमीन। बस इसका विश्वास करें, अब सब कुछ हो चुका है, आपका सारा विश्वास जो आपके पास है इसके साथ कर दें, ये घटित हो जाएगा। भाई आप कैसे हैं? उसके वचन के आधार पर ठीक यही समाप्त हो सकता है। स्वर्गीय पिता, हमारे भाई के इस निवेदन को ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम में वो चंगा हो जाए, आमीन। मेरे भाई को आशीष मिले। बहन आप कैसी हैं? क्या आप तैयार हैं और उसकी चंगाई को लेने के लिए तैयार हैं? और जैसा कि हम आपसे पूछते हैं, कोई ऐसी चीज बीच में ऐसी ना आए जो कि उसे उसका आत्मा उंडेलने से रोक पाए। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे कि मैं अपने हाथों को बहन पर रखता हूँ, देखते हुए कि आप लोगों को चंगा करते हैं, मैं प्रार्थना और अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूं कि आप बहन के निवेदन को ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। आप जानते हैं मैं ये कहना चाहता हूं, जबकि वो लोग आ रहे हैं, मैं कभी भी नहीं समझ सका क्यों मैं इसके पहले कि मैं पेंतिकॉस्टल भी होता, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने को जाया करता था, वे बस चंगे हो जाते। मैं नहीं जानता इस विषय में, मुझे कुछ भी नहीं करना होता, बस उस पर विश्वास करना होता और मैं बस प्रार्थना करता, और पहली बात आप जानते हैं लोग अच्छे हो जाते। कोई भी इस प्रकार करता, हम बस प्रार्थना और विश्वास करते, वे चंगे हो जाते हैं, बस यही होता है। देखा कितने दिव्य चंगाई से चंगे हुए। हाँ देखिए, वो आप देखिए, आप बता सकते हैं, आप पेंटिकॉस्टल फुल गॉस्पल के लोगों के मध्य में हैं, वे हाथ इसका विश्वास करते हैं, समझे? क्या आप नहीं देखते कि क्यों प्रभु आपके लिए उत्साहित है? आपको आघात पहुंचाने की कोशिश नहीं, परंतु इस बात का यत्न, आप जानते हैं, हमें उस स्थान पर लाना है जो बिना दाग और झुर्री के हो। मैं आशा करता हूँ आप मुझ पर गुस्सा नहीं है, वचन को बाइबल से बाहर लाने के लिए मैं सहनशीलता के भले विश्वास जो परमेश्वर की ओर से है, ये घड़ी है कि ये आपके साथ घटित हो। क्या बहन ऐसा नहीं है? अब इसे होना ही है क्योंकि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, आमीन। स्वर्गीय पिता, बहन को आशीषित करें, जैसे कि मैं अपने हाथ बहन के ऊपर रखता हूँ, और विश्वास के द्वारा हर मसीही जो यहाँ है अपने हाथ उस पर रखे। ये कलीसिया प्रार्थना कर रही है, हम मांगते हैं कि बीमारी और दुख उसे छोड़ जाए, यीशु के नाम में, आमीन। ये जो उसने प्रतिज्ञा की है। बहन आप कैसी हैं? आज रात्रि आप विश्वास करती हैं कि रात्रि इसके लिए है? हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम में इस घड़ी का ये अंतिम स्पर्श हो कि वो चंगी हो जाएगी, यीशु के नाम में आमीन। मेरी बहन आपको आशीष मिले। आज रात्रि के बाद ये समाप्त हो गया। बहन आप कैसी हैं? ये घड़ी आपकी चंगाई की है, ठीक है ना श्रीमान? हमारे स्वर्गीय पिता हम अपनी बहन को आपके सामने लाते हैं प्रभु यीशु के नाम में, और उसके आधार पर अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं कि वो यीशु के नाम में चंगी हो जाए, आमीन। अब देखिए, ये केवल मेरी प्रार्थना नहीं, यहाँ हर कोई प्रार्थना कर रहा है, सब एक ही समय में, और हमें मालूम है कि परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। हम ये जानते हैं कि उसे होना है, समझे? उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। आप विश्वास करते हुए जाएं। बहन आप कैसी हैं? ये समय इसके लिए ही है, क्या ये चंगा होने के लिए नहीं? हमारे स्वर्गीय पिता ये इसके लिए आज रात्रि तय हो जाए, होने पाए ये इस आराधनालय को प्रसन्न और आनंद करते हुए, और ये जानते हुए कि ये समाप्त हो गया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बहन आपको आशीष मिले। बहन आप कैसी हैं? आज की रात आपके लिए चंगाई की है, क्या नहीं? इसी समय, ये समय है इस बाइबल और कलीसिया और मसीह, स्वर्गीय पिता सेवकों के मध्य में, साधारण लोगों, परमेश्वर के संत, सारे संत, स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का प्राधिकार कि उनके ये चिन्ह होंगे जो विश्वास करते हैं। यदि वो बीमारों पर हाथ रख दें, वे चंगे हो जाएंगे। इसलिए हम दावा करते हैं, आज रात्रि हमारी बहन के लिए समाप्त हो गया, उसकी चंगाई यीशु के नाम में आमीन। मेरी बहन आपको आशीष मिले। भाई आपके लिए भी हम वही करेंगे, आप इसका विश्वास करेंगे? हमारे स्वर्गीय पिता ये कहता है कि वो विश्वास करता है, इसलिए हो जाना चाहिए। वे जो विश्वास करते हैं और ये विश्वास करता है, इसलिए इसकी चंगाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम में आमीन। ये अच्छा है, आप जानते हैं कि कैसे स्वीकार और इसका विश्वास किया जाए। भाई आप कैसे हैं? आज की रात चंगाई की रात होने वाली है, बस इसे यहाँ छोड़ दें और चले जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता हम अपने भाई को आपके पास लाते हैं उसकी चंगाई के लिए यीशु नाम में। प्रभु वो इसे यहीं छोड़ने वाला है और शत्रु को उसे छोड़ना ही है, वो फिर से स्वतंत्र हो जाएगा, यीशु नाम में आमीन। ऐसा ही हो। आप कैसे हैं? आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपको चंगा करने जा रहा है आज रात्रि? हमारे स्वर्गीय पिता जैसे कि ये बालिका अपनी चंगाई को लेने जा रही है, हम कलीसिया अपनी प्रार्थना को चढ़ाते हैं यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए, आमीन। देखा, यही है, ये समाप्त हो गया। बहन आपको आशीष मिले। आज रात्रि के बाद ये सब समाप्त होने जा रहा है, क्या नहीं? हमारे स्वर्गीय पिता लोग विश्वास कर रहे हैं, वे विश्वास करते हैं, वे यहाँ प्रचार मंच के पार नहीं जाएंगे, वे बीमार हैं, वे जानते हैं कि क्या करना है, वे सीखे हुए हैं, वे जानते हैं कि ये वो घड़ी है जिसमें वे अपना अंतिम निर्णय लेंगे, और वे इसकी पुष्टि के लिए आए हैं। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, और मैं यीशु नाम में अपने हाथ इस महिला पर रखता हूँ ताकि वो चंगी हो जाए, आमीन। बहन परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसा क्या? जॉन्सबोरो अरकनसास में, ओ बहुत वर्षों पहले।
God spoke to me. He said, Catherine, if you go to Brother Branham tonight, you'll be healed.
Amen.
And I went back in the house and I told them all. I said, if I go tonight, God spoke to me, I'll be healed. And I said, will this go to please her? And they went with me and the majority of my people are Pentecostal.
प्रभु की महिमा हो। क्या आप गवाही सुन सकते हैं? बहन एक मिनट प्रतीक्षा करें, मैं इसे दोहराऊंगा। जॉन्सबर्ग अरकनसास में, ये लगभग 15 वर्षों पहले की बात है, उसकी गर्दन पर गोइटर बाहर को लटक रहा था और वो यहोवा विटनेस थी, और उस प्रातः जब उसने हमारी सेवकाई प्रभु के लिए वहां सुनी, इसने कहा कि मैं शैतान का नबी हूं, और वो बगीचे में प्रार्थना करने को बाहर गई, और प्रभु ने उससे बात की और कहा, वहां जाओ और तू चंगी हो जाएगी, और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। उसे गोइटर नहीं था, और उसके लोग जो अधिकतर यहोवा विटनेस थे, आज उनमें से आज रात्रि अधिकांश पेंटिकॉस्टल हैं। अब यदि वो इस अच्छी मसीही स्त्री के गले को इस प्रकार साफ कर साफ कर देता है, वो आपको अच्छा कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? निश्चय वो इसे कर सकता है। हमारे स्वर्गीय पिता, अपने हाथों को भाई के ऊपर रखे हुए हम उसकी चंगाई को मांग रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। वो आपके लिए वैसा ही है जैसा कि उसके लिए होगा, क्या ये ठीक बात है? हमारे स्वर्गीय पिता, एक साधारण सी प्रार्थना, साधारण विश्वास के साथ, ओ प्रभु मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप इसे साधारण बना देते हैं ताकि मैं इसे समझ सकूं और आपको स्वीकार करूं। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे चंगा करेंगे और इसे स्वस्थ कर देंगे, यीशु के नाम में आमीन। बहन आप कैसी हैं? हाँ माँ जी, मैं देखता हूँ कि आपकी सांस भी, मैं समझता हूँ। ओ हाँ, ये दुख देते हैं, मैं समझता हूँ इसका मेरा। अब ये अधिक समय तक दुख उठाए इसका कोई कारण नहीं है, क्या है समझे? शायद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और फेफड़ों से उसकी पसलियां निकाल दी और संभवतः उसे नीमोथोरेक्स का इलाज दिया और फेफड़े बैठ गए और महिला कष्ट उठा रही है। और आप ये विश्वास करती हुई आई हैं कि मसीह आपको चंगा कर देगा और अपना सारा जीवन उसकी सेवकाई में बिताएंगी, तब मसीही, मैं सोचता हूँ कि हमें अधिकार है कि हम इस महिला को मसीह के सामने लाएं और वो उसे चंगा कर देगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारी बहन आज रात्रि नम्र आराधना के साथ आई है, ये जानते हुए कि उसका डॉक्टर जो कर सकता था सब कुछ कर दिया है, उसने बहुत कोशिश की परंतु फिर वो चंगी नहीं होगी, परंतु आप तो चंगा करने वाले हैं, वो चंगी हो जाए। पिता हम उसे आपको समर्पित करते हैं कि आप उसे चंगा करें, यीशु के नाम में आमीन। बहन आपको आशीष मिले, अब चंगी हो जाएं। मैं विश्वास करता हूँ ये चंगा हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। बहन आप कैसी हैं? आप विश्वास करती हैं कि वो आज रात्रि आपको चंगा कर देगा? ठीक है, वो ये करेगा यदि बस आप उसका विश्वास करें, आप हो जाएगा, ये ठीक है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, महिला विश्वास करती हुई आती है, उसने कहा वो ये भी नहीं जानती कि उसके साथ क्या गड़बड़ है, परंतु वो जानता है ये जो भी है प्रभु वो इससे छुटकारा पाना चाहती है, हम वो जानती हैं कि ये शत्रु का है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके निवेदन को प्रदान करेंगे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बहन आपको आशीष मिले, आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हुई जाएं। बहन आप कैसी हैं? क्या विश्वास करती हैं कि आज रात्रि ये तय हो जाने का समय होगा? मैं सोच रहा था कि महिला अरकनसास से अभी गवाही दी है, मुझे याद है कि पंक्ति में होते हुए, मैं वहाँ इसे कभी नहीं भूलूंगा, एक महिला ने रुमाल ले रखा था, मैंने सोचा कि वो रो रही थी, जब उसने उसे लिया रुमाल को, उसके नाक नहीं थी, कैंसर ने उसकी नाक खाली थी और उसका लड़का टेक्सास काना में उन्मूलक था और मैंने उसके लिए प्रार्थना की। अगली सभा में वहाँ सुंदर महिला खड़ी हुई देख रही थी, वो युवा दिखाई पड़ रही थी और मेरी ओर देख रही थी, उसने कहा क्या आपको मेरी याद है? मैंने कहा मैं विश्वास नहीं करता कि मुझे है, और लड़का एक प्रकार से रोने और देखने लगा। ये वो महिला थी, उसकी नाक नहीं हो गई थी, उसके चेहरे पर वापस बढ़ गई थी। मैं जानता हूँ सुनने में ये तर्कपूर्ण नहीं लगता और मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जो कि ठीक नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें पूरी रीति से गंभीर होना चाहिए जब हम ये बातें कहते हैं। परंतु मैंने महिला की ओर देखा था जो बिना नाक की खड़ी थी, और फिर कुछ सप्ताहों के पश्चात मैं उससे फिर मिला, उसके नाक थी, और ये बस उसने कहा कैंसर ने खाना बंद कर दिया, और कुछ समय बाद जैसे कि कुछ फिर वापस बढ़ने लगा और उसको फिर से नाक आ गई, समझे? और ये इतना आश्चर्यजनक है देखने में कि वो इसे कैसे कर सकता है। अब वो जो इसे कर सकता है वो आपको चंगा कर सकता है, बहन क्या वो नहीं कर सकता? प्रश्न ही नहीं है, उसकी सामर्थ्य ये करती है, क्या इच्छा है? और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे बहन, एक मरणहार के समान, कि हम दोनों को किसी दिन इसी प्रकार से खड़ा होना है, उसने ये पहले ही कर दिया है, यदि वो केवल आपसे विश्वास करवा सके। और यहाँ एक छोटा सा व्यवहार मसीह के समान है कि बपतिस्मा लें और आदि आदि, इस प्रकार से आप विश्वास करें, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ आप चंगी हो जाएंगी बहन। अब सारी कलीसिया प्रार्थना करे। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, ये युवा महिला यहाँ पर खड़ी है और परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं अपने हाथ उस पर रखता हूँ और उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे बचाने वाले यीशु मसीह के नाम में आमीन। बहन परमेश्वर आपको आशीष दे, अब से ये हो जाएगा। हाँ
ओ मैं समझा 95 ये सुंदर बात है अपनी 95 वर्ष की माँ के लिए आई हैं जिसे मोतियाबिंद है हमारे स्वर्गीय पिता जैसे कि ये बदले में खड़ी है वो कहती है कि अपनी माँ के लिए बहुत आयु की है मोतियाबिंद है हम इसकी माँ के लिए प्रार्थना करते हैं ओ परमेश्वर ये कलीसिया इसकी माँ की चंगाई के लिए प्रार्थनाएं चढ़ाती है यीशु मसीह के नाम में आमीन संदेह ना करें बस विश्वास करें प्रिय बहन ये समाप्त होने जा रहा है क्या विश्वास कर सकती हैं आज रात्रि ये समाप्त हो जाएगा हमारे स्वर्गीय पिता अपने हाथ बहन के ऊपर रखते हुए किया गया कार्य पूरा हो गया अब इसके अंदर ये होने पाए यीशु के नाम में मांगता हूँ आमीन बहन परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई अब आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर हम इस युवक को यहाँ आपके पास लाते हैं उस पर अपने हाथों को रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में होने पाए मसीह का कैलवरी पर समाप्त किया गया कार्य जो उसमें उसके द्वारा चंगाई के द्वारा पूरा हुआ आमीन भाई आपको आशीष मिले आज रात्रि ये समाप्त हो जाए बहन आप कैसी हैं हम इस बात का विश्वास करने जा रहे हैं कि ये आज रात्रि समाप्त होने जा रहा है परमेश्वर इसको यहीं पर पूरा करने जा रहा है हमारे स्वर्गीय पिता ये लिखा जा चुका है अब ये बोला जाएगा तब ये किया जाएगा हमारी बहन की देह में ये ऐसा ही होने पाए यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं आमीन आमीन हम इसका अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं कि ये चंगी हो जाएंगी टूटी हुई गर्दन दिमागी बीमारी ओ हाँ ओ दुर्दशा ठीक है बहन अब हम में से प्रत्येक यहाँ मसीही है हम बस कल्पना करते हैं हम कैसा अनुभव करेंगे जो हमारे ऊपर है अब क्या हो यदि ये उल्टा था महिला मेरे लिए प्रार्थना कर रही है या क्या हो यदि वो आपके लिए प्रार्थना कर रही थी वो अब सारे समय कैसी दुर्दशा की स्थिति में है अब आप कितना चाहेंगे कि कोई वास्तव में ईमानदार निष्कपट हो इस विषय में बहुत ही गंभीर हो ये मैं था मैं होऊंगा और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें अब आप में से प्रत्येक इस विश्वास को पकड़े रहे और एक वास्तविक कलीसिया के समान कहे जैसे हम हैं कहें पिता परमेश्वर अब हमारी बहन की दुर्दशा को ले लें हमारे स्वर्गीय पिता वो वापस आए और कपड़े के टुकड़े जो उसके गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ है वापस लाए जानते हुए कि उसे अब ये और नहीं पहनना है ये यीशु मसीह के द्वारा समाप्त हो गया जैसे कि कलीसिया प्रार्थना करती और ये आशीष मांगती है प्रभु इन मसीहों को उत्तर दें इन्होंने अपना जीवन आपके लिए समर्पित किया है यीशु के नाम में ये चंगी हो जाए आमीन अब बस ये समाप्त हो गया है बंद हो गया और ये दुखी नहीं करेगा और आप ठीक हो जाएंगी भाई अब ये समाप्त हो गया सदा के लिए तय हो गया स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम में हमारे भाई की चंगाई को प्रदान कर दें हम ये परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं यीशु नाम में आमीन मेरे भाई आपको आशीष मिले अब से आगे ये समाप्त हो गया प्रभु ये छोटी महिला जो आज रात्रि यहाँ पर खड़ी है प्रभु यीशु का कार्य इसकी देह में घटित होने पाए उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे इस आशीष को हम पर यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन अब ये समाप्त हो गया आप कैसी हैं? आप विश्वास करते हैं कि यीशु आज रात्रि आपको स्वस्थ करने जा रहा है दमा ओ ये घटिया पुरानी चीज है क्या नहीं निश्चय ही भाई विलियम यहाँ है भाई एक मसीह व्यापारी यहाँ वो हाँ वो हैं जी हाँ इन्हें था माइयों ने इन्हें दमे के साथ छोड़ दिया है कहा है कि इनका वजन अब और कभी नहीं बढ़ेगा या कुछ भी वो यहाँ पर आया लगभग एक वर्ष पहले आया है मैं विश्वास करता हूँ एक रात्रि आराधनालय में और इनके लिए प्रार्थना करने में बाहर गया था और प्रभु ने इसे स्वस्थ कर दिया था मैं समझता हूँ ये भारी हो गया उन्होंने कहा कि इसका वजन नहीं बढ़ सकता ये कभी योग्य नहीं होगा कि इसका वजन बढ़े और इसका वजन 32 पाउंड बढ़ा है तब से प्रिय ये सुना क्या वो महिला क्या अब वो यहाँ है
छोटी महिला यहाँ पर है। ओ हाँ, मैं ये देखता हूँ। आगे बढ़िए, आप ये सुनते हैं। अब देखिए, यीशु ने उसे चंगा किया। जब ये आपसे छोटी होगी, छोटी, और इसे निमोनिया था और सब कुछ बुरी हालत थी, और देखिए यीशु प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, और वो देखिए कैसे वो कितनी अच्छी दिखाई पड़ती है, देखिए, और स्वस्थ है। अब आप भी वैसी ही हो जाएंगी। अब आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, अपने हाथों को छोटी लड़की पर रखते हुए हम मांगते हैं कि दमा इसे छोड़ जाए और ये स्वस्थ हो जाए, यीशु मसीह के द्वारा, हमारा प्रभु, आमीन। आपको आशीष मिले। अब आप जाएं और आप इसके ऊपर जयवंत हैं, और आप चंगे हो जाएंगे और गवाही देंगे, जैसे कि ये महिला अपनी छोटी लड़की के लिए दे रही है। बहन, आप कैसी हैं? आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आपको चंगा करता है? हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस छोटी लड़की को भी चंगा कर देंगे, होने पाए इसकी ये गवाही बहन के समान हो, जो अभी कहा किनारे से किनारे होने पाए, जो भलाई परमेश्वर ने दिखाई है, उसकी महिमा करें, आमीन। बहन, आपको आशीष मिले। बहन, आप कैसी हैं? अब ये आपकी चंगाई का समय है। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे कि ये महिला आती है ईमानदारी से विश्वास करती हुई कि ये उसके छुटकारे की घड़ी है, ऐसा ही होने पाए पिता, जैसे कि हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बहन, आपको आशीष मिले, ये समाप्त हो जाए, अब से आगे इस पर कोई विचार नहीं करना। बहन, आप भी, मैं जानता हूँ कि सुनने में कठोर सा है, कहें इस ओर नहीं सोचना, परंतु मेरा इस प्रकार से अर्थ नहीं है। मेरा अर्थ है कि ये पूरा करा गया कार्य है, ये पहले ही हो चुका है, समझे, जैसे कि एक ठीक है, और आप विश्वास करती हैं कि वो उसे चंगा करेगा। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहन को चंगा करेंगे और उसे स्वस्थ कर देंगे। हम यीशु के नाम में अपने हाथ उस पर रखते हैं, उसकी चंगाई को मांगते हैं, आमीन। आपके दिमाग से ये समाप्त हो जाए, ये तय हो गया और ये ठीक हो जाएगा। कैसे हो तुम पुत्र? तुम्हारे पेट में पुत्र, तुम विश्वास करते हो कि यीशु तुम्हें चंगा कर देगा? पुत्र, ये तुम्हारा है, आप विश्वास करती हैं कि वो इसे कर देगा? बहन, मैं जानता हूँ ये सुनने में ठीक है, आप गवाही को जानते हैं। क्या हम अंत के दिनों में प्रभु ने ये किया है, उससे भी अधिक जो हमारे भाई को अभी है? वो परमेश्वर है जो सृष्टि कर सकता है, वो सकता है। जहाँ देखिए, यदि गेहूं का डंठल ऊपर आ रहा है और एक डेला उस पर गिर जाए और उस गेहूं में विकृति कर दे और उसे दूसरी ओर घुमा दे, तो फिर गेहूं सही नहीं बढ़ेगा, परंतु उस कारण को दूर कर दे, गेहूं ठीक बढ़ेगा, समझे। शैतान ने यहाँ कुछ बुराई की है, परंतु यदि विश्वास की प्रार्थना उसे हटा दे तो ये ठीक बढ़ेगा। आप विश्वास करते हैं क्या? आप नहीं करते? अब आइए मूल्यवान लड़के के लिए हम प्रार्थना करें।
Simple yet powerful.
स्वर्गीय पिता, साधारण फिर भी सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ हमारे छोटे भाई को चंगा कर दे। इस लड़के में ऐसा बदलाव हो कि माँ इस पर इतनी गौरवपूर्ण हो जाएगी अगले ही कुछ घंटों में। हम ये यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे, उसका विश्वास करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत ही सुंदर लड़का, परमेश्वर तुझे आशीष दे। उच्च रक्तचाप, स्वर्गीय पिता, हमारा भाई मानता है कि उसे उच्च रक्तचाप है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे चंगा कर देंगे प्रभु। आज रात्रि ये इसे यहीं छोड़ दे, होने पाए जब वो अगली जांच करवाए या जो भी हो, डॉक्टर कहे, क्यों तुम फिर से सामान्य हो गए हो, अपने हृदय की गहराई में वो आपके लिए धन्यवादित होगा। प्रभु, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मैं ये प्रसन्नता से करूँगा मेरे भाई। स्वर्गीय पिता, इसका पिता इस पृथ्वी का यहाँ पर बीमार है, इसके पास रुमाल है, अपने पिता पर रखना चाहता है। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके पुत्र के विश्वास का सम्मान करेंगे, यीशु के नाम में इसके पिता को चंगा कर देगा, आमीन। मेरे भाई, परमेश्वर तुझे आशीष दे, होने पाए परमेश्वर हर चीज को प्रदान करे, मैं विश्वास करता हूँ वो करेगा। बहन, अब ये समाप्त होने जा रहा है, क्या नहीं? अब के बाद से ये छोड़ने जा रहा है। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे कि हम आपकी कलीसिया अपनी बहन के लिए, उसकी दशा के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उसे चंगा कर दे और उसे स्वस्थ कर दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब बहन, आपको आशीष मिले, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। बहन आप कैसी हैं? क्या वो आज रात्रि के बाद से आपको स्वस्थ करने जा रहा है? हमारे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहन को चंगा करेंगे, उसे स्वस्थ बना रहे हैं। वो यहाँ आकर कहती है, वो विश्वास करती है कि ये ऐसा ही होगा। ऐसा ही हो पिता, मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन आप कैसी हैं? आपके लिए ये छुटकारे की घड़ी है। हमारे स्वर्गीय पिता, ये नम्र लोग ये विश्वास करते हुए कि आप उनकी बीमारी को चंगा करेंगे, मंच के आर पार जा रहे हैं। बोला हुआ इन्होंने बहुत सुना है, और विश्वास सुनने के द्वारा आता है, गवाहियां सुनने के द्वारा, जो कि हम मेमने के लहू के द्वारा जीवंत हुए हैं, और हमारी गवाही। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी बहन को चंगा और स्वस्थ कर देंगे, यीशु के नाम के द्वारा, आमीन। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। इसे वहीं छोड़ दें। प्रिय भाई, अब ये वो घड़ी होने जा रही है कि जब समाप्त होने जा रहा है। ये ठीक बात है। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं इसे आपके पास ला रहा हूँ, इस कलीसिया के साथ, इनकी प्रार्थनाएं और इन सब ईमानदार सेवक और डीकन और प्राचीनों और सारे साधारण सदस्यों के साथ, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उसके वचन की गवाही। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। आपने ये प्रतिज्ञा की है पिता, अब इसकी आंखों को चंगा कर दें और इसे स्वस्थ कर दें, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे भाई आपको आशीष मिले, अब ये इसी समय से समाप्त हो जाए। बहन आप कैसी हैं? आप विश्वास करती हैं? अब के बाद से ये समाप्त हो गया? हमारे स्वर्गीय पिता, हमारी बहन के लिए ये समाप्त हो जाए आज रात्रि से, ये परमेश्वर की महिमा के लिए चंगी हो जाए, आमीन। बहन आपको आशीष मिले, अब अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, विश्वास करें, ये समाप्त हो गया। आप कैसी हैं बालिका? ओ प्रभु, ओ ये बहुत खराब है। आप बहुत ही सुंदर छोटी लड़की हैं। अब यीशु आपको चंगा करने जा रहा है। अब स्वर्गीय पिता, मेरे हाथ इस छोटी लड़की पर हैं। मेरे हृदय में संवेदना है, क्या होता यदि ये सारा मेरी पुत्री होती? ये किसी की पुत्री है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस छोटी लड़की को एलर्जी से चंगाई देंगे और ये आक्रमण इसे छोड़ दे, यीशु नाम में ये चंगी हो जाए, आमीन। अब आप इस पर जीवंत होने जा रही हैं प्रिय, और स्वस्थ रहें। बहन आपका इसका आप इसका विश्वास करती हैं? भाई आप कैसे हैं? आज रात्रि के बाद से ठीक होने जा रहे हैं, श्रीमान, क्या ये ठीक बात है? पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ कि आप हमारे भाई को चंगा करेंगे, होने पाए ये अभी समाप्त हो जाए, इसके जीवन से हर चीज समाप्त हो गई, कि वो विश्वास करेगा, बिन संदेह वाला विश्वास उसके हृदय में, वो स्वस्थ हो जाएगा, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे भाई आपको आशीष मिले। क्यों? आपके हृदय को आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, इसकी माँ 83 वर्ष की है और हृदय रोग और दमे से पीड़ित है। प्रभु इसे प्रदान करें, जब ये छोटा सा चिन्ह उसके ऊपर रखे, वो चंगी हो जाए, यीशु नाम में, आमीन। भाई परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी माँ को भी। आज रात्रि के बाद से समाप्त हो गया। बहन इसे बीत जाने दें, यहाँ ये भविष्य आ रहा है। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में इसे चंगा कर दें, हमारी बहन को, ये हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब ये चला गया, बस ये विश्वास करें। भाई आप कैसे हैं? अब के बाद से ये समाप्त हो गया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उसके शरीर को चंगा करेंगे और उसे स्वस्थ कर देंगे, ये समाप्त हो जाए इसी घड़ी से, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई आपको आशीष मिले। ओ प्रभु, क्या उस पर प्रार्थना हुई? क्यों, मैं खुशी के साथ ये करूंगा भाई। अब आप मेरे साथ विश्वास करें कि वो चंगी होने जा रही है। हमारे स्वर्गीय पिता, कहीं पर एक सुंदर महिला जो इस रुमाल की प्रतीक्षा कर रही है कि उस पर ये रखा जाए, हम इसे उसकी चंगाई के लिए भेजते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब यहाँ एक महिला बैठी है जो उठ नहीं सकती, और यहाँ एक है, पर एक पुरुष भी है। मैं नीचे उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अब आप सब मेरे साथ प्रार्थना करें, क्या आप करेंगे?
The lump that she had in her breast is gone, and the pain is gone.
Isn't that wonderful?
परमेश्वर की महिमा हो, ये अद्भुत है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया, और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी के पेड़ पर। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं निश्चय ही करूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी बहन को चंगा करेंगे और उसे स्वस्थ कर देंगे। यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं मांगता हूं कि ये पूरी रीति से चंगी हो जाए इस गर्भ के लिए। आमीन। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। जाएं और स्वस्थ हो जाएं, अपनी चंगाई का दावा करें। देखिए ये कितना सरल है। मुझे बताएं यहाँ से क्या निकला कि उस गिल्टी को हटाया और उस महिला का दर्द चला गया जो कि संदेश भी ना सुन सकी। देखा, ठीक है, वो वहाँ परमेश्वर की महिमा कर रही है। यदि वो स्त्री जिसके दोनों बहरे थे, गूंगे और अंधे, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं क्योंकि उस स्त्री का कैंसर चला गया। निश्चय ही हम जो कि स्वस्थ हैं, जैसे कि हम आज रात्रि में, वो इसके लिए परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? जी हाँ, आइए जब हम गाते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाएं। मैं प्रेम करता हूँ, कल सभा कहाँ पर है? उद्घोषणा कर दी गई है। प्रभु यीशु के नाम में इसे प्रदान करें। जो कोई ये लेटा हुआ है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए चंगे हो जाएं। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं? मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक इस प्रकार से मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मैं उसे अपने पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ। वो मेरा बचाने वाला है। अब कल रात्रि मैं सोचता हूँ, अगली सभा टेम्पी एरिजोना में है। भाई उसका क्या नाम है? क्या? ग्रूमर, भाई ग्रूमर, वो असेंबली ऑफ गॉड का है ना? असेंबली ऑफ गॉड में फुल गॉस्पल, जी हाँ, ये घोषित हो गया है। मैं सोचता हूँ ठीक है। अब क्या आप भली प्रकार से उससे प्रेम करते हैं? आमीन। बस आश्चर्यजनक। अब मैं सभा को भाई पास्टर के हवाले करता हूँ। कोई प्रतीक्षा में है? किसी के लिए प्रार्थना होनी है? एक मिनट, आगे बढ़े मेरे मूल्यवान भाई, मैं प्रसन्नता के साथ करूँगा। अब इसकी बीमार पत्नी के लिए, दो वर्षों से बीमार है। अब हम बस विश्वास करें। पिता, मैं जानता हूँ संसार इसे देख रहा है और कहता है मैं विश्वास नहीं करता। उस महिला के विषय में क्या है जिसने थोड़ी देर पहले गवाही दी, जिसके गले पर घेंगा था, उसके विषय में क्या है? समझे, वे लोग यहीं, छोटी लड़की, अब वो युवा स्त्री है, वहाँ उसे दमा था और उस दशा में सब कुछ, देखिए वो सब जो हम जानते हैं सत्य था, समझे, वो करेगा, वो परमेश्वर उसकी पत्नी के लिए भी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, एक बीमार पत्नी, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये कपड़ा उस पर रखें। आज रात्रि की सभा का एक चिन्ह होगा और परमेश्वर का वचन और होने पाए वो चंगी हो जाए आपकी महिमा के लिए। आमीन।
I sat back in the congregation. God told me if I'd go up and take him your garment, I'd be healed. The devil said, don't go. You get in front of somebody else. And you got upset. There's somebody in this building. But he come and take me. He'd been healed. And I turned around and said to the old brother, I said, I'm the feller.
Bhai, Parmeshwar aapko aashish de.
Let's pray.
Nahin, nahin. इसके हृदय को आशीष मिले। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, अब परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे प्रदान करें, इसे प्रदान करें और पिता ये प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब उसने ये कर दिया, 13 वर्षों के बाद उसने ये पूरा कर दिया। वे जो प्रभु पर आशा रखते हैं अपनी सामर्थ को फिर से नया करते हैं। भाई ये ठीक है। ओ, ये आश्चर्यजनक है। अच्छा, कल रात मिलते हैं। आप में से बहुत से, यदि मैं पास्टर यहाँ, अब भाई